I say unto thee, take guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. Allow me this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart and trim thy lamp and be sure that thou hast oil in thy vessel. For thou be that if thou hast no oil, thy lamp shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel.
हमारे आसमानी बाप, फिल हकीकत हम इस वक्त के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा के कलाम के गिर्द और खुदा की हजूरी में दोबारा रफाकत के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम नहायत ही मशकूर हैं कि आज सुबह तू हमारे साथ है ताकि हमारी मदद करे और हमें बरकत दे। हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं ताकि हमारे चिराग तेल से भरे रहें और हम तैयार रहें और जलते रहें ताकि तू हमें लेकर अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बस हम ये खुदा के प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं अभी अंदर ही आ रहा था जब मैंने सुना कि पैगाम जारी है, बस मैं आ गया। ये बिल्कुल सच है कि हमें अपने चिरागों को भरपूर रखने की जरूरत है, हमें खुद को तैयार रखने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जब आप जैसे जैसे जलते जाते हैं तो आप इसके मुतालिक नहीं सोच पाते कि आप क्या कर चुके होते हैं, समझे? क्योंकि आग जो तेल के सबब से जलती है कार्बन बनाती है। बस यही सबब है कि सफाई की जरूरत रहती है, अपने चिरागों को साफ सुथरा रखें, क्योंकि चिरागों की बत्ती पर कार्बन जम जाता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं जो मेरी उम्र के हैं, उन्हें पता है कि हम कोले वाला चिराग इस्तेमाल किया करते थे। देखें, वो उसके ऊपर कार्बन जम जाता था। जहाँ वो जलता था वहाँ उसके सबब से रोशनी मुतासर होती थी। बस आप लाजमी सारे कार्बन को साफ करके रखें ताकि हम आगे बढ़े, यानी उस निशान की जानिब जो मसीह में हमारी आला बलाहट है। और अब यहाँ पर अंदर और बाहर एक शानदार और खूबसूरत सुबह है, जैसा कि अब ईस्टर का त्योहार भी आ रहा है। और आज शब हम खुदावंत के फजल से अब आखिरी मोहर तक पहुंच रहे हैं, और ये एक बहुत ही पोशीदा मोहर है। किसी भी लिहाज से ये बहुत बहुत पोशीदा है। इसके मुतालिक कलामे मुकद्दस में कहीं भी निशानदही नहीं की गई और कोई भी अलामत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इसे समझा जा सके। इसे बिल्कुल सीधा आसमान से नाजिल होना है, और मेरे लिए ये एक नहायत ही एहतियात करने का लम्हा है। और तकरीबन इसी में ये सारा हफ्ता गुजर गया है, और अब ये मेरा कमरे में आठवां दिन है। और मैंने यहाँ पर गौर किया है कि बहुत सारे दरख्वास्त गुजार मौजूद हैं, और मुझे एक किस्म का इंतखाब करना था। इनमें से बहुत सारे थे जो इंटरव्यू करना चाहते थे, और मुझे ये अच्छा भी लगता है, और मैं इसे देना भी चाहता हूँ, लेकिन देखें, मैं इसे दे नहीं सकता। इसका सबब आप समझते हैं कि सब कुछ जो हम इस वक्त करने की जुस्तजू कर रहे हैं वो ये है कि हम खुदावंद की मर्जी के मुकाशवा को मालूम करें। आप समझ गए हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरव्यू को कुछ होगा, वरना फिर ये आपको किसी दूसरी चीज की तरफ धकेल देगा, समझे? और फिर जैसे कि बीमारों के लिए दुआ भी करनी है, ये उससे बिल्कुल अलग चीज है। आप ये रोयाएं और दूसरी चीजें हैं जिनका आप मुख्तलिफ तौर से मुतालिया करते हैं, और आप मुख्तलिफ तौर से मसा होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे बाइबल बयान करती है कि एक ऐसा दरख्त है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, पानी की नदियाँ, गौर करें, वही पानी है, लेकिन एक रास्ता यहाँ से निकलता है, इसी तरह एक वहाँ से और फिर एक दूसरी तरफ से, ये रास्ते पर मुनसर है, लेकिन रूह एक ही है। पौलुस भी पहले करिन्थियों 12वें बाब में इसी बात को बयान करता है कि नेमते तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है। बस आप गौर करें, आप किसी एक चीज पर काम करते हैं और फिर आप उसे छोड़कर किसी दूसरी चीज पर काम करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? आप किसी एक हिस्से पर मुतालिया करते हैं और आप लोगों को इकट्ठा करते हैं और अब उनके दिल में एक बात ठहर गई है कि ये मोहरें क्या हैं। उनका ध्यान सिर्फ इसी तरफ है कि ये क्या है, और रात बा रात जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं बेचैन होता हूँ कि कब रूल कदूस आए और मोहरों को बयान करे। आप गौर करें, क्योंकि जब तक वो इनको नहीं खोलता तब तक मुझे किसी और बात को बयान करना पड़ता है ताकि लोगों का ध्यान बना रहे, और फिर इसी तरह मुझे हर शब्द ऐसा ही करना पड़ता है। फिर कभी कभार हमें इसे शिफाया या दूसरी इबादत में तब्दील करना पड़ता है, आप समझे, क्योंकि लोग अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज पर लगा चुके होते हैं और उस वक्त आप बड़ी मुश्किल से उनका ध्यान किसी और चीज की तरफ लगा सकते हैं। और फिर इसी तरह ये जानते हुए कि आपके दरमियान ठीक चीजें हो रही हैं, ध्यान दें, ये मैं जानता हूँ आप इस बात पर तवज्जो नहीं करते, समझे। देखें, मैं मुस्बत हूँ कि आप इस पर तवज्जो नहीं करते और आप कहते हैं भाई ब्रहनम ये कहना आपके लिए दुश्वार चीज है, मैं जानता हूँ ये दुश्वार है, पर देखें मुझे ये कहने दें, मेरा ख्याल है ये टेपे सिर्फ हमारे लिए हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे ये कहने दें, समझे, क्योंकि आप इसे नहीं पकड़ पा रहे, ध्यान दें, क्योंकि आप इसे पकड़ने का क्यास ही नहीं करना चाहते, बस इसकी कोई और तशरी करने की कोशिश मत करें, समझे। देखें, इस पर अपनी तशरी लागू करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इस तरह आप सिर्फ और सिर्फ इससे दूर होते जाएंगे। और अगर खुदा ने आपकी नज़र में मुझ पर मेहरबानी की है और अब अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो सिर्फ मेरी नसीहत पर अमल करें, क्योंकि आप इन मुकाशफात और इन चीजों को जानते हैं और मैं यहाँ आपके साथ एक लंबे अरसे से हूँ। देखें, और ये हमेशा सच साबित हुई है और अब इसे दोबारा साबित करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कलाम के साथ जुड़ी हुई है, समझे। बस आप जानते हैं कि ये खुदावन यूं फरमाता है, ये सच है, गौर करें, और ये आप पर साबित भी हो चुका है। अब आप अपना भाई जानते हुए मेरी नसीहत पर अमल करें, किसी भी बात में अपनी तशरीह मत डालें, आप आगे बढ़ते जाएं और एक अच्छे मसीही की तरह जिंदगी गुजारें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को हकीकी चीजों से दूर कर लेते हैं, समझे, वरना आप अपनी राह को दोबारा इन बातों से दूर करते जाएंगे। आप सब बाशऊर हैं और जानते हैं ये कुछ अजीब वाक्य हो रहा है और ऐसा हकीकतन हो रहा है, और मैं जानता हूँ ये क्या है, और अब मैं ये बात कह रहा हूँ और सिर्फ खुदा का फजल है जो मुझ पर आश्कारा करता है कि ये क्या है। ये कुछ ऐसा है जो नहायत ही गैर मामूली है, और ये ठीक अभी हो रहा है, और दुनिया में आपके पास इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, और ये जो मेरे, लेकिन इस बाइबल के वसीले जो मेरे हाथों में है, मैं जानता हूँ कि ये क्या है, बस वो मेरी मदद करे, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बस तो फिर इसमें कोई भी तशरीह डालने की कोशिश ना करें और सिर्फ अपना भाई समझते हुए मुझ पर भरोसा करें, समझे। हम अजीम वक्त में रह रहे हैं, हम उस घड़ी में रह रहे हैं, ये ठीक बात है कि हम उसी में मौजूद हैं। अब देखें, आप नहायत ही सच्चे और खाकसार मसीही बने और खुदा के लिए जीने की कोशिश करें और अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ ईमानदारी से रहें, और जो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं उनसे भी मोहब्बत करें, और कुछ दिखावा करने की कोशिश मत करें। आप समझते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसको कुछ अजीब बना देते हैं और खुदा के असल प्रोग्राम को गलत मलत कर देते हैं, समझे। कल सुपहर मेरे कमरे में कुछ हुआ था जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, आप समझ गए, आप जानते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते पहले कुछ वाक्या हुआ था, बस जब तक मैं इस जमीन पर जिंदा रहूंगा मैं ये कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, मैं कभी भी इसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा, समझ गए। और चूंकि इसे कलीसिया को यानी आपको इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, बस किसी भी बात में अपनी तशरीह मत करें, समझे, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाएं और सिर्फ वो याद रखें जो आपको बताया गया है, अपने चर्च में जाएं और क्रिश्चियन जिंदगी जिएं, जहां कहीं पर भी आप हों हकीकी नूर बने और सिर्फ मसीह के लिए जलें और लोगों को बताएं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं और आपकी गवाही लोगों के सामने हमेशा मोहब्बत के साथ हो, समझे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद को किसी और चीज में उलझा लेते हैं और फिर आप किसी शिकस्त खुर्दा राह पर चल पड़ते हैं। देखें, हर मर्तबा जब आपने ऐसा करने की कोशिश की तो क्या आपने ऐसा ही नहीं किया, समझे। बस तशरीह करने की कोशिश मत करें, और खासकर आज रात जब वो मोहर आपके सामने खोली जाए तो देखें, फिर उसकी तशरीह करने की कोशिश मत करें। आप आगे बढ़ते जाएं और हलीम बने और इस सादा पैगाम के साथ आगे चलते जाएं। अब आप कहते हैं भाई ब्रहनम, जैसा कि हमें जिंदा खुदा की कलीसिया होते हुए इसे समझना नहीं चाहिए। खैर, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस यहाँ ध्यान दें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं अच्छा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये जरूर मालूम होना चाहिए। नहीं, अब ऐसा मत करें। याद रखें, मैं ये आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। अब अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो फिर सुने जो मैं आपसे कहता हूँ, समझे समझे। अब देखें, यहाँ पर एक डाक रखी हुई है और इसे हम सुनने वाली डाक कहेंगे, समझे। और इसके अंदर रेडियो है, गौर करें, और इस पर एहतियात के मुतालिक और दूसरी बातों के मुतालिक सुना जा सकता है, जैसे कि आपके हाथ में एक तलवार हो। देखें, ये सिर्फ बेजान सी चीज है, लेकिन ये बदी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और उसके साथ उसका एक पैगाम होता है, समझे। लेकिन अब मिसाल के तौर पर एक आम आदमी को लें, जैसा कि रूह कुदूस के नज़ूल के हवाले से बहुत सारे मजहबी ग्रोह और फिरके उबर चुके हैं, यहाँ तक कि ये लोग फजूल चीजों के मजमुए की तरह तमाम काम करते और इकट्ठे होते हैं और फिर बाहर निकलते और कोई दूसरी छोटी सी तहरीक शुरू कर देते हैं, और आप ऐसी और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, समझे। अब आप वैसा करना नहीं चाहते, समझे। अब सिर्फ याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। लेकिन आप कहते हैं खैर खुदा जाहिर करता है। जी नहीं, अब बहुत ही मोहतात रहें, समझे। यहाँ देखें, मैं आपको कोई चीज दिखाता हूँ, तवज्जो करें। क्या आपको मालूम है कि ठीक इस जगह पर हजारों हजार आवाजें हैं, हकीकी तौर पर लोगों की आवाजें हैं जो रेडियो की वेव्स के वसीले आ रही हैं। आप क्यों उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं, जबकि वो आवाजें हैं? ये दुरुस्त है, वो ठीक यहाँ लहरा रही हैं। अब ठीक यहाँ इस जगह पर लोगों की सूरतें और जिस्म हरकत कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं देख पा रहे? समझे, जबकि वो यहाँ हैं, हकीकी आवाजें, जैसी कि मेरी आवाज है। अच्छा, अब आप क्यों उसे नहीं सुन पाते? देखें, पहले इसके साथ कोई चीज टकरानी चाहिए ताकि इसे जाहिर करे, समझे। अब आप समझ गए। अब किसी चीज की तशरी मत करें। अगर खुदा चाहता है कि आप जाने, तो वो उसे आप पर आश्कारा कर देगा, समझे। बस सिर्फ हकीकी बने, यानी हकीकी हकीकत पसंद बने। उस वक्त तक ठहरे रहें जब तक कुछ हो ना जाए, बस सिर्फ और सिर्फ हकीकी बने। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? क्या आप नहीं समझ रहे? बस हकीकी बने, अपने आप को अनोखा बनाने की कोशिश मत करें। क्रिश्चियन बने, क्योंकि आप इस चक्कर में अपने आप को खुदा से दूर ले जाएंगे। और आप अगर आप इसको समझ सकते हैं, तो ये तीसरा खिंचाव है, समझे। आपको किसी दिन इसे पकड़ लेना चाहिए, समझे। बस सिर्फ याद रखें कि दूसरे दो की तरह इसकी भी नकल नहीं होगी, समझे। बस अब जिस मकाम पर आप हैं, आप उसको समझें, इसे सिर्फ और सिर्फ याद रखें। अब आप गौर करें, इस जगह पर कुछ वाकया हो रहा है और वो कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ पर, यानी इस जगह पर हकीकत में फरिश्ते और खुदा की आवाज मौजूद है, समझे। लेकिन आपको कैसे मालूम होगा? आप समझ नहीं सकते। अगर आप जिस्मानी आवाज सुन नहीं सकते सिवाय किसी चीज के जो उसे बाहर लेकर आए, तो फिर आप क्यों कर रूहानी आवाज को सुन पाएंगे? अब शायद आप बनावटी ईमान दिखाएं कि कोई ये खास गीत गा रहा है और वो शायद वहाँ पर मौजूद ही ना हो, समझे। लेकिन जब ये हकीकत में नमूदार होता है जैसे कि उसे होना चाहिए, तो फिर ये हकीकी तशरी देता है और जाहिर करता है और तस्वीर दिखाकर उसे साबित करता है। आप समझ गए मेरा क्या मतलब है? अब देखें, जब खुदा की रूह सच्चे कलाम के वसीले बोलती है, तो अपने आप को साबित करती है, अपने आप को दिखाती है कि ये सच है। अब आप समझ गए? ठीक है, आए अब दोबारा दुआ करें।
Heavenly Father, we're about to open the lids of this book.
आसमानी बाप, जैसा कि अब हम इस किताब के सफों को खोलने वाले हैं, और जिस्मानी हिस्से के तौर पर जो कुछ तूने हम पर रूहानी मकामों में खोला है, उसे तुझे वापस देने की सही कर रहे हैं। और अब मैं दुआ करता हूँ कि खुदा, तू मदद करना ताकि इन सवालों के दुरुस्त जवाब दे सकूँ, और हो सके जो कुछ कहा जाए ये लोगों के लिए मुफीद हो और ये लोग इसको समझ सकें। और मैं दुआ करता हूँ कि तू मुझे हिकमत बख्श कि मैं इसे तेरे लोगों को मुहैया कर पाऊँ, वो भी हिकमत पाएं ताकि हम इकट्ठे खुदा के जलाल और इज्जत के लिए जिंदा रहें, यीशु मसीह के नाम के वसीले, आमीन। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि ये चीज यहाँ है कि टेप की निगरानी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, समझे? और ये एक मेजी रोशनी है, और मेरा ख्याल था कि टेप की निगरानी करने वाले यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं भाइयों को जो इस कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इशारा कर दूं, और वो समझ जाएंगे कहाँ पर टेप को रोकना है और कहाँ पर नहीं रोकना। गौर करें, टेप हर जगह पर आलमी खिदमत है। देखें, हर जगह पर ये खिदमत है, ये हर किस्म की जुबानों और सब जगहों पर जाती है। बस कुछ बातें ऐसी हैं जो ठीक इस जगह पर कहेंगे और कहीं हम नहीं कहेंगे, आप समझते हैं, और यही सबब है कि हम इसे रोकते हैं। अब सवालों के जवाब देना सरासर मुख्तलिफ चीज है, बस मैं अब इनका जवाब दूंगा। इनमें से ज्यादातर, यानी ज्यादातर सवाल वो हैं जो बाहर से हैं। अब हर एक, बल्कि उनमें से कुछ जो पैगाम से किसी भी तौर पर ताल्लुक नहीं रखते हैं, पर मैं उनके जवाब भी दूंगा, या किसी भी तरह मोहरों के मुतालिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो मुझे दिए गए थे और जैसे ही मुझे बताए गए थे, और मैंने उनमें से ज्यादातर बता दिए थे, और उनमें से एक अजीम काम दुआ की दरख्वास्त थी जो बीमारों और मुसीबत ज्यादा लोगों के लिए थी, और इसी तरह की और मुख्तलिफ बातें थी जो आगे बढ़ती गई, और जो किसी भी तरह से सवाल नहीं थे कि उनका जवाब दिया जाए। और फिर उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सवाल दे दिए थे जो मुख्तलिफ बातों के मुतालिक थे, यानी कलाम और दूसरी बातों के मुतालिक, और अगर हो सका और अगर हमारे पास वक्त हुआ और मुमकिन हुआ तो हम उनके भी बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब याद रखें, क्योंकि हो सकता है मैं कोई गलती कर जाऊं, ये बात तय नहीं है, मेरा गलती करने का इरादा नहीं है। बस क्या सब कुछ अच्छा लग रहा है? आमीन। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे कि आसमानी मकामों में यीशु मसीह के मुतालिक बातचीत करना? कैसी अजीम जगह है और कैसा अजीम समा है। उस तमाम तर वक्त में जो मैं इस टेबरनेकल में इस मंबर के पीछे रहा हूँ, मेरी खिदमत के किसी भी वक्त में जो मैंने खुदा की बादशाहत में और रूहानी बादशाहत में खिदमत की है, ऐसा वक्त कभी नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि ये वक्त है। माजी के दौरान कोई भी चीज जो मैंने किसी भी वक्त अपनी खिदमत के दौरान की, कहीं भी किसी भी इबादत में, इस तरह नहीं हुआ। ये ज्यादातर शिफा के मुतालिक की बातें रही हैं, लेकिन तो भी ये उसी एक रूह के वसीले सच्चाइयों को आशकारा किया गया है, उसी रूह के वसीले। और मैं ज्यादातर तन्हा रहा हूँ, किसी भी जगह पर रहते हुए या किसी जगह खाना खाते हुए, मैं तन्हा ही रहा हूँ। बस ये वक्त वाकई ही शानदार है। और अब देखें, बिल्कुल अब या फिर सुबह में या फिर इससे अगली सुबह मुमकिन हुआ, और अगर हम वक्त निकाल पाए, तो मैं उस सुबह सिर्फ बीमारों के लिए दुआ करूंगा। अगरचे ये सवालात तवील ना हुए तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। बस मुझे थोड़ी देर में खुद को तैयार करना होता है, समझे? इंसानी दिमाग एक हद तक कायम रहता है, समझे? और जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप एक घंटे के लिए बैठ जाते हैं और खुदा की हजूरी में गुम हो जाते हैं, और वहां आपके सामने आग का सतून लटक रहा होता है, तो आप उसके साथ ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते, आप समझे? फिर इंसान उसके साथ ठहर नहीं सकता। बस अब ये सवाल वाकई ही अच्छे हैं। मैं इन लोगों की दानिशमंदी और काविश को जो इन्होंने की है सराहता हूँ। अब पहले सवाल की तरफ आते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें जवाब दूं, और फिर अगर मैं इसे दुरुस्त बयान ना कर पाया तो खैर आप मुझे दरगुजर कर देना। और अगर आपके पास कोई मुख्तलिफ तफसीर हो और आपको यकीन हो कि आपका ख्याल उसके मुतालिक दुरुस्त है, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाए, ये नुकसान नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है ये एक या दो से मुताबकत रखती हो, मगर इसका निजात से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ ज्यादातर सवालात पूछे गए हैं वो दूसरी तरफ से हैं, या कलीसिया के उठाए जाने के मुतालिक हैं। बस अब तवज्जो दें, यहाँ पर हम दूसरे हिस्सों के सवालात पर हैं, और वो जिन्हें आना है वो अभी होंगे, क्योंकि अब हम अपनी किताब के हिसाब से कलीसिया जमाने से दूसरी तरफ है, हम पार हैं, यानी उस वक्त में जहाँ 144,000 को बुलाए जाने का वक्त है। अब पहला सवाल ये है, मत्ती 25 की 5 अकलमंद कुमारियाँ क्या है? क्या ये दुल्हन की खिदमत गुजार है या क्या ये दुल्हन है, समझे? अगर अकलमंद कुंवारियाँ दुल्हन की खिदमत गुजार हैं, तो दुल्हन कहाँ है? अब देखें, मेरी बेहतरीन समझ के मुताबिक ये 5 अकलमंद कुंवारियाँ, बल्कि जो निकली ये 10 थी, आप इस बात से वाकिफ हैं, समझे? और ये यहाँ पर एक अलामत है या एक तमसील है, तवज्जो दे, जैसा कि मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, वहाँ उनमें से 10 थी, بلا شبہ وہ 10 سے زیادہ تھیں، یہ صرف ایک عدد بتایا گیا ہے، لیکن تب ان عقل مند کنواریوں کے چراغوں میں تیل موجود تھا اور ان بے وقوف کنواریوں کے چراغوں میں تیل نہیں تھا۔ بس اگر متی وہ 10 کنواریاں، اگر یہ کسی شخص کا سوال ہے، اگر وہ 10 جو وہاں تھی، کیا اس کا مطلب ہے کہ وہی ہوں گی؟ بلکہ وہ 5، کیا وہ صرف 5 ہی وہاں ہوں گی؟ غور کریں، صرف 5 لوگ ہوں گے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ کنواریاں ایک تمثیل ہیں۔ آپ دیکھیں، جو کنواریاں اپنے چراغوں میں تیل لے کر اندر گئیں، وہ دلہن کا حصہ ہیں۔ اور میری سمجھ کے مطابق، آپ غور کریں، اب وہ اس آخری گھڑی کی کنواریاں ہیں جو زمانوں سے نکل کر آئی تھی، اور 7 زمانے گزرے ہیں، اور 7ویں گھڑی میں، اور آدھی رات کے وقت میں جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، سمجھے؟ اب اس آدھی رات کی گھڑی میں وہ کنواریاں اٹھیں اور اپنے چراغوں کو جلایا اور اندر داخل ہوئیں، جبکہ کنواریاں سو رہی تھیں۔ اب یہاں اس حصے میں وہ 5 ہیں۔ اگر سوال کا مطلب یہی ہے، یعنی یہی مطلب ہے کہ کیا وہاں صرف 5 تھی؟ ہمارے پاس یہاں بہت سارے سوال ہیں، تقریباً 7000 یا ایسے ہی کچھ۔ اب وہ صرف ایک تمثیل تھی، یعنی ان کا ایک حصہ تھا، اور وہ تمام جو آخری زمانے میں جگائے گئے ہیں 7ویں زمانے میں، جیسا کہ اگر وہ وہاں نہیں تھے، لیکن 5 جو اس وقت جاگے تھے وہ اٹھا لیے گئے، دلہن کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، بلکہ وہ دلہے کے ساتھ چلے گئے۔ بس اگر وہ وہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف 5 ہی ہوں گے، کیونکہ وہ سارے زمانوں سے سوئے رہے، جیسے کہ ہم اس ہفتے میں آ پہنچے ہیں، سمجھے؟ پالوس کے زمانے میں، جو افسس کی کلیسیا کا پیغمبر تھا، اور پالوس ہی اس کلیسیا کی بنیاد رکھنے میں پیغمبر نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، پالوس نے افسس میں کلیسیا کی بنیاد رکھی اور اس کلیسیا کا پیغمبر تھا، اور اس وقت جو روح زمین پر تھی وہ ببر کی روح تھی، اور وہ ببر یہودا کے قبیلے کا ببر تھا، اور وہ مسیح تھا، اور مسیح کلام ہے۔ پالوس کے پاس اس زمانے کا کلام تھا، ہزاروں اس زمانے میں سو گئے، کیا یہ درست ہے؟ اور پھر اگلا زمانہ آتا ہے، اور اس وقت تک کلیسیا تاریخ زمانے میں پہنچ جاتی ہے، وہاں بہل کی روح نظر آتی ہے، یعنی کام، محنت اور قربانی، اور اپنی زندوں کو دے دینا، اور وہاں ہزاروں ہزار شہید ہو گئے اور سو گئے، وہ انتظار کر رہے ہیں، سمجھے؟ اور پھر اس سے اگلا زمانہ آتا ہے، لوتھرن، یعنی اصلاح کا زمانہ۔ اس میں عقل مند ترین لوگ تھے، اور انسان کی چلاکی موجود تھی۔ اگر آپ غور کریں تو انسان اس کے ساتھ آگے بڑھا، اور جب اس نے یہ کیا تو اس نے اپنی چلاکی کو شامل کر دیا، یہی ہے جس نے اس کو دوسرے حصے میں مخلوط کر دیا، سمجھے؟ دیکھیں، اگر وہ صرف خدا کی حکمت کے ساتھ قائم رہتا تو صرف تبدیلی آتی اور آگے بڑھتے رہتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس شخص لوتھر کے بعد جس کے پاس پیغام تھا، لوتھر کی موت کے بعد انہوں نے لوتھرن تنظیم بنا لی، ویسلی کی موت کے بعد انہوں نے میتھوڈسٹ تنظیم بنا لی، سمجھے؟ آپ اسی طریقے سے چلتے رہے، یہ تو اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، سمجھے؟ اب شاید کوئی پینتیکوسٹل کے متعلق سوال پوچھے، جو کہ تیسرا حصہ ہے۔ آپ غور کریں کہ ان زمانوں میں سے ہر کسی نے روح القدس میں ایک ڈبکی ضرور لگائی تھی۔ راست بازی روح القدس کا کام ہے، پاکیزگی روح القدس کا کام ہے، لیکن روح القدس کا بپتسمہ بھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس نبوتی نبی کو زمین پر آنا تھا۔ اس زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں، کیونکہ بپتسمے کی صورت میں اور اپنی معموری میں روح القدس خود آ گیا، لیکن زمانے کے اختتام پر، جیسا کہ دوسرے زمانوں کے اختتام پر ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، پھر پیغمبر کو بھیجا گیا تاکہ ان تمام اخلاقیات اور دوسری چیزوں کو ان کی جگہ پر درست کرے جیسے وہ تھیں۔ پھر کلیسیا کو اٹھایا جانا ہوگا، جیسے کہ بہت سارے ان چیزوں کا انبار لگا رہے ہیں، سورج تاریک ہو رہا ہے، چاند، اور لوگوں نے پچھلی باتوں کو اس مسیحی زمانے میں قائم رکھا ہے، جیسے وہ انہیں پہچاننے میں ناکام ہو گئے تھے، اور وہاں 3 سوال ہمارے خداون سے پوچھے گئے تھے، دیکھیں، جبکہ اس نے انہیں جواب دیا۔ اب گزری رات میرا خیال ہے کوئی بھی سوال نہ تھا، ہم نے ان تمام سوالوں کو لے کر انہیں مہروں کے نیچے رکھ دیا تھا، اور مہریں خود بذات خود ایک کتاب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ساری چیزیں اکٹھی پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے اسے پا لیا ہے جو یسو نے یہاں کہا تھا۔ غور کریں، انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے، یہ باتیں کب واقع ہوں گی، اور تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا، اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اور ہم نے انہیں لیا، और हर एक को उसके तले जांचा, लेकिन एक थी। वो क्या थी? सातवीं मोहर। क्यों? गौर करें, वो नहीं खोली गई। ऐसा ही है, उनमें से हर एक को बयान किया गया। मैंने मुकम्मल तौर पर आगे और पीछे से उनकी मिसालें बयान की, और फिर मैंने पिछली रात जो तहरीर किया था मैं उसे पेश करने के लिए यहाँ लाया था, मगर मैं वापस ले गया और अपने पुराने नोट्स को देखा और फिर उसे वहीं रख दिया। खैर, फिर मैंने गौर किया कि मैंने एक नोट की जगह दूसरा नोट रख दिया था। मैंने उनको गलती से आगे पीछे कर दिया था, और मैंने ये सब गलती से किया था। मेरा ख्याल है आप समझ गए हैं। क्या आप समझे? जो मैंने उस दूसरी जानिब लिखना था वो मैंने यहाँ नीचे लिख लिया था, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि दोनों को लिख लिया। 9-11 या 9-6 या कौन सा, या 6 और 11 और 9 और 11, इनमें से कौन सा नहीं था? ये इसके बरक्स था, इसके नीचे अगली आयत है, समझे? और यही तो बीमारियों और आफतों और जंग के दरमियान हुआ था, और यही जवाब था, आप समझे? ये यहीं पर था। बस मैं नहायत ही खुश था, और मैं इस तरह महसूस कर रहा था जैसे कि मैं मुकाशवे के खुलने से बहुत ज्यादा लुत्फंदोज हो रहा था। लिहाजा मैंने इसे यहाँ पर रख लिया। वहाँ पर पेंसिल और पेन के साथ बैठे हुए मैंने दोनों जगह पर 11 तहरीर कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, मेरा ख्याल है ये दूसरी जानिब के लिए 11 की बजाय 9 था। लेकिन क्या अब आपने गौर किया है किस तरह कामिल तौर से वो मुतवाजी है? अब इसको मत भूले, वो छठी मोहर तक मुतवाजी हैं, और फिर ठहरें, समझे? और मोहरों के खुलने पर गौर करें, ये छठी मोहर तक आती हैं और ठहर जाती हैं, और फिर सिर्फ यही बयान किया गया है कि आसमान पर आधे घंटे के करीब खामोशी है। अब देखें, इन बातों पर गौर करें। मुझे जरा जल्दी करना पड़ेगी क्योंकि इनके जवाब देने हैं, तो जो करें, क्योंकि इनमें से हर एक पूरा पैगाम है, क्योंकि ये 4 हफ्तों पर मुश्तमिल है। आप समझ रहे हैं, हर एक पैगाम है, लेकिन आप जल्दी ही किसी और चीज को बयान करने लग जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सका मैं हर किसी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। वो कुंवारियाँ थी, गौर करें, वो इसी मकसद के लिए बनी थी। उस जमाने में ये उनका हिस्सा था, समझे? हर जमाने में कुंवारियाँ रही हैं, समझे? एक मोहर, बल्कि एक फरिश्ता कलीसिया के पास आता है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख, समझे? फिर यहाँ पर पहुँचकर, फिर इफिसस की कलीसिया को लिखने के बाद इसका वापस मुवाजना करें। एक मोहर खोली गई, यही तरीका है जैसे हम इसे खोल रहे हैं। और अगर खुदावंत की मर्जी हुई, देखे मेरा क्या मतलब है, तो इसको पूरे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। उनके पास पहले क्या था? कलीसिया जमाने, ये दुरुस्त है। अगली चीज, कलीसिया जमानों के लिए पैगाम। क्या हर किसी को अब समझ आ रही है? समझे? पहली बात, हमारे पास कलीसिया जमाने हैं और तारीख है, नासिया काउंसिल के बाद, प्री नासिया काउंसिल से पहले की, और जो कुछ हम तारीख से मालूम कर पाए हैं, और उससे मालूम होता है कि कलाम की दुरुस्त तशरी तारीख के साथ मिलती है, और इसे यहाँ आज के दिन तक यानी लोदीकियाई जमाने में लाती है। और क्या आपके पास वो तारीख होना जरूरी नहीं है? देखें, ये अब एक तारीख बन रही है, ये अभी ही है, और फिर जाहिर हुआ कि इस जमाने में क्या होगा। अब हम वापस मोहर की तरफ आते हैं और उस मोहर को खोलते हैं। खुदा उस मोहर को हमारे लिए खोलता है, वो क्या है? पहली चीज पयंबर है, कलीसिया जमाना है, और अगली चीज 7 मोहरें हैं। अब हम एक खराबी देखते हैं जो 7वें कलीसिया जमाने में नजर आती है, लेकिन 7वीं मोहर किसी चीज को आश्कारा नहीं करती कि इसके मुतालिक क्या होने वाला है, समझे? क्योंकि इस कलीसिया जमाने के इख्तिताम पर इन चीजों को आश्कारा करने के लिए एक नबूवती नेमत को जाहिर होना है, समझे? क्या आप इसे समझ रहे हैं? ठीक है, अब गौर करें कैसे इन मोहरों में से हर एक। फिर मैं इस बात पर आता हूँ, यानी वो 3 सवाल जो यीशु मसीह से पूछे गए कि ये बातें कब होंगी, यानी जब पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, ये दुनिया की मजहबी दस्तगाह कब बर्बाद होगी और दूसरी कब तामीर की जाएगी। गौर करें, ये कब होगा, और मुखालफ मसीह का सवार होना, समझे? और इसका मुकाबला किस से करना है? हकीकी कलाम से, क्योंकि हकीकी कलाम झूठे कलाम के खिलाफ है। फिर उसे सियासत और दूसरी चीजों के मसले को हल करना है, और वहाँ से बैल की खिदमत जारी होती है, समझे? और यह दुरुस्त तौर से यहाँ दूसरी बात है। और देखें, यीशु ने ऐसा ही मत्ती 24 में कहा है। तब वहाँ से हम सलाहकारों की चलाकियों के वक्त में दाखिल हो जाते हैं, और वो हैवानी शख्स इसी वक्त में जाहिर होता है, यही कुछ पारित होता है। फिर हम मजीद आगे की तरफ चलते हैं, यानी 4थी मोहर पर, जब मुखालफ मसीह एक अमेजिश ज़दा बन जाता है और उसका नाम मौत पुकारा जाता है। अब गौर करें, यीशु ने क्या कहा? और वो उसे आग में डालेगा, बल्कि उसके बच्चों को हलाक करेगा, यानी उसी मौत के सवार को। ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों के बारे में है। इनमें से हर एक पर मौत का निशान है। देखें, वो और उसके बच्चे भस्म किए जाएंगे। बस अगर आप अपनी तंजीम पर भरोसा किए हुए हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि अभी ही उससे किनारा कशी कर लें। और जब सातवीं मोहर पर पहुंचता है, तो यीशु ठीक वहां रुक जाता है। ये कहते हुए उसने छठी मोहर को खोल दिया कि चांद खून में तब्दील हो जाएगा और अंधेरा और बाकी सब कुछ वाकया होगा। यानी ये बातें कब वाकया होंगी? और हम ठीक उसी मकाम पर आ गए हैं और छठी मोहर को खोलते हैं। छठी मोहर के खुल जाने के बाद फिर ठीक वापस मुड़ते हैं और वही चीज बयान की जाती है। आप यहाँ पर हैं। कलाम में तीन मुख्तलिफ मकामों के साथ साथ इन्हें मुकाशवा के साथ इकट्ठे खड़े करें, समझे? ध्यान दें, वो मकाम जहाँ पर यीशु ने ऐसा कहा, वो मकाम जहाँ पर उसने किताब को खोला, ये बनाए आलम से ही राज में रखी गई थी। और फिर यहाँ पर आज के दिन का मुकाशवा, जिसे ठीक यहाँ बयान किया गया है। इन तीनों को इकट्ठा करें और ये तीन गवाह हैं। बस ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अब यहाँ पर ये कुंवारियाँ हैं जो साथ साथ आती हैं, ये वही थी जो सो गई, और फिर ये सारा बदन उस ग्रोह से मिलकर बना है, उसको बनना है। देखें, उन्हें अकलमंद कुंवारियाँ बनना है, और फिर उन बेवकूफ कुंवारियों ने भी उसी वक्त तैयारी शुरू की जब अकलमंद कुंवारियों ने की, और फिर मुखालफ मसीह जाहिर होता है और यहीं पर वो तेल खरीदने की कोशिश करती हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दें और देखें कि आप जहाँ कहीं जाते हैं, ये कैसा कामिल है। अगर मैं यहाँ पर ठहरा रहूँ और उन चीजों के मुतालिक बयान करता रहूँ जो इस जगह पर आश्कारा की गई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके सर को चकरा देंगी। लेकिन आप उसको कैसे करने वाले हैं, जबकि आपको यहाँ मुकम्मल चीज मिलने को है? और फिर जब आप किसी तरह से दूसरी तरफ होते हैं और लोगों से जुदा होते हैं, तो तब ये आप पर भेदों को खोलना शुरू कर देता है। फिर आप उन चीजों को देखते हैं जिन्हें आप लोगों से बयान करने की जरूरत नहीं कर सकते, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वो लोग कोई ना कोई इज्म बनाना शुरू कर देंगे। और आए जरा देखें कि ये छोटी सी शिफा की नेमत क्या कर चुकी है, किस तरह इसने कलीसिया को उलझा के रखा हुआ है। हर किसी को जोश था, हर किसी को ऐसा करना था, और मेरे भी दिल में ऐसा था। खुदा जानता है कि ये सच है। मैं जानता था ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बताया था, समझे? लेकिन ये असली चेहरा नहीं था, उससे सिर्फ लोग छोड़कर चले जाते हैं। अब ये दुरुस्त है, लेकिन अब आप समझते हैं कि आप उन चीजों को बयान नहीं कर सकते। बेहतरीन हल ये है कि आप उन्हें अकेला ही छोड़ दें। और आपको वो तीसरा खिंचाव याद है, उसने कहा था किसी को मत बताना। मैंने क्या कहा था, वो क्या था? कितनों को वो याद है? यकीनन याद रखें, मैं रोया में वहाँ खड़ा हुआ था और जूते में तस्मे डालने की कोशिश कर रहा था, और उसने कहा, तू इन पेंटिकोस्टल बच्चों को माफूकुल फितरत चीजें मत सिखाना। मैंने कहा कि ये तीसरा खिंचाव होगा और इसे समझा नहीं जाएगा, बस खुदा का फजल मेरी मदद करे। क्योंकि अब हम ठीक वक्त के खात्मे पर खड़े हैं, इसे अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, जब रहम की जगह पर अदालत की जगह बन जाएगी। जबकि आप इन चीजों को होते हुए देखते हैं और लोगों को अंदर आते हुए देखते हैं, तो बेहतर है कि आप जो पहले दाखिल नहीं हुए हैं, आप भी अंदर आ जाएं, समझे? अब आसमानी मकामों में खड़े हो जाएं। देखें, इसका मतलब ये है कि खुशी से बढ़कर होना, यानी आसमानी मकामों में खड़ा होना। अगर आप वाकई ही मसीही बने हुए हैं, तो यही हालत खौफ है। खुदावंत के फरिश्ते के साथ खड़े हों, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आप नारे मारते और चलाते रहेंगे, ये सब कुछ नहीं है। ये आपको तकरीबन मौत की तरह खौफजदा कर देता है, समझे? बस आप ये जानते हैं कि खुश होना और लबाने वाले रक्स में फर्क है, जो कि ठीक बात है। तो फिर हकीकी चीज की तरफ आए, समझे? देखिए, ये वो जगह है जहाँ खौफ है। ये हालते खौफ है, इस बात का खौफ नहीं कि आप बरगश्ता हो रहे हैं, बल्कि हकीकी तौर पर आसमानी मखलूक और पाकरू के यहाँ खुद मौजूद होने का खौफ है। अब वो दुल्हन का हिस्सा होंगे, वो है जो उसे मुकम्मल करेगा। ध्यान दे, वो तमाम जो सोते हैं, क्या हम इसे दुरुस्त तौर पर नहीं देख पाते? अब दुआ करते हैं, तू इन रुमालों के वसीले जो यहाँ पड़े हुए हैं, लोगों को शिफा दे, यीशु के नाम में, आमीन। अब देखें, क्या अब ये ठीक है? आपका शुक्रिया। किसको किस चीज पर आगे बढ़ना है? बहुत सारे रिकॉर्ड तो उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, समझो? ठीक है, आप तब्दील कर लें, सिर्फ एक टेप लें और दूसरी टेप से तब्दील कर दें, उसमें से इसे बंद कर दें। अब आए अगले सवाल पर गौर करते हैं, क्या मुबशरों को बाहर मुनादी जारी रखनी चाहिए? इस घड़ी बिला शुबा जारी रखनी चाहिए, क्योंकि यही इनका मकसद है। यकीनन हर तरह से जारी रखनी चाहिए, किसी चीज को तब्दील मत करें। अगर यीशु सुबह को आने वाला है तो आज मुनादी इसी तरह करें जैसे आज से 10 सालों के बाद आने वाला है, लेकिन तैयार ऐसे रहें कि जैसे इसी घड़ी वो आने वाला है। अब शकी या वहमी मत बने। देखे जिसके मुतालिक मैं आपको इंतबाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर कोई अजीब किस्म का शख्स मत बने, कुछ भी तब्दील ना करें। और अगर आप कुछ गलत या बदकारी करते हैं तो तौबा करें, तवज्जो करें, खुदा के पास वापस लौटें, अपनी मुबशराना खिदमत को जारी रखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमेशा किया करते थे। अगर आप घर बना रहे हैं तो उसे जारी रखें। अगर यीशु कल आ जाता है तो आप अपनी खिदमत में तो दयानतदार ठहरते हैं। अगर आप चर्च बना रहे हैं तो उसे जारी रखें, उसे पाया तकमील तक पहुंचाएं। इसी तरह के किसी काम में से पैसे निकालने की बजाय मैं चाहूंगा कि सिर्फ मेरा हिस्सा मेरी जेब में जाए, समझे? बस आप बस और बस जारी रखें, जैसा आप कर रहे हैं उसे जारी रखें। अब सबको समझ आ गई है, पूरे तौर से जारी रखें, और जैसे आप कर रहे हैं उसे जारी रखें। अब उसे हरगिज मत रोकें, कुछ भी ना रोकें, और जो कुछ आप कर रहे हैं उसे जारी रखें, खुदावंद की खिदमत करना जारी रखें। अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स के लिए काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि काम खत्म होने में 15 मिनट बाकी रहते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं हो अभी तो 15 मिनट बाकी बचे हैं, बस मैं वहां जाकर बैठ जाता हूं और आराम करता हूं, तो आपको इन 15 मिनटों का हिसाब देना पड़ेगा। और अगर आप गंदुम बो रहे हैं तो अपनी गंदुम को बोएं। अगर आप आलू खोद रहे हैं तो खोदना जारी रखें और उन्हें खोद कर बाहर निकालें। शायद कोई कहे ठीक है, मगर उन्हें खाने वाला कोई नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह उन्हें खोदकर बाहर निकालें, समझे? जी हाँ, जो कुछ आप कर रहे हैं आप उसे जारी रखें। एक दिन मुझे किसी की तरफ से खत मौसूल हुआ, किसी ने उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, वक्त बहुत नजदीक है, अपने खेत खलिहान भेज डाले, क्योंकि अब आपको इस खुराक की जरूरत नहीं है जो आप उगाते हैं। मजीद उसमें लिखा गया क्योंकि मिलेनियम शुरू होने वाला है और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप आगे बढ़े, क्योंकि ये मुसीबत का दौर चल रहा है और आपके बच्चे जो गैर निजात याफ्ता हैं, बस ये उन्हें दे दें, उन्हें खेत खलिहान दे दें ताकि वो इनमें पैदावार कर सके, लेकिन आप अपने सारे खेत खलिहान बेच दें, और वगैरह वगैरह ये लिखा हुआ था। और हो उन्होंने उसे, मैंने कहा ओ मेरे खुदाया, अगर मुझे मालूम होता कि वो कल आ रहा है और मैं किसान होता तो मैं जरूर अपनी फसल को आज ही बोता। यकीनन अगर उसने मुझे एक किसान बनाया होता तो मैं जरूर ही अपने काम पर होता और उसे सरंजाम देता, ये सच है। और अगर उसने मुझे मैकेनिक बनाया होता तो मैं वही करता जो वो कहता। किसी दिन किसी ने बताया, उसने कहा, कोई शख्स अंदर आया और कहा, भाई आप जानते हैं क्या बात है? उसने कहा, अब मैं आपको चाबियों का दूसरा सेट देने वाला हूँ क्योंकि मैंने नई गाड़ी खरीद ली है। उसने कहा, मैं आपको चाबियों का दूसरा सेट देने वाला हूँ। उसने अपने पादरी साहब को बताया और फिर कहा, मैं आपको चाबियों का दूसरा सेट देने वाला हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि शायद आमदेसानी हो जाए, और फिर कहा, क्योंकि मुझे मजीद इसकी जरूरत नहीं रहेगी। देखे पादरी इस मौके को खो देने वाला है, हो ये तैयारी करना है, क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, ये इस तरीके से है, लेकिन देखे हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हमें जरूर ही एक दना और मजबूत मसीही होना चाहिए। ध्यान दें, मुझे यहाँ इसलिए रखा गया है कि मैं आखिरी लम्हे तक काम करूँ। मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इसे निभाऊं और अपने काम की जिम्मेदारी में ठीक तौर पर दयानतदार साबित हूँ। अगर वो आज सुबह आ जाता है तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ इस मंबर पर खड़ा हुआ पाया जाऊं। आप कहते हैं भाई ब्रहनम, अगर वो आज सुबह आ जाता है तो क्या आप वहाँ बाहर नहीं होना चाहते? नहीं जनाब, ये मेरी ड्यूटी की जगह है। मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक यहाँ पर खड़ा हुआ मुनादी कर रहा हूँ, और जब वो आए तो मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो मैं बताता हूँ, और फिर जब वो आए तो मैं चाहूँगा कि उसके साथ उठा लिया जाऊँ, समझे? और अगर मैं आलू खोद रहा हूँ तो जितनी मेहनत से मैं खोद पाया मैं खोदता चला जाऊँगा, और जैसे ही वो आए तो मैं कदाल को छोड़कर उसके साथ उड़ जाऊँगा। याद रखें, साले जुबली में क्या होता था, अगर वो कदाल के साथ खुदाई करते होते थे तो वो खुदाई करना जारी रखते थे। वो जानते थे कि साले जुबली में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और नरसिंगे की आवाज साले जुबली का ऐलान करेगी। वो चारा इकट्ठा करना जारी रखते थे, यानी जो कुछ भी वो कर रहे होते थे वो जारी रखते थे, लेकिन जैसे ही नरसिंगे की आवाज सुनाई देती थी तो फिर वो दो शाखा छोड़ देते थे और आजाद हो जाते थे। तवज्जो करें, यही असल बात है, इसलिए सिर्फ चारे को इकट्ठा करते रहें जब तक नरसिंगे की आवाज नहीं आती। ठीक है, मोहरों के खोले जाने के मुतालिक सवाल करें, क्या हो, कुछ हुआ है? ओह, ये यहाँ शोर हुआ है। अगला सवाल, अगर पांचवीं, पांचवी मोहर के खोले जाने के मुताबिक मूसा और एलिया को मरना है, तो हनोक के मुतल्लिक क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम, समझे? मुझे अगर मुझे मालूम नहीं है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे मालूम नहीं है, समझे अजीजो? मुझे तमाम जवाबात मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम। और अगरचे मुझे नहीं मालूम है तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। और अगर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त तक आपको नहीं बता सकता जब तक मैं खुद नहीं जानता, समझे? इसलिए मुझे ये मालूम नहीं है। मैं खुद भी अक्सर इसके मुतालिक हैरान होता हूँ। हनोक भी, मैं गौर करता हूँ कि मूसा और एलिया वापस आते हैं और वो मारे जाते हैं, लेकिन देखें, अब हनोक भी वक्त से पहले उठा लिया गया था। मैं अक्सर इसके मुतालिक गौर करता हूँ और मैं खुद भी हैरान होता हूँ। अच्छा, तो फिर इसके मुतालिक क्या ख्याल है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही तसल्ली की बात है जो मैं कह सकता हूँ, और वो ये है, अब गौर करें कि मूसा ने सिर्फ 40 साल खुदा की खिदमत की, समझे? और वो 120 साल का हुआ था, लेकिन 20 साल, बल्कि पहले 40 साल, मेरा मतलब है कि वो अपनी तालीम हासिल करता रहा, क्या ये दुरुस्त है? और दूसरे 40 साल में खुदा उसमें से उसकी तालीम निकालता रहा, और तीसरे 40 साल उसने खुदा की खिदमत की, समझे? ये ठीक है, लेकिन हनोक शायद 500 साल खुदा के साथ चलता रहा और वो बे इल्जाम था, समझे? बस मूसा वापिस आता है ताकि मजीद खिदमत करे, यानी वो और एलिया। अब जैसा कि मैं ये नहीं कहता कि ये दुरुस्त है, समझे? देखें, ये मैंने आपके लिए एक सोच बयान की है, लेकिन अगर सिर्फ ये कहें कि असल क्या है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं हकीकत में आपको नहीं बता सकता वहाँ क्या हुआ था या खुदा क्या करेगा। मुकाशवा 3:12 के लोगों का नाम क्या है जो उन्हें मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। जी हाँ, लेकिन उसने कहा है उन्हें एक नया नाम दिया जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानता वो क्या है, समझे? देखे, ये गालबन उस वक्त जाहिर होगा जब हम वहाँ इकट्ठे होंगे, लेकिन अब मैं नहीं जानता ये क्या है, समझे? देखे, वो ये काम करने वाला है, समझे? वो उन्हें नया नाम देने वाला है जिसे सिर्फ वही जानते होंगे, समझे? अब भाई ब्रहनम, क्या कलाम में कोई ऐसा हवाला मौजूद है जो तलाक के बाद शादी की इजाजत देता हो? ये बहुत ही अहम सवाल है, ये सवाल बड़ा ही खास है। खैर, यही सबब है, ये इससे निस्बत नहीं रखता। मेरे भाइयों और बहनों, जहाँ तक मुझे इल्म है, और ये जो कुछ भी है, ऐसा कोई भी हवाला मौजूद नहीं है। हाँ, जब तक आपका साथी मर नहीं जाता, क्योंकि बाइबल कहती है जब तक वो जिंदा रहते हैं वो एक साथ बंधे रहते हैं, समझे? बस जहाँ तक किसी हवाले की बात है, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया था कि क्या कोई हवाला मौजूद है, समझे? क्या कोई हवाला है? नहीं, मुझे ऐसा कोई हवाला नहीं मिला। देखें, मुझे ऐसा कोई भी हवाला नहीं मिला है, क्योंकि पलूस ने शादीशुदा जोड़े के बारे में बताया है कि अगर साथी मर जाता है तो फिर वो आजाद है, जिसके साथ वो चाहें वो भी खुदावंद में शादी कर ले। लेकिन तब तक ध्यान दें, आप इस बात को थाम लें, यानी जब तक मौत हमें जुदा नहीं करती, और यही असल बात है, क्योंकि आपने इस बात का हल्फ दिया था, आप समझे? बस मेरा ख्याल नहीं कि ऐसा कोई हवाला मौजूद हो। अब अगर कोई हो, या अगर कोई आपको मिले और शायद वो दुरुस्त हो, तो फिर ठीक है, मगर जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मुझे तो कोई भी ऐसा हवाला नहीं मिला। मुकाशवा 6:6 में, देख तू तेल और मैं का नुकसान ना कर, इससे क्या मुराद है? ये रूह कुदस है, समझे? हमने इसके बारे में बात की थी, आप जानते हैं, गालबन आप में से कोई देर से अंदर आया था पैगाम सुनने के लिए। अच्छा, दूसरी टेप के लिए, आप समझ गए? तेल और मैं का नुकसान ना कर, तेल और मैं का क्या मतलब है? तेल को हम अलामत के तौर पर लेते हैं, तो इसका मतलब है पाक रूह, समझे? और फिर मैं और तेल बाइबल में इबादत के वसीले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, समझे? और फिर मैं जिसे हम लेते हैं, वहीं से मुझे ये ख्याल आया है, तहरीक देना, मैं तहरीक देती है और उबारती है, फितरती मैं अलामत है उस तहरीक की जो मुकाशवा से मिलती है। अब जरा सोचें, कौन सी चीज कलीसिया को तहरीक देती है? मुकाशवा, समझे? बस मैं नई मैं होगी। अब गौर करें, मैं और तेल कुर्बानी में इकट्ठे इस्तेमाल होते थे, और कलीसिया की इबादत में भी एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अब गौर करें, इकट्ठे बनाए जाते थे और एक दूसरे से जुड़े होते थे। अगर आपके पास महंगी है और आप देखते हैं, तो समझ जाते हैं जहाँ पर तेल और मैं इबादत में इकट्ठे मिल जाते हैं तो एक मुकम्मल रिश्ता है, और अगर आपके पास महंगी नहीं है तो फिर वहीं ठहर जाती है। अब इस पर गौर करें, क्योंकि अब आप समझते हैं कि तेल हमेशा पाक रूह है। हम इसे हिजकेल की किताब में देखते हैं, हम इसे पुराने ऐदनामे में भी देखते हैं, और हम इसे पूरे नए ऐदनामे में भी देख सकते हैं। क्यों हम बीमारों को तेल से मसा करते हैं? हम बीमारों को तेल से इसलिए मसा करते हैं क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि पाक रूह उन पर नाजिल हो रहा है, समझे? इसलिए उन अकलमंद कुंवारियों के पास तेल था, मगर उन बेवकूफों के पास तेल नहीं था, यानी रूह। अब समझे, अब यही तेल है। और फिर मैं और ये अगरचे तेल खुदा की अलामत है और खुदा को जाहिर करता है, और खुदा रूह है, समझे? खुदा कलाम है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ, और यही खुदा है। अब देखें, अब अगर कलाम यहाँ है, अब यहाँ पर कुदरती हालत में है, और मैं पानी की तरह है, जैसे कि वो मुकाशवा जो कलाम की तशरी को अयां करता है और जो ईमानदार को तहरीक देता है, आप समझे? मेरे खुदाया, अब जैसे लोग कहते हैं कि मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना था, मेरे खुदाया, खुदा को जलाल मिले। वो क्या है? गौर करें, तहरीक देने वाला, देखें, मुकाशवा को अयां करने वाला। मुझे नहीं मालूम था, किसी रोज हम कहीं पर ऐसे ही बैठे हुए थे, समझे? अब जैसा कि तेल और मैं से क्या मुराद है, और तू देख, उनका नुकसान ना कर, वो काले घोड़े का सवार था, और वो तारीख जमाने के अरसे की बाबत था, यानी तीसरा कलीसियाई जमाना। गौर करें, और वहाँ पर ये तेल और मैं सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा, और कहा गया इनका नुकसान ना कर। और मेरा ईमान है कि अगर आप इस तीसरी मोहर की टेप को हासिल कर लें, तो ये सारी बातें आपको वहाँ मिल जाएंगी जहाँ हमने इसे तफसील में, बल्कि भरपूर तफसील में बयान किया है। भाई ब्रहनम, क्या बरे की किताबे हयात और किताबे हयात यकसा किताब है? यकीनन, देखें, यहीं पर इस किताब में सारी निजात तहरीर की गई है, समझे? उनके नाम इसमें लिखे हैं। आप कहते हैं, अच्छा भाई ब्रहनम, हमारे नाम तो बरा की किताबे हयात में लिखे हैं, क्योंकि मैंने किसी रात इसे लिखवाया था। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया था, नहीं, आपने ऐसा हरगिज नहीं किया था, बल्कि आपने किसी रात इस बात को हासिल किया था कि ये वहाँ पर लिखा हुआ है। गौर करें, क्योंकि उनके नाम बनाए आलम से पेशतर ही लिखे हुए हैं, समझे? यही बात है, और ये एक ही किताब है, समझे? अब भाई ब्रहनम, क्या ये सच है? हर वो यहूदी जो मसीह के आने के बाद पैदा हुआ निजात पाएगा? और 144,000 कौन है? क्या वो मुकरर शुदा है कि उन पर पाक रूह की मोर हो? और उनका मिशन क्या है? अब यहाँ एक में तीन सवाल है, लेकिन यहाँ पहला ये है, क्या ये सच है कि हर यहूदी जो मसीह के आने के बाद इस दुनिया में पैदा हुआ निजात पाएगा? नहीं, कुछ भी बच नहीं पाएगा, बस वही जिनके नाम बनाए आलम से पेशतर बरा की किताबे हयात में लिखे गए हैं, वो चाहे यहूदी हो या गैर कौम, समझे? यही असल बात है। वो किताब वेद से भरी हुई है, और अब वो किताब खोली जा रही है। हर किसी का नाम नहीं है, लेकिन वही जो इस वेद की किताब में है, और अब ये उनके नाम पुकार रही है। आखिरकार अब आप इस बात को समझ सकते हैं, समझे? अब देखें, वो किताब ऐसा नहीं कहती कि अब ली वेल को इस कलीसियाई जमाने के वक्त में बचना है, या ओरमन नेवल को, या किसी और को। नहीं, ये हरगिज ऐसा नहीं कहती। ये फक्त वेद जाहिर करती है और वेद को खोलती है कि वो क्या है। लेकिन हम खुद ईमान के वसीले इस पर एतकाद रखते हैं, और यही वो बात है जो मैंने किसी रात कही थी। किसी ने कहा, खैर मुझे जरूरत नहीं है कि मैं ऐसी कोशिश करूं, बल्कि किसी ने कहा कि भाई ब्रहनम ने कहा था कि जेफरसन व्हील से बस एक ही बचेगा, समझे? अब गौर करें, ये एक तमसील थी, पर ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। शायद वहाँ हजारों बच जाएं, मगर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें से हर एक बच जाए, देखें, लेकिन मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ वो तरीका है जिस पर मैं ईमान रखना चाहता हूँ कि मैं उनमें से एक ही हूँ। आप भी अपने लिए ऐसा ही ईमान रखें। अगर आप ऐसा ईमान नहीं रखते, तो फिर आपके ईमान के साथ कोई गड़बड़ है, और आप जो कर रहे हैं उस पर पुरयकीन नहीं है। आप किस तरह से वहाँ चलकर मौत का सामना कर सकते हैं, जबकि आपको यकीन नहीं है कि आप निजात याफ्ता हैं या कि नहीं, समझे? आप कैसे यहाँ से नीचे जाकर उस माजूर शख्स से, जो वहाँ पड़ा हुआ है, जो अंधा और मरा हुआ है, ये कह सकते हैं, खुदावंद यूँ फरमाता है, उठकर चल, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। आप कैसे उस मुसीदा अकड़े हुए जिस्म से जो वहाँ पड़ा हुआ है और जो मुर्दा है और घंटों घंटे से बेजान है और वहाँ पड़ा हुआ है, कैसे उस सर्द और अकड़े हुए बदन से ये कह सकते हैं, खुदावंद यूं फरमाता है, अपने पांव पर खड़ा हो जा, आपके लिए बेहतर है कि आप उसे जाने जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं, समझे? खैर, आप कहते हैं मौत तो हर चीज पर गालिब है, ये सब कुछ खत्म कर देती है। जी हाँ, लेकिन जब खुदा का कलाम आश्कारा होता है तो फिर आप जानते हैं कि ये खुदा है जो चीजों को तब्दील कर देता है, ये दुरुस्त बात है। अब देखें, जी हाँ, सब यहूदी नहीं, सब यहूदी निजात नहीं पाएंगे, नहीं जनाब, सब निजात नहीं पाएंगे, फक्त वही। जब वो यहूदी की बात कर रहा है तो यहूदी सिर्फ एक नाम है जो उन्हें दिया गया था जब वो निकले थे। मेरा ख्याल है नबूकत नजर के वक्त में उन्हें यहूदी कहना शुरू किया गया था, क्योंकि पहले यहूदा के कबीले को वहाँ ले जाया गया था और उन्हें यहूदी नाम दिया गया था। अब देखें, क्योंकि वो यहूदा से आए थे और उन्हें यहूदी का नाम दिया गया था। लेकिन अब देखें, इसराइल मुख्तलिफ है, इसराइल और यहूदी मुकम्मल तौर पर अलग अलग है। हर यहूदी इसराइली नहीं है, समझे? हर गिज नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक यहूदी है। लेकिन फिर इसराइल, पौलुस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारे यहूदी बच जाएंगे, बल्कि उसने कहा तमाम इसराइली बच जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इसराइल नाम ये एक मखलसी का नाम है जो पिछले वक्तों में दिया गया था, समझे? और तमाम इसराइली बच जाएंगे, लेकिन सारी यहूदियत नहीं बचेगी, समझे? शायद वहाँ पर गैर अक़वाम की तरह हो। अब हजारों हजार लोग हैं, जी हाँ, असल में लाखों लोग हैं जो इन तंजीमों में हैं और वो खुद को क्रिश्चियन यानी मसीह की कलीसिया कहते हैं और तमाम ऐसे ही नामों से कहलाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं, हरगिज नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो निजात पाएंगे। लोग कहते हैं अब आपका इस या उस तंजीम से या फला तंजीम से तल्लुक होना जरूरी है, अगर आपका नाम हमारी किताब में नहीं है तो आप गैर निजात याफ्ता हैं। अब ये मजहबी ख्यालात है, समझे? ये मजहबी सोच है, समझे? सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप निजात पा सकते हैं और वो ये है, ये उसकी मर्जी पर नहीं जो कोई चाहता है या वो जो दौड़ धूप करता है, बल्कि ये तो खुदा है जो रहम करता है और खुदा ने अपने सबका इल्म से अपने जलाल के लिए एक कलीसिया को मुकर्रर किया है और यही वो कलीसिया है जो निजात पाएगी, ठीक है? अब आपका ईमान वही लंगर अंदाज होना चाहिए। आप कहते हैं ठीक है, मेरा ईमान वही लंगर अंदाज है, लेकिन गौर करें कि आप किस किस्म की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपका लंगर दुरुस्त नहीं है, आपने उसे चट्टान की बजाय रेत पर रखा हुआ है, इसलिए पहली ही छोटी सी लहर उसे उखाड़ फेंकेगी। जी हाँ, किसी चीज में कलाम को आश्कारा होने दें। फिर देखें, आप कहेंगे मेरी कलीसिया ऐसा नहीं मानती, यही बात दुरुस्त तरीके से जाहिर करती है कि आपका लंगर चट्टान पर नहीं है बल्कि आपका लंगर रेत पर है। जी हाँ, ये सच है। बस अब देखें, अब आप गौर करें और ये 144,000 क्या ये पहले से मुकर्रर है? जी हाँ जनाब, ये इसराइल है बल्कि रूहानी इसराइल है। जरा सोचे, उनमें से वहाँ लाखों होंगे, मुझे नहीं मालूम अब वो कितने होंगे। मेरा ख्याल है ये एक पूरा ग्रो होगा, लेकिन वो सारे नहीं बचाए जाएंगे क्योंकि वो यहूदियत में है, समझे? क्या आपको जरा भी मालूम है कि वहाँ पर कितने होंगे? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद वो उस पहले मसाइब के शुरू होने के बाद ही वो इकट्ठे होने लगेंगे। आप जानते हैं मेरे पास इन पर टेप मौजूद है और उसे मैं एक कवनेंट कलीसिया में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, और जैसा कि ये जरा पुरानी है, ओ मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये आगाज ही में थी, उनके पास अफ्रीका में ये मौजूद थी, डच रिफॉर्म ही का एक चर्च है जो कि कवनेंट कहलाता है। अब क्या आप में से कोई यहाँ बैठा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा है। आप अभी तक इस बोसीदा हेडलबर्ग सुकराती तरीके को पकड़े हुए हैं और यही इसकी असल वजह है कि आप अभी तक इसमें हैं, अभी तक डच रिफॉर्म में हैं। बस शायद आपने इसे एक अमेरिकन नाम से महजब बना लिया है, लेकिन यही चीज है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप उसे सुकराती तरीके से सिखा रहे हैं, यानी उसी बोसीदा हेडलबर्ग के तरीके से। आप अपने पादरी से पूछें कि आया ये बात दुरुस्त है के नहीं, समझे? बस अब आप इस पर गौर करें कि क्या 144,000 पहले से मुकर्रर शुदा है कि उन पर पाक रूह की मोहर हो? जी हाँ जनाब, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये सच है। अब अगर कोई यहाँ है, अब अगर मैं ऐसा जवाब ना दूं जो आपको मुनासिब ना लगे, क्योंकि शायद मुझसे भी गलती हो सकती है, समझे? लेकिन ये मेरी बेहतरीन समझ के मुताबिक है, आप समझ गए, ये मेरी बेहतरीन समझ के मुताबिक है। भाई ब्रहनम, जैसे कि आपने बड़ी जांफशानी से इस हफ्ते सांप की नस्ल, ओह मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया था, मगर ये मुझ पर आ पड़ा, सांप की नस्ल को बयान किया है, क्या ये मुनासिब रहेगा कि ये सवाल पूछ लिया जाए? मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि पदेश 4:1 की तशरीह करूं, पर मैं बयान नहीं कर सका। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये मजमून से हटकर है, लेकिन किसी भी तरह मैं खुदा की मदद के वसीले अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आए अब देखें, मुझे जरा इस बात पर थोड़ी देर गौर करने दें। मेरा ख्याल है ये वो बात है जहां हवा ने कहा कि मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। मेरा ख्याल है यही बात है। मेरा ख्याल है हवा ने वहां यही बात कही थी। मैं इसे चेक करने लगा हूं ताकि यकीनी बनाऊं, क्योंकि मैंने किसी रात 7,000 की बजाय 700 कह दिया था। बस ऐसी चीज मुझे बेचैन कर देती है। देखें, इसलिए आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, इसलिए कि दुश्मन हर तरफ मौजूद है और आप इससे वाकिफ हैं। आप समझे? जी हाँ, क्योंकि यही असल बात है। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। अब मेरे भाई या बहन, मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। और अब याद रखें, ये मैं आप पर नहीं डाल रहा, हरगिज नहीं। देखें, बल्कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और उस आदमी से भी प्यार करता हूँ जिसने शायद इस बात पर तनकीद की है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि वो शख्स तनकीदी है। उसने कहा है कि मेरी मदद करें। देखें, क्योंकि लोग इस बात पर यकीन रखते हैं, लेकिन उन्हें मुनासिब तौर से पाखरू के वसीले समझाया नहीं गया ताकि जाने कि इस शख्स से क्या कहना है जिसने उनसे सवाल पूछा है। अब कोई शक नहीं, अब यहाँ वो वही बात कह रही है जो कि सवाल है, और वो ये पूछ रहे हैं कि हवा ने कहा कि मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। आप क्या सोचते हैं, अगर जिंदगी खुदावंद की तरफ से नहीं आती तो फिर ये कहाँ से आती है? क्या ये दुरुस्त है या गलत है? किसने यहूदा इस्करियोती को दुनिया में भेजा? मुझे ये बताएं। बाइबल ने कहा है कि वो बतौर हलाकत का फर्जंद पैदा हुआ। अब सिर्फ उनसे ये पूछ ले, ये ऐसे ही है जैसे लीमू में कीड़े का होना। समझे? अब आप गौर करें, वो नहीं बता सकते, ये बात है। गौर करें, फिर अगर आप इसे और तरीके कार से लेना चाहते हैं, तो देखें, अगर आप इसे उसी जुबान से जो यहाँ है लेना चाहते हैं, जो हवा ने बात की है और जो तहरीर की गई है, उसे दनाओं और अकलमंदों की आंखों से छुपाया गया है यहाँ पर, जैसा कि हवा को ये सिखाया गया है कि खुदा ही वो था जिसने उसे ये बेटा दिया था, और खुदा रूह है, और क्या वो ये नहीं कर सकता? समझे? अब यहाँ ध्यान दें, अगर आप इस पर गौर करना चाहते हैं कि मुझे खुदावंत से एक मर्द मिला, देखें, आप इस पर कुछ और बयान नहीं कर सकते, लेकिन इसको इसकी दुरुस्त तशरी मिलनी चाहिए। समझे? जी हाँ जनाब। नहीं जनाब, वरना अगर ऐसा होता तो फिर रू देखें, हमारे अंदर हमेशा हमारे माँ बाप की फितरत होती है, और आप इस बात से वाकिफ हैं, बच्चे पर और उसकी फितरत पर निगाह करें। अच्छा, तो फिर आदम खुदा का बेटा था और हवा खुदा की बेटी थी, ये सच है। खुदा की तखलीक के पहले नमूने थे, उनमें कहीं भी बदी का कोई जरा कोई दब्बा नहीं था, क्योंकि बदी का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। तो फिर क्यों काइन एक झूठा, एक कातिल और ऐसा सब कुछ था? वो आदतें कहाँ से आईं? अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछें, क्योंकि वो सांप की नस्ल था। समझे? क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती? कलाम में उसकी नस्ल पर गौर करें, और वो वही कुछ बन गई है। दुनिया किससे ताल्लुक रखती है? शैतान से। अब इसे कौन कंट्रोल करता है? शैतान। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, शैतान दुनिया को कंट्रोल करता है। उसने यीशु से भी कहा, देख दुनिया की शान और शौकत कितनी खूबसूरत है, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं तुझे ये दे दूंगा। गौर करें, वो इसका कंट्रोल करने वाला है, वो इसका मालिक बन बैठा है। अब गौर करें, उसके बच्चे यानी शैतान के बच्चे चलाक और होशियार हैं, या फिर कह ले काइन की औलाद। अगर आप चाहें तो आप उनके निसब नामे में ठीक नीचे तक चले जाएं, और आप इस बात को जान जाएंगे कि उनमें से हर एक होशियार था। लेकिन फिर जब उसने हाबल को कत्ल कर दिया, तो खुदा ने उसे वापस सेत की सूरत में दे दिया, और वो रास्तबाज और निजात देने का नमूना था, यानी मर जाना और फिर जी उठना। और अब वहाँ देखें, अब वो पहली नस्ल से तबई तौर पर नहीं मरे थे। अब आप अपने जेनों को खुला रखें, समझे? तबई नस्ल का पहला बीज सिर्फ वक्ती तौर पर ठीक था, और हाबल जदीद कलीसिया की मिसाल था। उस नस्ल को कायम रखने के लिए, ताकि वो आगे चले, एक को मरना था ताकि दूसरा जी उठे। आप समझ गए हैं? बस उसे दोबारा से पैदा होना पड़ा। आपको समझ आ गई? ठीक है, देखें, आपको इसकी समझ आ गई है, समझे? यहाँ पर हैं आप, और ये एक कामिल मिसाल है। बस वो दुनियावी शख्स भी जो आदम से पैदा हुआ अपने बाप की खसूसियात जाहिर करता है, इसे काम नहीं चलेगा। दुनियावी शख्स खुदा की बातों को समझ नहीं सकता। बस वहाँ एक दुनियावी शख्स जाहिर होता है और मर जाता है। उसको दोबारा बहाल करने के लिए हाबल की मौत वाक्या होती है और सेत को उसकी जगह पर लाया जाता है। और गौर करें कि वो कैसे लोग थे। अब वही रूह उसमें से आगे बढ़ी, यानी हलीम, किसान और चरवाहे। गौर करें यहाँ उस दुनिया की अकलमंदी से क्या वजूद में आया। जहीन इंसान, ममार और दांतों के इस्तेमाल करने वाले और इस तरह के आला जहीन और चलाक लोग वजूद में आए। देखें उन्होंने क्या सदमा पहुंचाया। वो इन कामों में आगे ही आगे बढ़ते गए और खुदा ने उनमें से हर एक को बर्बाद कर दिया और फरोतनों को बचा लिया। क्या यीशु ने मत्ती 5 में ऐसा नहीं कहा कि हलीम जमीन के वारिस होंगे? जी हाँ, बस परेशान मत हो, उनके पास एक फिट भी जगह नहीं कि वो कायम रह सके, समझे? वो यकीन नहीं करते कि काइन के बेटे हैं, लेकिन हमारे पास इस पर पूरी टेप मौजूद है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो उसमें तफसील मौजूद है, समझे? नहीं जनाब, और मैंने देखा था कि इनके पास वहाँ कागज का एक टुकड़ा था जिस पर लिखा था कि साइंस अब साबित करने वाली है कि हवा ने कभी भी सेब नहीं खाया था, बल्कि उसने कुबानी खाई थी, समझे? मेरे पास वो शुमारा घर में मौजूद है, समझे? वहाँ लिखा था ये एक कुबानी थी। लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं, देखें, ये सिर्फ दुनियावी सोच है। फिर कहते हैं मूसा ने कभी भी समुन्दर पार नहीं किया था, बल्कि उसने समुन्दर को सरकंडों से पार किया था और बनी इसराइल को बहरे कुलजम के बलाई सिरे पर ले गया था और वहाँ पर सरकंडों के गुच्छे थे और सारा समुन्दर सरकंडों से भरा हुआ था और वहाँ से सिर्फ एक ही दफा पानी गुजरा था और नीचे चला गया और मूसा ने वहाँ मुख्तसर रास्ता अपनाया और उसी रास्ते से वो निकल गए। और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया इस बात को कबूल करती है। आपने इस बात पर गौर किया है कि ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने इस बात को कबूल किया हुआ है? इसी तरह हुआ। हो ए इंसान, तू क्यों सांप की नस्ल को नहीं देख पाता? वही तो मुखालिफ मसीह है और सब कुछ ठीक ठीक दर्ज है। यकीनन, जी हाँ जनाब। भाई ब्रहनम, मेहरबानी से मेरे नन्हे बच्चे के लिए दुआ करें। अच्छा, ये दुआ या दरखास्त है, मैं इसे देखता हूँ। मेरे नन्हे पोते के लिए दुआ करें जो कि नजले की वजह से सख्त बीमार है और वो रिवर व्यू होटल में मौजूद है। खुदावंद यीशु, इस बेचारी खतून ने यहाँ पर कुछ भी फजूल नहीं लिखा है। इसने देख लिया था कि तूने गुज़िश्ता रात मुकम्मल तौर से उस नन्हे लड़के के गठिया के बुखार से उसे ठीक कर दिया था। ये जानती है कि तू अजीम खुदा है और हम इस नन्हे लड़के के लिए दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में ये शिफा पा जाए। आमीन। जब कोई कुछ लिखता है तो वो फजूल नहीं होता है। उन्हें कोई परेशानी होती है, कोई मसला नहीं। हमें वो कितना सादा सा मालूम होता है। उसमें बात चाहे ज्यादा हो या कम, लेकिन उसके पीछे कोई सबब होता है, आप समझे? इस खतून के लिए वो नन्ना लड़का कुछ मायने रखता है। क्या वो एलिया जिसने यहूदियों में मुनादी करनी है वो वही हकीकी शख्स होगा जो जमीन पर रहा था, या फिर किसी दूसरे शख्स में वो एलिया की रूह होगी? अब ये जो बात है, मैं इसे कहने से खौफजदा हूँ, मैं नहीं जानता। देखें, मुझे इसे दोबारा पढ़ने दें। क्या वो एलिया जिसने यहूदियों में मुनादी करनी है, हो ठीक है, वो वही हकीकी शख्स होगा जो जमीन पर था, या फिर किसी दूसरे शख्स पर एलिया की रूह होगी? अब देखें, शायद मैं आपको दुरुस्त जवाब दे सकूं। देखें, मैं आपको हनुक के मुतालिक बता चुका हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे? वही चीज जो मैं जानता हूं, वो सिर्फ कलाम है, क्योंकि जो वो कहता है मैं वही कहूंगा। और अब शायद ये हो कि अब मैं एक तरफ से मुतवज्जो हुआ हूं। अब मुझे इस तरीके से कहने दे, मैं उम्मीद करता हूं कि टेप यानी टेप पर मौजूद भाई इसे समझ जाएंगे। मैं तो इस तरफ रागब हुआ हूँ कि ईमान रखें, क्योंकि ये उसकी रूह में से मसा शुदा होगा। क्योंकि देखें, वो कहता है क्या अलीशा पर उसका मसा नहीं था? क्या एलिया की रूह अलीशा पर नहीं थी? गौर करें, एलिया की रूह, और देखें उसने वैसा ही किया जैसे एलिया ने किया था। बस अगर मैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये सच है, मुझे नहीं मालूम, समझे? लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। भाई ब्रहनम, मेहरबानी से क्या आप मेरे लिए इसका जवाब देंगे जो कि बपतिस्मे के मुतालिक है? मत्ती 28:19 बाप बेटा और रूह कुदुस के मुतालिक सिखाता है, और पतरस इमाल 2:38 में खुदावंद यस्सु के नाम में बताता है। रसूलों के इमाल में ये तब्दीली कब वाक्या हुई? जबकि मैं ये ईमान रखता हूँ कि बपतिस्मा खुदावंद यस्सु के नाम में है। अच्छा, मेरे भाई या बहन जिसने भी ये सवाल लिखा है, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई, समझे? क्योंकि पतरस ने बिल्कुल वही किया था जो यीशु ने करने को कहा था। अब देखें, अगर कोई आए और कहे बाप बेटे और रूह कुदस के अलकाब इस्तेमाल करें, तो देखें, उन्होंने वो किया जो पतरस ने कहा था कि ना करना, बल्कि खुदा ने कहा था कि ना करना, समझे? अब यीशु ने यही कुछ कहा था। ठीक है, थोड़ा सा वक्त और लेते हैं जहां मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। गौर करें, अब तवज्जो दें। अगर आप यहां पर एक शख्स हैं, मैं यहां पर तीन जिस्मानी चीजें रखने लगा हूं। अब गौर करें, ये बाप है, ये बेटा है और ये रूह कुदस है। जैसे कि तसलीसी लोग इन पर ईमान रखते हैं, वो ये ईमान रखते हैं कि ये तीनों मुख्तलिफ अकनुम है, वो ऐसा ईमान रखते हैं, समझे? अच्छा, तो फिर आप मुझे बताने दें। और फिर जैसा कि मत्ती 28:19 में है, यीशु ने कहा, बस तुम सब कौमों में जाओ और सारी खल के सामने इंजील की मुनादी करो। उस नहीं, मैं माजर चाहता हूँ, मेरा ख्याल है मैं अब इमाल में से या इमाल 2 में से हवाला दे रहा हूँ, नहीं बल्कि शायद ये लूका 24:49 का हवाला है, जहाँ उसने कहा, मुझे जरा इसे पढ़ने दे, फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि देखें, इसलिए कि एक मर्तबा मैंने वो कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मैं पूरी यकीन होना चाहता हूँ कि मैं इस पर दुरुस्त हूँ। मैं लकब को जानता हूँ जो आपने वहाँ बयान किया है, लेकिन मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो उसने कहा था। आए मत्ती 29 बल्कि 16वीं आयत से शुरू करते हैं। फिर जब वो 11 खाना खाने बैठे, वो 11 शागिर्द गलील में उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अब खुदा का इख्तियार कहाँ है? अब खुदा कहाँ है? अगर आसमान का कुल इख्तियार और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया है, तो फिर खुदा कहाँ है? गौर करें, वही खुदा है, यानी वही है जो अब आपसे बात कर रहा है। ठीक है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब तसली से इस बात को फोकिया देते हैं कि मैं तुझे बाप के नाम से, बेटे के नाम से और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। ये बात तो मुकद्दस और आँख में मौजूद ही नहीं है। देखे, उसने कहा उन्हें बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, न के बल्कि हर एक से पहले नाम लगाए, वाहिद नाम है। यहाँ गौर करें, ये नहीं कहा गया था कि उन्हें नामों से बपतिस्मा दो, NAME यानी नाम से, एक नाम से, बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से, समझे? अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या बाप एक नाम है, क्या बेटा एक नाम है? यहाँ पर कितने बाप हैं? बताएं, आप में से किसका नाम बाप है? यहाँ पर कितने बेटे हैं? यहाँ पर कितने इंसान हैं? समझे? अच्छा, अब आप में से किसका नाम बाप है या बेटा या इंसान है, समझे? जैसे कि एक मर्तबा एक औरत ने कहा, भाई ब्रहनम, रूह कुदस एक नाम है, वो एक शख्स है। मैंने कहा, जी हाँ जनाब, मैं भी एक शख्स हूँ, लेकिन मेरा नाम शख्स नहीं है। देखिए, मैं एक शख्स जरूर हूँ, लेकिन मेरा नाम विलियम ब्रहनम है, पर मैं एक शख्स हूँ। रूह कुदस एक शख्स है, यही कुछ वो है, मगर ये एक नाम नहीं है, ये खुदा की शख्सियत का एक लकब है, समझे? ये खुदा की शख्सियत का एक लकब है और यही कुछ वो है। अब अगर उसने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, ना कि ये कहकर बाप के नाम से, बेटे के नाम से और रूह कुदस के नाम से, और ना ये कि बाप बेटे और रूह कुदस के नामों से, बल्कि बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से। और अगर बाप बेटा और रूह कुदस नाम नहीं है, तो फिर इसके मुतालिक क्या ख्याल है? अगर आप कहते हैं कि ये नाम है, अच्छा, तो फिर इनमें से कौन सा है? आप इनमें से एक को नाम पुकारना चाहते हैं, तो फिर वो कौन सा है? अगर आप लकब को नाम पुकारना चाहते हैं, तो फिर वो कौन सा नाम है, कौन सा वो लकब है जिसमें आप बपतिस्मा देना चाहते हैं? क्या बाप या फिर बेटा या वाहिद है, समझे? आए अब यहाँ चलते हैं, और ये मत्ती की किताब के आखिर में है। जैसे कि मैं हमेशा ये बयान करता हूँ कि अगर आप मोहब्बत का एक अफसाना पढ़ते हैं, और वहाँ बयान किया गया है कि इसके बाद जॉन और मैरी खुश रहने लगे, और गौर करें, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि जॉन मैरी कौन है। बस पहले वापस कहानी में जाएं और मालूम करें जॉन और मैरी कौन है, समझे? अब आप यही कुछ यहाँ मत्ती में कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ इसका आखिरी हिस्सा पढ़ रहे हैं। अब मत्ती के आगाज में जाएं और फिर पढ़ें कि कहानी क्या कहती है, क्योंकि ये तो मत्ती का आखिरी बाब है और आखिरी आयत है। जैसे कि आप एक किताब में पढ़ते हैं और फिर कहा गया कि इसके बाद जॉन और मैरी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे, वो जॉन जॉन्स था और मैरी फलां और फलां थी, ऐसा ही कुछ था। नहीं, वो जॉन था, वो जॉन हेनरी था, या वो फलां फलां था, वो कोई जॉन था या फलां फलां था। नहीं, आपको अभी तक मालूम नहीं है, आप समझे। एक वाहि चीज है जो आपको उसके मुतालिक पूर्ण यकीन बना सकती है, वो ये है कि आप वापिस किताब के शुरू में जाएं और उसे पढ़ें। देखें, आप एक हिस्सा यहाँ से नहीं उठा सकते, बल्कि आपको पूरी तस्वीर मुकम्मल करने के लिए सब चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है। अब मत्ती पहले बाप में वापिस जाएं, क्योंकि ये आगे बढ़ता है और उसका पहला बाप नीचे तक निसब नामे को बयान करता है और फिर ये नीचे 18वीं आयत तक पहुँचता है जहाँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। क्या ये दुरुस्त है? अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अब दोबारा सुने। आप इसका नाम क्या पुकारेंगे? ये कौन है? खुदा। ये खुदा है, ये खुदा है। अब ये कौन है? और ये कौन है? और ये कौन है? बेटा, ठीक है, अब देखें, अब हमें समझ आ गई है। अब आपने क्या कहा था? ये कौन है? कौन सा खुदा? रूह कुदूस। ठीक है, अब ठीक है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो हमला पाई गई। अब मेरा ख्याल है कि आपने कहा था कि खुदा उसका बाप है, तो फिर अब यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, क्योंकि उसके दो बाप नहीं हो सकते, और आप इस बात से वाकिफ हैं, समझे। अब यहाँ पर कुछ गलत है। अब उन अशकास में से, अगर वो तीन अशकास है, तो उनमें से कौन उसका बाप है? क्योंकि बाइबल सादगी से बयान करती है कि वो रूह कुदूस की कुदरत से हमला पाई गई। खुदा बाप का कोई अमल दखल नहीं था, और यीशु ने कहा कि खुदा उसका बाप है, और हम भी जानते हैं खुदा उसका बाप है, तो फिर उसके दो बाप थे। अब अगर ऐसा होता तो वो यकीनन नाजायज औलाद होता। अब देखें, आपने खुद को कहां पर फंसा लिया है। अब देखें, अब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज आदमी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, और वो इन बातों को सोच ही रहा था। अब याद रखें, वो एक रास्तबाज आदमी था, और अब भी खुदावंत का हाथ बिल्कुल उसी तरह का हाथ है। अब वो जो पहले से मुकर्रर शुदा है, इस बात को थाम ले, समझे। लेकिन जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, तो देखो, खुदावंत का फरिश्ता उस पर ख्वाब में जाहिर हुआ। क्या आप इसे अपनी बाइबल में देख रहे हैं? ठीक है। उसने कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा बाप की कुदरत से है। क्या मैंने इसे गलत पढ़ा है? यकीनन गलत पढ़ा है। जो कुछ उसके पेट में है, उससे खुदा बाप का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो रूह कुदूस की कुदरत से है। जबकि हम जानते हैं खुदा उसका बाप है, क्या ये बात दुरुस्त है? बस ये क्या बात है, सुने, रूह कुदूस बेशक खुदा का रूह है। अब आप इस बात को समझ गए हैं, समझे। खुदा बाप और रूह कुदूस एक ही शख्सियत है, या फिर उसके दो बाप थे, तो फिर आप किस किस्म के शख्स की इबादत करते हैं? अब देखें, आपका खुदा किस किस्म का है, समझे, समझे। खुदा बाप और खुदा रूह कुदूस ये एक ही रूह है, और वो एक बच्चा जनेगी, ये शख्स यहाँ है, और तू उसका नाम रखना, क्या उसका नाम, अब इस बात को याद रखे, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। कलाम किस पर नाजल हुआ? लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा का नाम क्या है? बाप, बेटे और रूह कुदूस का नाम क्या है? बाइबल ने बयान किया है कि उसका नाम यीशु है। एक मर्तबा यहाँ टेबरनेकल में एक शख्स बहस करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, भाई ब्रहनम इन सब बातों को हल कर चुके हैं, लेकिन वो इस बात को हल नहीं कर पाएंगे। उसने कहा, देखो यहाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तीन मुख्तलिफ अशकास नजर आ रहे हैं। उसने कहा, मत्ती तीन बाप में जहाँ यूहन्ना खड़ा मुनादी कर रहा था, उधर बेटा मौजूद था जो कि बपतिस्मा लेने आ रहा था, और वो पानी में उतरता है ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा ले, और फिर पानी से निकलकर बाहर आता है। देखो, उसने कहा, फिर उस पर आसमान खुल गया, और फिर कहा, आसमान से रूह कुदूस कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से ये आवाज आई और कहा, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। उसने कहा, देखें तीन मुख्तलिफ अशकास ठीक एक ही वक्त में मौजूद है, ओ मेरे खुदाया। जी हाँ, ये बस ये बताने के लिए है कि जो लोग बगैर बपतिस्मे के हैं और वो खादम की खिदमत के लिए नहीं बुलाए गए, उनका पुलपट पर कोई काम नहीं है, ये दुरुस्त है। मैं उस शख्स को लेकर अब खुदा की मदद से उन्हें एक ऐसे ग्रोह में उलझा दूंगा कि उनका सर चकरा जाएगा, और मैं किसी बात की परवाह नहीं करता। लेकिन देखें, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ हूँ, ये कहना अच्छा नहीं लगता है, मैं माजरत खा हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था खुदावंद, मेरा अब भी ये मतलब नहीं था, अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस बात पर जांचा गया है, समझे? बस मेरा ये मतलब नहीं था कि इस तरह से कहूँ, मैं इस बात पर माजरत खा हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि पाक रूह उस शख्स पर कुछ भेद आश्कारा कर सकता है, ये कहना अच्छा लगता है। जब आप कुछ गलत कर लेते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे कि किसी आले की दुरुस्तगी की जाए, और आप एक मसीही होते हुए ये कह सकते हैं कि आपने कुछ गलत कह दिया था जो उसे अच्छा नहीं लगा। देखिए, वो मुझे वहाँ रख रहा था, समझे? मैं मुकम्मल तौर से वैसा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वही हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं खुद कुछ करूँ या ना करूँ, सिर्फ उसे यानी खुदा ही को काम करने दें, क्योंकि वही आवाज़ पैदा करता है। नरसिंगा बेजुबान होता है, उसके पीछे जो आवाज़ होती है वो उसकी है जो आवाज़ पैदा करता है। अब यहाँ तवज्जो दें, इंसान कलाम की गलत तशरीह कर सकता है, देखें, बस इसे याद रखें, क्योंकि इसे अकलमंदों और दनाओं की आंखों से पोशीदा रखा गया है, लेकिन बच्चों पर जाहिर किया गया है। अब देखें, यहाँ एक शख्स यीशु मसीह है जो जमीन पर खड़ा है। अब आसमान, बेशक वहाँ ऊपर एक माहौल है, अब ध्यान दें, और यूहन्ना गवाही देता है। अब उस शख्स को ये कहना चाहिए था, यहाँ पर खुदा बाप है, और यहाँ पर कबूतर की मानिद खुदा रूह कुदस है, और यहाँ पर खुदा बेटा है, और ये तीन अशकास हैं, लेकिन ये गलत है। यूहन्ना वहाँ पीछे खड़ा हुआ था, वो जानता था कि ये बर्रा है। यूहन्ना ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने खुदा की रूह को बर्रे की मानिद देखा। मेरा मतलब है, वहाँ कबूतर की मानिद खुदा रूह कुदस को देखा। अब ऐसी ही बात मैंने किसी रात कह दी थी, आप समझ गए, और 700 कह दिया था, समझे? खुदा की रूह यहाँ खुदा का बर्रा था, और खुदा की रूह क्या वो कबूतर खुदा था? खुदा की रूह आसमान से उतरी और आसमान से आवाज आई और कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, समझे? 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 वो वही है। अब उसका नाम क्या था? यकीनन ऐसा ही है, समझे? बस जहाँ तक तसलीसी नजरिए की बात है, तो ये तीन मुख्तलिफ खुदा हैं, और ये काफराना बात है। बाइबल ने ये कभी भी नहीं सिखाया, और ना ही कभी ये रसूलों के पैगाम में सिखाया गया है, लेकिन इसे अगली नस्ल जो कि मुखालफ मसीह थी, उसने ये अपनाया। आप किसी भी थियोलॉजियन से पूछना चाहें तो पूछ ले, ऐसा कभी नहीं था, बल्कि ये बात नकीलियों की तालीम की बदौलत आई। क्यों? ये मार्टिन लूथर के साथ आई, और क्यों? ये जॉन वेस्ली के साथ आई, और आगे बढ़ते हुए पेंतीकोस्टलों पर आ गई। उन दिनों में जब पेंतीकोस्टल जाहिर हुए तो उनमें ओनली जीसस ग्रो भी था। अब दरअसल ये भी गलत है, देखें कैसे यीशु खुद अपना बाप हो सकता है, समझे? बस ये बात इसको नाकाम कर देती है। लेकिन फिर एक उकाबी दौर का वक्त आया, समझे? और यही वो वक्त है जब उन सारे भेदों को खोलकर बयान किया जाना है, समझे? बाप, बेटा और रूह कुदस खुदावंद यीशु मसीह के अलकाब है। तवज्जो दे, अब ये तीनों इस तरह हैं। मत्ती ने कहा बाप, बेटा और रूह कुदस, पतरस ने कहा खुदावंद यीशु मसीह। बाप कौन है? जैसे कि लिखा है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। क्या ये दुरुस्त है? ये बाप है, बेटा यीशु है, और रूह कुदस कलाम है जो खुदा से निकला। बाप, बेटा और रूह कुदस हकीकी तौर पर एक ही खुदा की शख्सियत के तीन अलकाब हैं, जिनमें वो तीन मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर हुआ, या ये उसकी अपनी तीन खसूसियात है। इसे और मजीद सादगी से उन लोगों के लिए बयान करते हैं जो समझ नहीं पा रहे, ये उसी एक खुदा के तीन दफातर हैं। दरअसल ये उसी खुदा की तीन खसूसियात हैं, और खुदा मुख्तलिफ सूरतों में यानी बाप, बेटे और रूह कुदस की सूरत में काम कर रहा है। खुदा तीन में कामिल है। क्या आपको मुखालफ मसीह का अदद चार याद है, समझे? अब खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस में कामिल तौर से खुदावंद यीशु मसीह है। अब जब आप सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो ये गलत है। जब ये कहते हैं मैं तुम्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा देता हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत से यीशु नाम के लोगों से मिला हूँ, क्योंकि लातिनी ममालिक में यीशु नाम के लोग बहुत से हैं, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह है जो हकीकत में बयान करता है कि वो कौन है। जैसे अगर आप मेरी जात के मुतालिक बात करना चाहें तो देखें, बहुत सारे ब्रैनम हैं, लेकिन मैं वाहिद विलियम ब्रैनम हूँ, और ये मैं हूँ, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ब्रैनम हैं, और वगैरह वगैरह। लेकिन देखें, अब ये बात खास तौर पर एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हो रही है, यानी मसा किया हुआ, और वो उनमें वाहिद है। अब देखें, ये सच है। बस इसके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो आप एक खत या एक रुका लिख दें। और बाज़ुकात जब मैं किसी दूसरे सवाल पर भी होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसका जवाब भी तब ही दे दूँ। ताकि मैं उन बीमारों के लिए भी वक्त निकाल सकूं जो मुसीबत में हैं, ताकि उनके लिए दुआ कर सकूं। भाई ब्रैनम, अगर ये सवाल मुनासिब नहीं है तो इसका जवाब मत दें, ये अच्छी बात है। बल्कि मैं इसे सराहता हूँ, वो कौन से बच्चे हैं, यानी कौन से बच्चे आमदेसानी में जाएंगे? अगर कोई छोटा बच्चा है तो क्या वो जाएगा? आपका शुक्रिया। इन्होंने कोई नाम नहीं लिखा, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप देखें, ऐसा जरूरी भी नहीं। लेकिन देखें, खुदा ने जो नाम बर्रा की किताबे हयात में बनाए आलम से पेशतर लिख दिया है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं मिटा सकती, क्योंकि वो नाम मसीह के लहू की इंक से लिखा गया है। चाहे कोई बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, या छोटा हो, या जो कोई भी हो, वो बिल्कुल उसी तरह जाएगा, समझे? बस वो सारे बच्चे और कलीसिया और जो कुछ भी उसमें लिखा है वो जाएगा। खुदा कबल अज वक्त अपने इल्म से सब कुछ जानता था, अब हम नहीं जानते। आप कहते हैं भाई ब्रहनम, क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप वहाँ पर हैं? जी नहीं जनाब, मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता। खुदा मुझे किसी और खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसी तरह आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, और ईमान ही से मैं बचा हूँ, ना कि इल्म से निजात पाई है, बल्कि ईमान से निजात पाई है। और इसी तरीके से आपने निजात पाई है, बल्कि इसी तरीके से हम सब ने निजात पाई है। लेकिन याद रखें, खुदा लामहदूद है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? लामहदूद, खैर, लामहदूद होते हुए वो सब कुछ है, और फिर वो आलमे कुल भी है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? आलमे कुल का मतलब है कि वो सब कुछ जानता है। वो तब तक आलमे कुल नहीं हो सकता जब तक लामहदूद ना हो। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो नहीं जानता। वो हर उस मच्छर को जानता है जो कभी इस दुनिया में पैदा होगा, और कितनी दफा वो अपनी आंखों को झपकेगा, और वो कितनी जिसामत पाएगा, या वो सब मिलकर कितनी जिसामत पाएंगे। और वो हर उस सांस को जानता है जो आप लेंगे, और ये भी कि वो कितनी गहराई तक आपके फेफड़ों में जाएगी। ये लामहदूद होना है। अब अगर वो लामहदूद है तो यही बात उसे आलमे कुल बनाती है। क्या ये दुरुस्त है? और अगर वो आलमे कुल है तो यही बात उसे हर जगह हाजिर बनाती है, क्योंकि वो हूबहू उसी लम्हे उसी घड़ी वक्त को जानता है कि एक सेकंड के 25,000वें लम्हे में कब ये बात वकू होगी, समझे? अब इस बात को समझ गए हैं? और फिर यही बात है कि वो सब कुछ जानता है, और यही सबब है कि उसके पास कुल इख्तियार है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, अब देखते हैं। अब और वो तमाम बच्चे जिन्हें खुदा, बल्कि हर एक जिसे खुदा, जब वो, अब याद रखें कि कब यीशु, बाइबल कहती है, अब हम जानते हैं कि यीशु तकरीबन 30 AD में कुर्बान हुआ। क्या ये दुरुस्त है? तकरीबन ये साल का दरमियानी वक्त था। मेरा ख्याल है शायद ये 30 AD था। अब देखें, लेकिन बाइबल बयान करती है कि वो बनाए आलम से पेशतर कुर्बान हुआ, और आपके नाम भी बर्रा की किताब में मौजूद थे। बल्कि जब बर्रा कुर्बान हुआ तो उस किताब को छुड़ाए। अब यहाँ पर एक अजीम बात है, काश ये तकवियत का सबब बने। देखें, जब ये बर्रा, अब याद रखें, बाइबल बयान करती है बरे की किताबे हयात बनाए आलम से पेशतर लिखी गई थी, और आपके नाम उसमें दर्ज थे, यानी उस किताब में थे जब बरा बनाए आलम से पेशतर कुर्बान किया गया था, ताकि हर नाम जो उस किताब में दर्ज था उसे निजात बख्शे, समझे? क्या अब आप इस बात को समझ गए हैं? गौर करें, कुछ भी बेतरतीब नहीं है। ये खुदा के उस आला मनसूबे के बिल्कुल मुताबिक काम हो रहा है। तवज्जो दें, क्योंकि घड़ी बिल्कुल ठीक हरकत कर रही है। आपके नाम उसमें बनाए आलम से पेशतर लिखे गए थे, और तब बर्रा ज़बह हुआ ताकि उन्हें निजात बख्शे जिनके नाम किताब में दर्ज थे। और अब वो आगे बढ़ता है, उस किताब को लेता है ताकि अपनी निजात का दावा करे। मैं अब इसी बात को जारी रखना नहीं चाहता, वरना आज हम किसी दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, क्या दोजख और आग और गंदुक से जलने वाली झील एक ही चीज है? नहीं, लफ्ज दोजख जिसका तर्जमा बाइबल में किया गया है, मेरा ईमान है। अब देखें, यहाँ पर आलम बैठे हुए हैं और मैं इन्हें इज्जत देना चाहता हूँ। हमारे भाई आइवरसन और भाई वेल और दूसरे बहुत सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो कि वाकई थियोलॉजियन है। लफ्ज दोजख या बरजख जो तर्जमा किया गया है उसका मतलब है कब्र। क्या ये दुरुस्त है? कब्र के लिए यूनानी लफ्ज है, लेकिन आग की झील के लिए कुछ और तर्जमा हुआ है, क्योंकि मुकाशवा में दोनों दोजख और सब कुछ आग की झील में डाले गए, समझे? ठीक है। आए अब अगला सवाल देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आग की झील और जहन्नुम अब्दी हैं? जी नहीं जनाब, नहीं जनाब। जो भी चीज तख्लीक की गई है वो अब्दी नहीं है, हरगिज नहीं। कोई भी चीज जो तख्लीक की गई है, यही सबब है कि कोई भी जहन्नुम अब्दी नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप अब्दी जहन्नुम में जलने वाले हैं तो मुझे इसका हवाला बताएं, समझे? क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है। जहन्नुम शैतान और उसके फरिश्तों के लिए और मुखालफ मसीह और उसके लोगों के लिए बनाया गया। वो लोग जो शैतान थे और शैतान उनमें समाया था, ये उनके खात्मे के लिए बनाया गया है। जो कुछ भी ऐसा था, जो भी पूरी दुनिया में हर एक चीज में से और जो कुछ भी इसके अलावा है, सिर्फ एक ही चीज अब्दी है और वो खुदा है। कब्ल इसके कि कोई जरा या इलेक्ट्रॉन होता, या कब्ल इसके कि कोई कहकशा होती, इलेक्ट्रॉन या कोई और चीज होती, खुदा मौजूद था, क्योंकि वो खालिक है। और वाहिद एक ही तरीका है जिसके वसीले आप अब्दी हो सकते हैं कि आप अब्दी जिंदगी हासिल करें। यूनानी में जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मेरा ख्याल है वो जोए है। क्या ये दुरुस्त नहीं है? जोए, जोए। और फिर खुदा वो जिंदगी आपको अता करता है। एक बाप होते हुए आपका बाप अपनी सारी जिंदगी आप पर निछावर कर देता है, आपकी माँ के साथ शादी का अहद बांधता है और फिर वो खुशी से उस अहद को निभाता है। मेरी बात को समझे। और फिर इस तरह आपको जिंदगी देता है और इसी तरीके से खुदा करता है। वो अपनी जिंदगी एक बेटे को बख्शने में खुश होता है, समझे? और फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं जो कि जोए है, यानी खुदा की अपनी जिंदगी। और मैं उन्हें अब्दी जिंदगी दूंगा और उन्हें आखिरी दिन उठा खड़ा करूंगा। यही वो वाहिद तरीका है जिसके वसीले आपके पास अब्दी जिंदगी हो सकती है। और वो अब्दी जिंदगी अपने बदन को पहचानती है और उसे लाजमी उसके अंदर आना है ताकि ये उसमें उसके साथ हो, क्योंकि उसके लिए ये नामुमकिन है कि वो वहीं ठहरी रहे। जैसे कि मसीह के रूह ने बदन पर जुम्बश की, यानी खुदा के रूह ने उस अजीम दिन में मसीह के बदन पर जुम्बश की और ये जाहिर हो गया कि वो दोबारा जी उठा है। इसी तरह से ईमानदार भी अपने बदनों में जी उठेंगे। अब याद रखें, जब वो यानी यीशु मुआ तो आलमे अरवा में उतर गया, क्योंकि उसे वहाँ जाना था, इसलिए कि वो खताओं को अपने ऊपर लिए हुए था। और उसने उन रूहों के दरमियान जाकर मुनादी की जो आलमे अरवा में थी और जिन्होंने नूह के जमाने में यानी सब्र तहम्मुल में भी तोबा ना की थी। क्या ये दुरुस्त है? वो आलमे अरवा में उतर गया और उन रूहों के दरमियान जाकर मुनादी की, वो रूहें जो खुदा से जुदा हो गई थी। मौत का मतलब है जुदाई, और वो खुदा से जुदा हो गई थी और किसी भी तरह वापस नहीं आ सकती थी। और यीशु वहाँ गया ताकि साबित करे कि वो वही था जिसके मुतल्लिक कहा गया था कि वो औरत की नस्ल से होगा, सांप की नस्ल। गौर करें कि सांप की नस्ल ने क्या किया था। मुखालफ मसीह सुर्ख घोड़े पर सवार और उसका अंजाम मौत और जुदाई है। औरत की नस्ल यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार, उसका अंजाम जिंदगी है, समझे? ये क्या है? एक दूसरे के मुखालिफ, यानी सांप की नस्ल औरत की नस्ल के खिलाफ है। अब आप इसे समझे? ओ, हम कुछ देर और इस पर बात कर सकते हैं, क्या ये अच्छा ना होगा? लेकिन आए इस बात के साथ आगे चलते हैं। भाई ब्रहनम, क्या पहला घोड़सवार और पहली मोर और दूसरा तसालिकियों ये गुनाह के शख्स के मुकाशवा को पूरा करते हैं? जी हाँ, ये दुरुस्त है, ये पूरा करते हैं, ये आसान है, ये पूरा करते हैं। हाँ, यही वो गुनाह का शख्स है, ये वही एक शख्स है, लेकिन मुख्तलिफ सूरतों में सवार है, यहाँ तक जब तक वो जर्द घोड़े पर सवार नहीं होता जो कि मौत कहलाता है। लेकिन मसीह पाकीजगी और तकदीस के वसीले सफेद घोड़े पर सवार होकर आता है और यही हमेशा की जिंदगी है, आप समझे? उन नए सिरे से पैदा शुदा ईमानदारों के साथ क्या होगा जो मुख्तलिफ तंजीमों में है लेकिन मसीह की दुल्हन नहीं है, उनके साथ क्या होगा? ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ देर पहले हमने इसके मुतालिक बात की थी, समझे? वो बड़ी मुसीबत में जाएंगे, वो बड़ी मुसीबत में शहीद होने वाले हैं और आखिर में हजार साल बादशाह में वापस आते हैं, यानी अपनी सजा पाने के बाद वापस आते हैं, समझे? क्योंकि बाइबल कहती है जो बाकी हैं, बल्कि बाकी मुर्दे हैं, वो जिंदा ना किए जाएंगे जब तक हजार साल पूरे ना हो जाएं। और फिर वहाँ पर जी उठना है और फिर रास्तबाज और नरास्त दोनों आगे आते हैं और मसीह और उसकी दुल्हन उनका इंसाफ करते हैं। वो अपने लाखों मुकदसों के साथ जमीन पर आता है। क्या ये बात दुरुस्त है? यानी अपनी दुल्हन के साथ अदालत लग गई, किताबें खोली गईं, और फिर एक दूसरी किताब खोली गई, जो किताबें हयात थी और वहाँ उसने बेड़ों और बकरियों को अलग अलग किया। क्या ये बात दुरुस्त है? उनका दुल्हन से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो अदालत में बहैसियत उसकी मलका उसके साथ खड़ी है। मलका और बादशाह इकट्ठे थे। वो अपने मुकदसों के साथ आया और लाखों लाख उसकी खिदमत करने वाले थे, यानी उसकी बीवी। तब अदालत लगी हुई थी, तब ही बेड़ों को बकरियों से अलग किया गया। गुज़िश्ता रात आपको याद है जब मैंने वो एक छोटी सी गौर फिक्र करने वाली बात बताई थी, एक ग्वाले पर ध्यान दें। क्या आप समझ गए हैं? देखें, यहाँ पर हैं आप। नहीं, वो बल्कि ये वो कलीसिया है। वो लोग हैं जो तंजीमों में हैं, उनमें वो हकीकी मसीही हैं जो पैगाम को हासिल करते हैं, मगर वो उसे कभी भी समझ नहीं सकेंगे। उनमें कभी भी इसकी मुनादी नहीं की जाएगी। और वो जो मिली जुली भीड़ में शामिल हैं, जिनमें इसकी मुनादी की गई है, अगरचे उनके नाम बरा की किताबें हयात में दर्ज नहीं किए गए, तो ये पैगाम उनके सरों के ऊपर से गुजर जाएगा। जी हाँ, लेकिन वो अच्छे लोग होंगे और वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। और उन्हें एक आजमाइश से गुजारा गया और वही ग्रोह उनका इंसाफ करेगा जिन्होंने उन्हें कलाम सुनाया था। क्या आप नहीं जानते मुकद्दस जमीन का इंसाफ करेंगे? देखें, वो उन्हें कलाम सुनाएंगे, उन्हें कलाम सुनाया जाएगा बिल्कुल उन्हीं लोगों से जिन्होंने उन्हें पैगाम की गवाही दी थी कि उसमें से बाहर निकल आओ। समझे? मेरा ख्याल है इसी से वाजे हो गया है, जैसा कि मेरे पास यहाँ बहुत सारी बातें हैं। भाई ब्रहनम, क्या सातवां फरिश्ता जिस पर एलिया की रूह है, क्या ये वही एलिया है जो 144,000 यहूदियों के पास आमदेसानी के बाद 3.5 साल दौर में जाएगा, क्योंकि हम में से कुछ इसमें उलझ गए हैं? नहीं, ये वही एक शख्स नहीं है। गौर करें, ये दोनों मुख्तलिफ अशखास हैं, क्योंकि अलीशा जो एलिया की सूरत में आया, लेकिन वो एलिया नहीं था। और फिर एलिया की रूह उस शख्स पर आई जिसका नाम योहन्ना अस्तबागी था, मगर वो एलिया नहीं था। और वो शख्स जो सातवां पैंबर फरिश्ता है, यानी लोदीके जमाने के आखिर में होगा, वो भी बिल्कुल वही एलिया नहीं होगा। वो अपने लोगों के हिसाब से एक गैर कौम से होगा, और एलिया बल्कि एलिया की रूह का नजूल होगा, और वहाँ उन लोगों में वो एक यहूदी होगा। गौर करें, क्योंकि वो अपने ही लोगों के पास भेजे जाते हैं। ये मेरा मुकाशवा है। इसका सबब ये है कि मैं और टॉमी ओसबोर्न थे उस वक्त जब मैंने और टॉमी ने इस पर बात की थी, और मैं नहीं जानता था कि मैं सिर्फ बीमारों के लिए दुआ कर रहा था। और जब मैं वहाँ ऊपर आया तो वहाँ एक खातून आई जो फोर्ट वैन गॉस्पल टैबरनेकल से थी, और वो किसी मुल्क में मिशनरी थी। उसका पस्तान कैंसर के बाइस काफी बड़ा हो चुका था, और वो उसी गली में एक छोटे से घर में रहती थी जहाँ हम रहा करते थे। और मैंने उस प्यारी बहन के लिए दुआ की और उसे शिफा मिली, और वो दोबारा खिदमत में लौट गई। और जब वो अफ्रीका से लौटी तो उसने यहाँ पर मिशन्स के मुतालिक एक किताब छोड़ी। मेरा ख्याल है ये ठीक है, मिशनरी अच्छे लोग होते हैं, और मैंने भी कभी ज्यादा मिशनरियों के मुतालिक नहीं सोचा। और बस मैंने सोचा खैर वो वहाँ पर सिर्फ खुदा का एक दफ्तर होते हैं, बस ऐसा ही है। जैसा कि मेरी खिदमत ठीक यहाँ पर 8 और Penn Street पर है, बस जितनी बेहतरीन मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन मैं बैठा मुतालिया कर रहा था कि मैंने वो किताब उठा ली और उस पर सियाफाम नस्ल की तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें एक उम्र रसीदा बाप था और उसके सर पर सफेद बालों की एक झालर सी बनी हुई थी, और उसके नीचे यूं लिखा हुआ था, गोरे इंसान तेरा बाप कहाँ है? गौर करें, लिखा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जहन कमजोर हो गया है, और मैं बहुत अच्छे तौर पर नहीं समझ पाता। अगर मैंने यस्सु को जब मैं जवान था जान लिया होता तो मैं उसे अपने लोगों के पास ले गया होता। खैर मैंने उसे पढ़ा और कोई चीज मुझे उकसा रही थी, इसे दोबारा पढ़, और मैंने पढ़ना जारी रखा। ओ, तुझे इन लोगों के लिए वक्त निकालना चाहिए। मैं इसे पढ़ता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया, ऐसे जैसे उसमें कुछ खास बात थी। उस दिन की तरह जब मैं ग्रीन मिल में था, जब मैं घर में से निकला था, तो मैं उसे समझ नहीं पाया था कि कैसे लोग हकीकी पाकरू के साथ गैर जुबाने भी बोलते हैं और नारे भी मारते हैं और फिर मुखालफे मसीह भी होते हैं। हकीकी पाकरू के साथ गैर जुबानों में बोलते हैं और गैर जुबानों में बोलते हुए भी वो शैतान होते हैं। ये सच है, और मैं इस बात को आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। जी हाँ बेशक। और जब वो वहाँ खड़े होते हैं तो उस वक्त पर गौर करें, बस गैर जुबाने रूल कदुस का निशान नहीं है, बल्कि ये रूल कदुस की एक नेमत है, समझे? और शैतान हर उस चीज की जो खुदा ने तखलीक की है हत्ता के इलाही शिफा और बाकी सब कुछ की भी नकल कर सकता है। यीशु ने कहा, उस दिन बतेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से बद्रोहे नहीं निकाली? क्या हमने ये खुशखबरी की मुनादी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से मौजजे नहीं दिखाए और ऐसी और बहुत सी बातें नहीं की? लिखा है, मैं उनसे साफ कह दूंगा, ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। बाइबल बयान करती है, बिल्कुल वही बारिश रास्त और नरास्त दोनों पर पड़ती है, और गेहूं के खेत में लगी हुई जड़ी बूटियां भी खुश होती हैं और नारे मारती हैं, ठीक उसी पानी के साथ जो उन पर गिरता है, जैसे कि बारिश का पानी दोनों के लिए भेजा जाता है। लेकिन उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। पुरानी जड़ी बूटियां भी वहीं खड़ी हो सकती हैं और जितना चाहे खुश हो सकती हैं और नारे मार सकती हैं, क्योंकि उन पर भी भरपूर बारिश हुई है जो कि गेहूं पर हुई थी। आप इस मकाम पर हैं, बस वो नारे लगा सकते हैं, गैर जुबाने बोल सकते हैं और हर एक चीज की जिसे वो चाहे नकल कर सकते हैं। लेकिन उस दिन उन्हें कहा जाएगा, ऐ बदकारो, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, सुने मैंने क्या कहा था, गौर से सुने और वापस निगाह डालें, अपने आप को कलाम के साथ परखें और देखें कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। आप खवातीन जो बाल कटवाती हैं, इन्हें भरने दें, और जो मुख्तसर कपड़े पहनती हैं, इनसे छुटकारा पाएं, और एक औरत की मानिंद मजाहिरा करें, और आप मर्द हजरात जो अभी तक सिगरेट पीते हैं और दौड़ दौड़ कर जुए खाने में जाते हैं, खुद को इस काम से रोकें। मुझे इस बात की परवाह नहीं आप कितना इकरार करते हैं, और अगर आप अभी तक उसी तंजीमी चक्कर में फंसे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये है, ये वो है, बेहतर है कि अपने आप को इससे दूर कर लें, वापस निगाह डालें और इसको कलाम के साथ परखें, क्योंकि हम उस सीधा करने वाली डोरी से बाहर आ रहे हैं। हमें जरूर ही कटे हुए बालों और तमाम ऐसी चीजों से बालातर होना चाहिए। हम किसी चीज में वापस आ गए हैं, क्योंकि अब इस जमाने में खुदा छुपे हुए वेदों को आयां कर रहा है, जो के बनाए आलम से पेशतर इस किताब में दर्ज थे, और जो इन छोटी छोटी बातों की ताबेदारी कर रहे हैं वो इसकी दूसरी बातों को भी थाम लेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो ये बातें उनके सर पर से गुजर जाएंगी, ऐसे जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। और ऐसा जरूर होगा जैसे जदून अपने लोगों को अलग कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर हजारों हजार लोग थे। खुदा ने कहा, ये बहुत ज्यादा है, इन्हें फिर अलग कर। उसने उन्हें एक और इम्तिहान में डाल दिया, और इन्हें फिर अलग कर, और इन्हें एक मरतबा फिर अलग कर, और आगे बढ़ते ही चले गए जब तक के थोड़े से मुट्ठी भर ना रह गए। और खुदा ने कहा, यही वो ग्रोह है जिससे मैं चाहता हूँ कि जंग करे। दरअसल यही कुछ था। पेंटिकोस्टल औरतें जो इधर उधर जाती हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं और खुदा के कलाम में से सुन रही हैं और समझ रही हैं कि ऐसी बातें गलत हैं, तो फिर क्या आप सोचती हैं कि वो इन बातों को कबूल कर पाएंगी? जी नहीं जनाब, क्योंकि हर साल जिसमें से मैं होकर गुजर रहा हूँ बनिस्बत उस वक्त के जब मैंने आगाज किया था, अब कटे हुए बालों वाली औरतों की तादाद ज्यादा हो गई है। कहते हैं, इसका इससे क्या लेना देना है, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा, भाई ब्रहनम, क्योंकि लोग आपको नबी मानते हैं। अब मैं ये बात नहीं कहता कि मैं नबी हूँ, किसी ने मुझे ऐसा कहते सुना है, लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आपने ऐसा कहा है तो फिर ऐसा ही करें, क्योंकि आप इस बात को मानते हैं। उसने कहा, तो क्यों फिर आप लोगों को नहीं बताते कि रूह कुदूस कैसे हासिल करना चाहिए और ये कैसे हासिल करना चाहिए और कैसे अजीम रूहानी नेमतें हासिल करनी चाहिए और कैसे कलीसिया की मदद करनी चाहिए? मैं कैसे उन्हें अलजबरा सिखा सकता हूँ जबकि वो अपनी ABC को भी नहीं समझते? ये सच है, आप इन छोटी छोटी चीजों को करें, यहाँ बिल्कुल नीचे बुनियाद पर आ जाएं और उन्हें साफ कर दें और दुरुस्त आगाज करें। आमीन। ठीक है, बहरहाल मैं किस बात के बारे में बात कर रहा था, आए देखें, क्योंकि मेरा मकसद हरगिज मजमून से हटना नहीं है। देखें, माजरत चाहता हूँ। ठीक है, कुछ तो हम में से कुछ तो उलझन में पड़ गए हैं। क्या वही एलिया है? जी हाँ। ओ, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, बल्कि ये एलिया जो गैर अकवाम के पास आएगा, इस पर गैर अकवाम के लिए उसी के रूह का मसा होगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों को अब्दरी से निकालने के लिए हमेशा उसी रूह को भेजता है, और ये उसके मकसद को अच्छे तरीके से पूरा करता है, बस ये उसे ठीक वापस लेकर आता है। क्योंकि अब देखें, क्योंकि अब अगर वो किसी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता को इस्तेमाल करता है तो अपनी किस्म के लोगों को खींचेगा, बस वो एक ऐसे शख्स को सामने लाएगा जो अपनी ABC को भी मुश्किल से जानता हो और अपने अल्फाज का तलफ्फुज भी ठीक तरीके से अदा ना कर पाता हो। वो उसे बियाबान या किसी दूसरी जगह से लाएगा और उसे सादा दिल लोगों के दरमियान लाकर पुरजोश तरीके से इस्तेमाल करेगा, और फिर वो लोग उसे कबूल करेंगे और उसे कबूल कर लेंगे, समझे? और अगर वो यूं आए कि उसका कॉलर, जैसे पलूस ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आला दर्जे की तकरीर या तालीम के साथ नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे पास जी उठने की कुदरत के साथ आया हूँ, खुदा को उसमें से उसकी तालीम को निकालने के लिए अरब में 3.5 साल लगे और खुदा को मूसा में से اس کی تعلیم نکالنے کے لیے 40 سال لگے, سمجھے؟ بس آپ اس مقام پر ہیں اور یہ ایسا ہی ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ایسا نہیں کرتا, اب میں جہالت کی طرفداری نہیں کر رہا, بلکہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اس کا محتاج نہیں ہے, وہ تعلیم کا محتاج نہیں ہے. اس دنیا کی حکمت متضاد ہے, اور تعلیم انجیل کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر ہمارے پاس تعلیم نہ ہوتی تو پھر ہمارے پاس یہ تمام بڑی بڑی سیمیناریاں اور ایسی دوسری چیزیں بھی نہ ہوتی جو اب ہمارے پاس ہیں. بس سادہ دل لوگ ہوتے جو کلام کو سن لیتے, مگر لوگ اتنے مہذب اور غلط ملت ہو گئے ہیں اور اپنی تنظیموں میں خود کو سختی سے بند کر لیا ہے اور ان کے ساتھ قائم ہیں اور یہی سب کچھ چلا آ رہا ہے. وہ ایسی روح کو لے لیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ایک نیک سیرت عورت کو ایک برے شخص کے ساتھ شادی کرتے دیکھا ہے؟ وہ برا آدمی یا تو اس عورت کی طرح اچھا بن جائے گا یا وہ عورت اس کی طرح بری بن جائے گی, سمجھے؟ یہ سچ ہے, یہی سبب ہے. اس نے کہا ان میں سے نکل آؤ کیونکہ میں تمہیں آسمان پر لے کر جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کے پاس اس قسم کا ایمان ہونا چاہیے جو آپ کو نکال کر یہاں سے لے جائے. دانیل 9:27 کا ایک ہفتے والا عہد کب پورا ہوا تھا؟ اس عہد کا آدھا حصہ پورا ہو گیا ہے جب یسوع اس زمین پر یہودیوں میں منادی کر رہا تھا اور وہ کسی بھی طرح غیر قوم کی طرف نہیں گیا, اور اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا غیر قوم کی طرف مت جانا, وہ صرف یہودیوں کے لیے تھا, سمجھے؟ اور اس نے 3.5 سال تک منادی کی. اب یہاں تک یہ 70ویں ہفتے کا آدھا حصہ ہے, جیسے کہ دانیل نے کہا تھا کہ وہ کرے گا. اب یاد رکھیں کہ وہ واضح طور پر یہودیوں پر ظاہر ہوا تھا, لیکن ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھی کہ غیر قوم کے لیے وقت لیا جائے. کیا آپ سارے پروگرام کو نہیں دیکھ پا رہے, سمجھے؟ اور اس نے اپنے آپ کو ایک نبی ثابت کیا اور بالکل وہی کچھ کیا جو نبی کو کرنا تھا, اور انہیں نبی کا نشان دکھایا جیسا کہ تمہارے اپنے کلام نے کہا ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ وہ روحانی یا ایک نبی ہے تو جو وہ کہتا ہے اگر وہ پورا ہوتا ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ مسلسل پورا ہی ہوتا چلا جاتا ہے تو اس پر غور کریں. جیسے کہ آپ بائبل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہا گیا ہے کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, مانگو تو دیا جائے گا. اب دیکھیں اگر آپ اس پر غور کریں کہ کھٹکھٹاؤ اس کا مطلب ہے مسلسل کھٹکھٹانا. ٹھیک اسی مقام پر کھڑے رہے اس بے انصاف قاضی کی مانند جو اس بیوہ کا انصاف نہیں کرتا تھا, لیکن وہ اس کے دروازے پر کھٹکھٹاتی رہی اور کہتی رہی میرا انصاف کر. یہ ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ کہنا ہے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے, آمین. یہ ڈھونڈنا نہیں ہے اس وقت تک ٹھیک وہاں ٹھہرے رہے جب تک آپ کو مل نہیں جاتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. بس اس نے اس کا وعدہ کیا ہے, اس لیے اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہیں جب تک آپ اس مقام کو تھم نہیں لیتے, سمجھے؟ اب دیکھیں اب 70ویں ہفتے کے آخری حصے میں, اس کا آخری حصہ مصیبت کے دور کے درمیان والا وقت ہے, یعنی کلیسیا دلہن کے اٹھائے جانے کے بعد پھر 3.5 سال پورے ہوں گے. اور دیکھیں مکاشفہ 11 کے مطابق ان پر دوبارہ دو نبیوں یعنی موسیٰ اور ایلیا کے وسیلے یہ ثابت کیا جائے گا. اب آئیں دیکھیں یہ آگے کیا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایک برگزیدہ ہیں تو کیا آپ دلہن کے ساتھ اوپر جائیں گے؟ جی ہاں, ہو جی ہاں, جی جناب, یہ آسان ہے. بھائی برہنم, کیا آپ کے کہنے کا مطلب تھا کہ 7,000 گروہ پر مشتمل لوگوں نے بلیم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے یا وہ 700 تھے؟ میرا کہنے کا مطلب تھا 7,000. اور دیکھیں میں نے اس بات کے لیے معذرت بھی کی, اور یہ صرف بولنے میں غلطی ہوئی ہے. میں تو صرف, جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا, کیا آپ نے یہاں کھڑے ہوئے مجھ پر غور کیا تھا جو میں نے کہا تھا؟ اور اس نے برے کو دیکھ کر گواہی دی, سمجھے وہ برا زمین پر تھا, سمجھے؟ خدا کے روح کو برے پر اترتے دیکھ کر گواہی دی. اب وہاں لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, آپ سمجھے؟ اب یہ عبارت یونانی کی اصل حالت میں یوں لکھی ہے, فیل مطلق فیل سے قبل موجود ہے, لیکن آپ یہاں پر غور کریں, اسے حقیقت میں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اب ذرا کلام کو کھولیں, دیکھیں سینٹ جیمز کے ترجمے میں بائبل کہتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں سکونت کرنا میری خوشنودی ہے. لیکن در حقیقت اگر ہم اسے اس طرح کہیں جس طرح آج ہم کہتے ہیں یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں سکونت کرنا میری خوشی ہے, سمجھے؟ دیکھیں آپ اس کے گرد گم جائیں گے. دیکھیں یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں سکونت کرنا میری خوشی ہے, سمجھے؟ اب آج ہم اسے اس طرح کہیں گے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں سکونت کرنا میری خوشی ہے. دیکھیں وہی لفظ ہیں صرف آگے پیچھے ہیں, समझे? अब देखें, जी हाँ, मेरा मतलब था मेहरबानी से, मैं उस बात के लिए माजरत खा हूँ, और मैं तो आप भाइयों से और दोस्तों से जो टेप रिकॉर्ड करते हैं कहता हूँ सुने, मेरा वैसा कहने का मतलब नहीं था। मैं एंजील का मुनाद हूँ, और मैंने जितनी मर्तबा इसकी मुनादी की है मैं जानता हूँ वो 7,000 थे, मुझसे सिर्फ कहने में ये 700 निकल गया है, लेकिन मेरा मतलब 700 नहीं था, बल्कि मेरा मतलब कुछ और था, और मैंने इसे कलाम से नहीं पढ़ा था जबकि मैं कोई और बात कर रहा था, तो ये मेरे जहन में आ गया और मैंने 7,000 की बजाय 700 कह दिया। मैं ऐसी बातों पर अक्सर गलती कर जाता हूँ क्योंकि मैं भी यकीनन एक खाकी इंसान हूँ, बस मैं आपसे माजरत खाऊं, समझे? मेरा हरगिज वैसा करने का मकसद नहीं था। क्या मसीह की दुल्हन और मसीह का बदन एक है? जी हाँ जनाब, समझे? अब देखिए, अब यहाँ मैं इस बात पर बोलना शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इस पर पूरा पैगाम है, समझे? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब खुदा ने आदम को उसकी पसलियों में से उसके लिए एक दुल्हन दी, तो उसने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। क्या ये बात दुरुस्त है? जब खुदा ने मसीह को उसकी दुल्हन दी, तो रूह ने दुल्हन को रूहानी बदन दिया, मसीह को उसकी पसली पर दिल के नीचे छेदा गया, और पानी और खून और जान बह निकले, वो उसकी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। हम गोश्त और हड्डियां हैं, दुल्हन उसका गोश्त और हड्डी है, और ये बिल्कुल सच है, ये उसकी यही उसकी दुल्हन है। क्या मसीह की दुल्हन की आमदे सानी से कबल कोई खिदमत होगी? यकीनन है। देखें, मसीह की दुल्हन की खिदमत यही है जो ठीक अभी जारी है। यकीनन, देखें, यही मसीह की दुल्हन वक्त का पैगाम है, यकीनन यही है, और वो दुल्हन रसूलों, नबियों, उस्तादों, मुबशरों और चरवाहों पर मुश्तमिल होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? यही मसीह की दुल्हन है, यकीनन, और इसकी एक खिदमत है, बल्कि अजीम खिदमत है, जो इसी जमाने की खिदमत है, और ये नहायती फरोतन होगी। अब याद रखें कि पहले यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, यानी पिछले इतवार। सोचें और याद करें कि तब मैंने किस पर मुनादी की थी, फरोतनी पर। ओ, इसे मत भूले, मैं एक मिनट के लिए यहाँ ठहरूंगा ताकि दोबारा उस पर बात करूँ और खबरदार करूँ। याद रखें, जब खुदा किसी अजीम काम को करने की पेशनगोई करता है, तो लोग उसे अपनी अकल से बहुत दूर देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसे खो देते हैं जो वाकया होना होता है। और जब खुदा किसी अजीम काम के मुतल्लिक कहता है, तो दुनिया उस पर हंसती है और कहती है, वो तो जाहिलों का टोला है। ये सच है, लेकिन जब ये बड़ी दुनिया, बड़े लोग और बड़ी कलीसिया कहती है, बेटा ये काम जलाली है, तो फिर खुदा कहता है कि ये जाहिलों का टोला है। बस देखें कि आपको तवज्जो करने की जरूरत है। मेरा ये मतलब नहीं कि ये बात शायद इस तरह हो या बिल्कुल इसी तरह हो, लेकिन ये इसी तरह है। देखें, यहाँ पर एक बड़ी मुकद्दस ऑर्थोडॉक्स कलीसिया थी, और वो कहते थे, हम कलाम को जानते हैं, हमारे पास स्कूल हैं, हमारे पास सेमिनरियां हैं, हमारे पास नहायती तालीम याफ्ता लोग हैं, क्योंकि हम हजारों सालों से यहोवा से वफादार हैं। हम कलीसिया हैं, हम सने इडरन हैं, हमारे पास यहाँ काउंसिल ऑफ चर्चेज है, दोनों ही यानी फरीसी और सदूकी और तमाम तंजीमें हैं, और सब के सब इकट्ठे हैं जैसे कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। देखें, और वो कहते हैं, हम सब एक हैं, ये काउंसिल ऑफ चर्चेज है, और हम यहाँ पर बड़े बड़े निशानेबाज हैं, हम उस कलाम को जानते हैं, मगर जहाँ दरिया है वहाँ नीचे वो जाहिल हकीर शख्स क्या है जिसके चेहरे पर दाढ़ी जोल रही है और भेड़ की खाल का लिबास पहने हुए है, वो हमें क्या सिखाएगा? यकीनन वो उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन बाइबल ने मलाकी 4 बाब में, बल्कि 3 बाब में कहा, देखो मैं अपने रसूल को अपने आगे भेजूंगा और वो मेरे आगे रात दुरुस्त करेगा, और ये बात 712 साल पहले कही गई, और यूहन्ना आ मौजूद हुआ। ओ, यशायाह का वो अजीम नबी वहाँ खड़ा हुआ था और कह रहा था, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंत की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये सच है, और लिखा है, और दाऊद, ओ बल्कि उनमें से बतेरों ने कहा, हर ऊंचा मुकाम नीचा किया जाएगा। ओ, उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, जब वो शख्स आएगा तो वो अपनी उंगली से इशारा करेगा और पहाड़ों को हटा देगा। ओ, सब ऊंची और नीची जगह हमवार की जाएंगी, और फिर वो तमाम जगह जो गैर हमवार हैं हमवार की जाएंगी। और भाइयों, हम इर्द गिर्द हर खेत में मकई बो रहे होंगे, और हो अब जब वो शख्स आएगा तो हम अजीम काम कर रहे होंगे, समझे? वो खुदा से तवक्को कर रहे थे तो वो किसी टेढ़े आदमी को ले और उसे सीधा कर दे, और फिर उनके दरमियान ले आए, और वो कहें, हमारे मसीहा का अजीम पेशरो नीचे उतर आया है और जैसे ही उसकी खिदमत खत्म होती है और वो चला जाता है तो ये वापस वहीं जाएं और दोबारा उसकी तालीम में रद्दो बदल करें और उसे बिल्कुल सेमिनरी के साथ जोड़ दें और कहें ठीक है मेरे प्यारे बेटे जाओ और इन्हें बताओ, समझे? ओ मेरे खुदाया। देखें, जब वो आया तो फिर कुछ हुआ, फिर वहाँ एक शख्स आ गया जो उनके स्कूलों के मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानता था। उसके पास मेंबरशिप कार्ड भी नहीं था, ओ कोई सरकारी सनद नहीं थी, हरगिज नहीं, और किसी को ये भी मालूम नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में कभी किसी स्कूल में एक दिन भी गया है या नहीं। आप उसके बोलने से अंदाजा नहीं लगा सकते थे। वो पादरियों के तरीके कार के मुताबिक नहीं बोलता था, वो तो सांपों, कुल्हाड़ियों और जंगलों और ऐसी ही चीजों के बारे में बात करता था। देखें, दरख्तों के बारे में बात करता था। उसने कभी भी पादरियों के तरीके के मुताबिक दिन की तरतीब या इस दिन या किसी दिन या उस दिन के मुतालिक बात नहीं की। वो सेस फ्रेस, जो कि एक नशेआवर जहरीला केमिकल है, उसकी मानिंद होकर आया, जैसे कि हम यहाँ इंडियाना में कहते हैं। वो कहीं से झाड़ियों से निकलकर आ गया, हत्ता के दाढ़ी भी नहीं काटी थी और उसके बाल उसके सर पर खड़े हुए थे। मेरा नहीं ख्याल कि वो नहाया भी होगा, ये शायद हर 2-3 महीने के बाद नहाता होगा, ये सच है। हो सकता है उसने कभी रात में पजामा भी ना पहना हो, शायद वो कभी मोटर गाड़ी पर भी सवार ना हुआ हो, शायद उसने कभी अपने दांत भी साफ ना किए हो। ओ मेरे खुदाया, ये कैसा शख्स था, यकीनन ऐसा नहीं किया होगा। और यहाँ वो इस तरह बियाबान में अपने पैरों को मिट्टी पे पटकते हुए आता है और कहता है, मैं ही वो आवाज हूँ जो बियाबान में पुकार रही है, खुदावंत की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। कुछ उस्ताद उठ खड़े हुए होंगे और उन्होंने कहा होगा, अरे वाह, और कहाँ दोस्त, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी शिनाख्त है? हम इस मुहिम में आपके साथ कोई ताउन नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तो बताओ तुम्हारा कार्ड कहाँ है, तुम्हारी शिनाख्त कहाँ है? उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसके पास एक पैगाम था और वो उसके साथ आगे बढ़ा। अब आप गौर करें, वो उसी पैगाम की मुनादी करता है। उन्होंने कहा, हम क्यों इंतजार करें, खैर अगर हम वहाँ जाते हैं तो आज हम बिशप को वहाँ लेकर जाते हैं और देखते हैं वो उसके मुतालिक क्या कहता है। अगर हमने मुनासिब जाना तो हम वहाँ जाएंगे। ये कलीसिया का सरबराह है और हम जानते हैं कि वो इसको पहचान लेगा। अगर वो खुदा की तरफ से है तो वो हमारे बिशपों को पहचान लेगा। और वो उन आला रुतबा लोगों की एक लंबी कतार बनाते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुम घास में छुपे हुए सांप हो और कोलरों को घुमाए हुए हो और होली फादर और मजीद ऐसे ही बनते हो। किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? तुम जानते हो तुम्हारा वक्त नजदीक आ गया है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? आप कहते हैं, खैर मैं तो फलां से और फलां से तल्लुक रखता हूँ। उसने कहा होगा, मैं तुमको बताता हूँ कि जिस खुदा की खिदमत मैं करता हूँ वो इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। वो मेरे खुदाया। अब वो उस कलीसिया तकरीर के बरक्स वाज करने को था। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, इसलिए हर दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है और आग में डाला जाता है। हो बेशक मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो जोरावर है, चांद खून में बदल जाएगा। और हो वो मेरे खुदाया, वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूं को तो अपने खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसे को उसी आग में जला देगा जो बुझने वाली नहीं है। वो भूसे और गेहूं को अलग अलग करेगा। ओ मेरे खुदाया, कैसा अजीम पैगाम था। वो कहते हैं, ये आदमी हु, उसने क्या कहा था, ये किस वक्त आएगा? ओ ये जहालत है। भाई जोन्स, हमारे पास वो शख्स ठीक यहाँ पर मौजूद है। अगर इस जमाने में कोई शख्स है तो ये वही शख्स है जो उसे करेगा। फलां फलां बिशप ये करेगा, फलां फलां होली फादर ये करेगा। ओ मेरे खुदाया, समझे? देखें, खुदा सादगी में है, वो सादगी में काम कर रहा है। और फिर पहली बात आप जानते हैं, एक दिन वो वहाँ खड़ा हो गया और उसने कहा, हाँ वो तुम्हारे दरमियान खड़ा हुआ है। वो बहुत ही पुरयकीन था कि वही वो पेशरो है। वो अपने मुतालिक जानता था वो कौन था। यही सबब था कि वो उनके मुर्दा जमीरों को झंझोड़ रहा था और कहा, अब घबराओ मत बल्कि बढ़ते जाओ और काम करना जारी रखो। ऐ सिपाहियों, अपने मालकों के ताबे रहो और अगर तुम्हें कोई बुराई है तो उसे तरक कर दो। हम क्या करें, क्या हम ये काम करना तरक कर दें? क्या हमें इस काम को करने से बाज आ जाना चाहिए? उसने कहा, जो करते हो करते चले जाओ, उसे जारी रखो, आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम कुछ लगा रहे हो तो लगाते जाओ, समझे? और तुम ऐ सिपाहियों, किसी पर जुल्म ना करो और तुम ये करो, और जो कुछ तुम करते हो उसे जारी रखो और आगे बढ़ते जाओ, और इसी तरह से अपने मालकों की ताबेदारी करो। रबी, हमें क्या करना चाहिए? जैसे तुम हो वैसे ही काम करते जाओ, समझे? लेकिन तुम्हारे दरमियान एक है जिसके मुतालिक तुम नहीं जानते, लेकिन वो उसे जानता था क्योंकि वो उस घड़ी का पैगाम था। वो जानता था कि उसे उस शख्स का तारुफ करवाना है और वो जानता था वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। तुम्हारे दरमियान एक शख्स मौजूद है मगर तुम उसे नहीं जानते। बातें आगे बढ़ती जा रही हैं मगर तुम उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते। और इसी तरह फिर वहाँ पर कुछ होने वाला था। उसने कहा तुम देखोगे कि वो यहाँ पर होगा और मैं उसे जान लूंगा। और बिलाखर एक दिन उसने कहा देखो वो यहाँ है, देखो वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और फिर कहा मेरा वक्त पूरा हो गया है और मैंने तुम्हें उससे मुतारिफ करवा दिया है। अब जरूर है कि मैं घटूं, यानी जरूर ही मैं मंजर से हट जाऊं। अब यहां से वो कंट्रोल लेगा, हजार साल बादशाही ठीक शुरू हो जाएगी। देखें क्योंकि वक्त नजदीक है। और फिर जब वो आता है, यूहन्ना ने मजीद कहा वो कुछ करने वाला है, वो असलियत को जाहिर करने वाला है, वो कुछ करने वाला है, वो गेहूं को जुदा करने वाला है, वो भूसी को जलाने वाला है और गहरे तौर पर अपने खलियान को साफ करने वाला है क्योंकि उसका छाज उसके हाथ में है। लेकिन वो कैसा था? थोड़ा सा बेजोड़। अब उन्होंने उसकी तस्वीर कशी की होगी। वो शख्स ऐसा होगा, उसके पास एक तलवार होगी जो एक मील दूर तक चली जाएगी। वो फलस्तीन में खड़ा होगा और सिर्फ वहाँ पर खड़ा होगा। उन सफेद बादलों में से एक बर्पा होगा और उन सब रोमियों को इस तरह उठा लेगा और उन्हें जहन्नम में फेंक देगा और वो इसी तरह करना जारी रखेगा। देखें जब तक के वो उन सबको नेस्तो नबूद नहीं कर देगा। ऐसा क्यों था? इसलिए कि उन्होंने उसका ऐसा तस्वीर कायम कर रखा था। लेकिन जब वो जाहिर हुआ तो एक अदना सा बर्रा उनके दरमियान चल फिर रहा था जो कि हलीम और नरम था, जिसे कभी इस तरफ और कभी उस तरफ धकेल दिया गया। हत्ता कि यूहन्ना ने कहा अब उस नबी पर यानी यूहन्ना पर गौर करें। उसने कहा जाओ और उसे पूछो क्या आने वाला तू ही है। वो नहायत ही फरोतन था, यहाँ तक कि नबी भी उसे देखकर उलझन में पड़ गया और कहा जाओ पूछो क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। मत्ती 11 बाब में अब उसने शागिर्दों को कोई किताब नहीं दी थी कि आओ और उसे पूछो, जबकि यूहन्ना के शागिर्द जब यूहन्ना कैद में था बस उसने तमाम बातों पर गौर फिक्र किया था, यहाँ तक कि वो मेरा ख्याल है ये पैगंबर था जिसने कहा था कि उसकी उकाबी निगाह ने वहाँ पर उसकी अक्सबंदी कर ली थी। आप समझे, वो कर सकता था। वो नीचे जमीन पर आ गया था और वो ऊपर बुलंदी में भी ठहरा हुआ था, लेकिन जब उसकी नबुवत पूरी हो गई तो वो दोबारा वापस जमीन पर आ गया था। देखें क्योंकि उसको कैद खाने में डाल दिया गया था। आप समझे, आप गौर करें, वो उनके बड़े बड़े कामों के लिए काबिले इस्तेमाल नहीं रहा था, लिहाजा वो वहाँ कैद खाने में पड़ा हुआ था, लेकिन उसने उन बाकियों से ज्यादा ऊंची उड़ान मारी थी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, खुदा ने उसे इस्तेमाल किया और यीशु जानता था। आप देखें क्योंकि वहाँ पर खुदा का अवतार था, समझे, वो अवतार था। बस उसने वहाँ कहा, उसने कहा अब उसने उसे कभी कोई किताब नहीं दी थी जिसमें ऐसी बातें हों कि कैद में कैसा बर्ताव करना चाहिए। अगर वो कहता है अब एक मिनट ठहरो मैं यहाँ पर एक मुख्तसर मजमून लिख देता हूँ और तुम उसे वापस यूहन्ना के पास ले जाओ और उसको बताओ कि उसको कैद में मेरी खातिर कैसा बर्ताव बर्दाश्त करना चाहिए, समझे। नहीं, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कहा था। जाओ और यूहन्ना को बता दो कि इससे पहले वो बाहर आए उसके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए, समझे। अगर वो ऐसा करता तो वो भी उन बाकियों के साथ शामिल होता और वो एक रद्द करने वाला बन जाता। यूहन्ना दयानदार था और उसने सवाल पूछा और मसीह ने कहा बस इंतजार करो जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती और फिर जाकर यूहन्ना को बताना कि क्या हुआ है, फिर वो जान जाएगा। अगर तुम उसको बताओगे कि क्या हुआ है तो फिर वो जान जाएगा, समझे। जाओ और उसे बताओ, उसे सब कुछ बता दो। वो कैद में है और यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन तुम मीटिंग में बैठे हुए हो और तुमने देखा है क्या वाकया हुआ है, तुम जाओ और उसे बता दो। बस शागिर्दों ने कहा बहुत अच्छा मालिक और वो पहाड़ी के ऊपर से चल दिए। यीशु उस पहाड़ी पर बैठा हुआ उन्हें देखता रहा जब तक वो पहाड़ी के ऊपर से नीचे न चले गए और वो उस भीड़ की तरफ मुड़ा और कहा यूहन्ना के वक्त में तुम किसको बाहर देखने गए थे, समझे। उसने कहा तुम बाहर किसको देखने गए थे, क्या तुम एक ऐसे शख्स को देखने गए थे जिसने अपना कॉलर मोड़ा हो और अच्छे कपड़े पहने हुए हो और नहायत ही खुशगवार और तलीम याफ्ता हो, क्या तुम इस किस्म के शख्स को देखने गए थे। उसने कहा नहीं, आप जानते हैं कि ये लोग किस किस्म के हैं, वो बच्चों के बोसे लेते हैं और आप जानते हैं कि बादशाह के महलों में काम करने वाले थे, वो तो किसी तौर पर भी यूहन्ना की किस्म के नहीं थे, ठीक है। उसने कहा फिर तुम बाहर क्या देखने गए थे, क्या एक ऐसे शख्स को देखने गए थे जिसको एक खिदमत दी गई थी और उसने उसे ठीक किसी भी तंजीम के साथ जोड़ दिया, या फिर किसी ऐसी चीज को देखने गए थे जो सबके साथ मिला रहे और फिर अगर वदानियत वाले उसे नहीं चाहते तो वो तसलीसी ग्रोह में चला जाएगा और अगर तसलीसी उसे पसंद नहीं करते तो वो चर्च ऑफ गॉड में या कहीं भी चला जाएगा, क्या इस किस्म के शख्स को देखने गए थे जो किसी के साथ भी शामिल हो जाए। ओ नहीं, क्योंकि यूहन्ना ऐसा नहीं था। उसने कहा तो फिर क्या देखने गए थे? क्या एक नबी को? उसने कहा, मैं कहता हूँ ये दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ जिससे तुम वाकिफ नहीं हो, और वो ये है कि वो एक नबी से बढ़कर था। वो नबी से बढ़कर था, अगर आप उसे कबूल कर सकते हैं तो वो ये है जिसके मुतालिक बाइबल में लिखा हुआ है। गौर करें, पीछे कलाम में यूं मरकूम है, मलाकी 3 में, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, गौर करें और वो मेरे आगे राह तैयार करेगा। देखें, और वो समझ नहीं पाए, देखें हत्ता के शागिर्द भी समझ नहीं पाए। ये बात सच है, वो मेरे खुदा कैसी सादगी है, कैसी फरोतनी है, समझे? और ठीक आगे बढ़े, क्योंकि जब खुदा किसी भी अजीम चीज का वादा करता है तो फिर देखें ये उसकी नजर में अजीम होती है। अब आपको हमेशा इस बात को जेन में रखना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा इसे जेन में रखें, और जब ये वाकया होती है तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? आप जाएं और इस मौसम बहार में आने वाले फूलों को लें, या आम गाछ के पत्ते को लें और उसे अपने हाथ में थाम लें और कहें, मैं अब इसे थामे रहूंगा, और फिर उस पर गौर करें, उसे नहायत ही सादा बनाया गया है। और फिर मैं उसके दिमाग को देखना चाहता हूँ जो रॉकेट को चांद पर भेज सकता है, और फिर जिसने इस घास के पत्ते को बनाया है वो हमेशा आपके पास होगा, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमेशा आपके पास होगा, समझे? देखें, घास के पत्ते में जिंदगी है, ये नहायत ही सादगी और फरोतनी है। अब देखें, अगर एक शख्स बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, लेकिन गौर करें, वो बहुत बड़ा आदमी होते हुए भी सादा बन सकता है और फिर वो खुदा को पा सकता है, लेकिन अगर वो सादा नहीं बनता तो फिर वो खुदा को हासिल नहीं कर सकता। बस आपको सादा बनना है। अब देखें मुकाशवा 5:9 आयत में ये कौन है जो गा रहे हैं जब बड़ा किताब को ले लेता है? क्या वो उठाए गए मुकद्दसीन है? नहीं, मुकाशवा 6 में, बल्कि ये 5:9 है, ये वो नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये वो मुकद्दसीन नहीं है, उन्होंने बल्कि उसने अभी तक अपनी मलकियत का दावा नहीं किया, समझे? ये वो मुकद्दसीन नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो ये बुजुर्ग हैं और जानदार हैं जो गा रहे हैं। आए इसे पढ़ते हैं, बस वो शख्स, और फिर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ आधी दर्जन से भी ज्यादा सवाल रखे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं इन्हें चंद मिनटों में खत्म कर दूं। आए देखें मुकाशवा 5:9। अब आए पहले इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, बस अब वो शख्स इसके मुतालिक दयानतदार रहे और वो जानना चाहता है। देखें, और जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, और वो ये नया गीत गाने लगे। देखें गौर करें कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, गौर करें, और तूने हमें खरीद लिया है और हमें काहिन और बादशाह बना दिया है। वो आसमानी ग्रोह है, ना के निजात याफ्ता लोगों का ग्रोह है। अब ठीक है भाई ब्रहनम, अगर ये सब, अब जरा एक लम्हा ठहरे, मेरा ख्याल है कुछ हुआ है, माजरत चाहता हूँ। भाई ब्रहनम, अगर ये सब खुदा प्रस्त हैं, हाँ, यानी रास्तबाज ऊपर उठा लिए गए हैं, तो फिर मूसा और एलिया कहाँ से आएंगे? लगता है कुछ गलत है, कुछ गलत है, इसके लिए यही सब कुछ है। वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, समझे? लगता है कहीं पर कुछ गलत हुआ है। क्या सब ठीक महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई बीमार भी नहीं है, कुछ और बात भी नहीं है। आए देखें मुकाशवा, भाई ये कहाँ है? 5, हो ये सवाल था, हो इस सवाल का जवाब मैंने अभी दिया था। अब आए देखें, तू ही ये दुरुस्त जगह है। और जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरे के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबद और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने जबा होकर, और यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर ये बात है, यहाँ इस बात पर मैं गलत था, समझे? तूने अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है, ये दुरुस्त है। अब आप इसके मुतल्लिक क्या सोचते हैं? हो अगर यहाँ पर पाकरू की हजूरी नहीं है तो फिर ये क्या है? क्योंकि उसने मुझे आगे नहीं जाने दिया। गौर करें कि मैंने इस आयत का सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ा था, समझे? ये इस आयत का यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और घड़ी पर निगाह रखे हुए मैं इस पर तवज्जो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप देखें कि उसने मुझे इस बात पर रोक दिया, उसको जलाल मिले। देखें, मैंने इसका दूसरा हिस्सा नहीं पढ़ा था। अब देखें, यहाँ मेरे पास है और यहाँ देखें, और वो एक नया गीत गाने लगे और मैं वहीं ठहर गया। लेकिन यहाँ देखें, वो गीत जो वो गाने लगे, तूने अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। यकीनन यही वो हैं, मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया। इस पर गौर करें, ठीक है। यहाँ पर एक और सवाल भी है, क्या आप CONTRO कंट्रोल, वो लोग जिन्हें जामे दिए गए, यानी ठीक मुकाशवा 6:11 के मुताबिक जिन्हें सफेद जामे दिए गए, उनके साथ जिन्होंने अपने जामे बरे के लहू से धोए, क्या कोई तल्लुक कायम कर सकती हैं? आए आप मुकाशवा 6 को देखें। अजीजो, मैं इस पर जल्दी नहीं कर सकता जैसे यहाँ इस पर किया था, समझे? क्योंकि ये कुछ और हो जाएगा और फिर शायद मैं इसको गलत बयान कर जाऊँ। अब वो ये नहीं चाहता, खुदा ये नहीं चाहता कि मैं वैसा करूँ, ये सच है। बस मेरी मदद फरमाए, खुदा का रूल कदूस ये जानता है, ये सच्चाई है, समझे? मैंने तो बस वहाँ कुछ है और मैंने तो सिर्फ उस पर निगाह डाली और मैंने घड़ी को देखा तो 11:30 बज चुके थे और मैंने सोचा अगर मैं जल्दी नहीं करता तो मैं बीमारों के लिए दुआ नहीं कर पाऊंगा और मैं जल्दी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन चूंकि मेरा जेन इतना वसी नहीं है तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। आप याद रखें, अब आपको ये बात समझनी चाहिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, समझे? मैं यहाँ पर 7 दिनों से हूँ और मुझे इस दोपहर को कुछ करना था क्योंकि मुझे खुदा से मालूम करना पड़ता है। लेकिन वो इसके मुतल्लिक इतना फिक्रमंद था कि कहीं मैं गलती न कर जाऊं और उन्होंने कहा कि बाकी ऐत को भी पढ़े, और ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे वहाँ पीछे धकेल दिया हो और कहा हो वापिस जाओ, वापिस जाओ। मैंने सोचा वापिस जाओ ये क्या है, ठीक है अब रुक जाओ और बीमारों के लिए दुआ करना शुरू करो। लेकिन ये क्या है और मैंने क्या कर दिया है? और जैसे ही मैं इसे शुरू करने लगा तो किसी शख्स ने कहा ऐत को दोबारा पढ़ो, और मैंने उसे दोबारा पढ़ा और फिर इस सवाल की तह में चला गया और वहाँ पर ये बात थी। अब देखें मुकाशवा 6 पर गौर करें। देखें मैंने पहले पढ़ा था और वो बिल्कुल इसी तरह लगता है। गौर करें, उन्होंने एक नया गीत गाया, लेकिन यहाँ नीचे देखें ये क्या था। अब अगले हिस्से पर आए, लिखा है उसने हमें खरीद लिया है, यकीनन ये दुल्हन है यानी उठाए गए ईमानदार। क्या आप? और यहाँ पर यकीनन बरे के पास यानी उसके हाथ में किताब है, उसने सालसी वाला फजल का तख्त छोड़ दिया, समझे? अब देखें कि पाकरू कैसे इस पर निगाह रखे हुए है, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने एक रात कही थी जब उसने मुझसे कमरे में बात की थी और मैंने यहाँ आकर आप सबके सामने मुनादी की थी कि जब बरे ने मकाम छोड़ दिया, ओ मेरे खुदाया। अब मेरा ख्याल है कि हम एक मजमून को लेंगे। देखें, बरा अपना मकाम छोड़कर आगे बढ़ गया, देखें, और जब वो मौजूद था तो जैसे ही वो वहाँ से उठकर खड़ा हुआ तो वो रोशनी जो मसीह है, जब वो मौजूद था तो ये बताया गया, जब बरा उस जगह को छोड़ देता है और वो अपना शफायती का तख्त बदल लेता है तो फिर कलीसिया की निजात का दिन खत्म हो जाता है। अब अगली निजात खुलती है जो कि यहूदियों के लिए है, यानी 144,000 के लिए है। क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि उसने कहा था कि वो दरख्त को काट डालेगा और आप ये जानते हैं। अब देखें, यहाँ पर वो बरा आता है और फिर निजात का दिन खत्म हो जाता है और वो जिन्होंने निजात हासिल करनी थी उन्हें पहले ही निजात मिल चुकी थी और उनका किताब में नाम लिखा गया था, और यहाँ वो बाहर आता है ताकि किताब को खोले, ठीक है। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, समझे? बस अपने फिक्रमंद खादम को दर गुजर कर दे जो किसी चीज पर जल्दी करने की कोशिश कर रहा था। अब क्या आप मुकाशवा 6:11 के लोग जिन्हें सफेद जामे दिए गए हैं उनके साथ शामिल कर सकते हैं? अब आए 6:11 को देखते हैं, ठीक है। अब देखें हम कहाँ पर हैं? सफेद जामे, जी हाँ, ये वो कुर्बान हुए लोग हैं जो मजबा के नीचे हैं, यानी वो यहूदी जो उस वक्त के दरमियान कुर्बान हुए थे जिन्हें सफेद जामे दिए गए। अब क्या इनके साथ मुकाशवा 7:14 के मुताबिक ये वो हैं जिन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोए हैं? नहीं, अब ये बेशक अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर गौर करें, यहाँ हमें पता है उस वक्त में उन्हें सफेद जामे दिए गए थे, यानी फजल के वसीले उन्हें दिए गए, और जो यहाँ हैं उन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोए हैं। और यहाँ मुकाशवा 7 में वो हैं जो कि तमाम कौमों कबीलों और अहले जुबान में से एक बहुत बड़ी भीड़ है जो खुदा के सामने खड़ी है, और ये बराह रास्त बेशक शहीद हैं, मगर वो यहूदी हैं, आप समझे? आप देखें ये दुरुस्त है। अब देखें, भाई ब्रहनम, अगर सारे रास्तबाज उठा लिए गए तो एलिया और मूसा कहाँ से आएंगे? क्या वो यहूदी होंगे या हमारा एलिया जो हमें दिया गया है उनके साथ होगा? नहीं, बल्कि ये गैर कौम से है जो उस रूह से मसा किया जाएगा ताकि गैर कौम को ऊपर उठाए जाने के लिए बुलाए। सब बल्कि पूरी कलीसिया उठाई जाती है और ग्यारहवें बाप के ये दो नबी नीचे उतर आते हैं और फजल का जमाना गैर कौम के साथ ही खत्म हो जाता है और वो यहूदियों में भेजे जाते हैं। इसलिए ये वही शख्स नहीं होगा। अब मैं इस बात के मुतालिक पुरयकीन हूँ। अब याद रखें, ये बात मेरी बेहतरीन समझ के मुताबिक है। अब आए देखें ये क्या है और यहाँ क्या लिखा है। सवाल, क्या गियों और मैं, ओ क्या WHEAT, नहीं मेरा मतलब है ये है क्या ये, बल्कि यहाँ लफ्ज क्या लिखा है, नहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है, गियों और मैं या मैं और गियों, यानी मुकाशवा छेछे का क्या मतलब है। आए देखते हैं कि ये क्या है। अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, ये बात यहाँ है और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सिर भर और जो दिनार के तीन सिर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। मेरा ख्याल है कि गेहूं और मैं का मतलब है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होना, बल्कि एक अलामत है जैसे मैं शराकत की मेज पर ली जाती है, जैसा कि पहला करंथियों 11:24 में है। क्या वो मैं नहीं बल्कि इनमें एक रूहानी अलामत है, समझे, और दूसरा दर हकीकत कलाम का मुकाशफा है। क्या यही सबब है कि बहुत सारे बीमार हैं क्योंकि हम खुदावंद के बदन को पहचानते नहीं हैं? क्या ये दुरुस्त है? अब छठी मोहर के खुलने के बाद आश्कारा किया गया है। अब आए देखते हैं, अब मुझे जरा देख लेने दें ताकि मैं इसे ले पाऊँ। और ये आप नहीं है, ये मैं हूँ। आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने ये सारा दुरुस्त लिखा है और ये सिर्फ मैं हूँ। क्या यही सबब है कि बहुत सारे बीमार हैं क्योंकि हम खुदावंद के बदन को पहचानते नहीं हैं? इसके एक ताम पर सवालिया निशान है। खैर, कलाम कहता है कि तुम्हारे दरमियान बहुत सारे बीमार और कमजोर हैं क्योंकि खुदावंद के बदन को नहीं पहचानते, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि देखें, दुल्हन मसीह का बदन है और इसमें से बतेरे चले गए और वो उसके साथ नहीं चले। ये सच है, गौर करें, वो नहीं जानते कि उन्हें इसके साथ कैसा बर्ताव करना है। जैसे मर्जी जिंदगी गुजारते हैं और पाक शराकत और दूसरी चीजें भी लेते हैं, मगर ये दुरुस्त नहीं है, समझे, क्योंकि लोग पाक शराकत भी लेते हैं और फिर वो झूठ भी बोलते हैं और चोरी भी करते हैं और शराब भी पीते हैं, और ये बात बड़ी खौफनाक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे। मगर अब छठी मोहर खुलने के बाद आश्कारा किया गया है, छठी मोहर का खोला जाना। आए अब देखते हैं। नहीं, अब आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर छठी मोहर खोली जा रही है जो कि यहूदियों के लिए है। देखे, कलीसिया जा चुकी है और ये मसाइब का दौर है, इसलिए ये यकसा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, इनमें से एक रूहानी मैं है और ये कलाम का मुकाशवा है, और फिर वो ईमानदार उस मुकाशवे से मुतारिक होता है, और दूसरा यस्सू के लहू की अलामत है जो खुदावंद की मेज पर ली जाती है। अब मेरी बेहतरीन समझ के मुताबिक यही बात है। क्या कोई भी जो पहले से मुकरर शुदा नहीं है वो खुदावंद को कबूल करेगा? और अगर वो कबूल करते हैं तो क्या वो बरगश्ता हो जाएंगे? अगर वो पहले से मुकरर शुदा है तो बरगश्ता नहीं होंगे? नहीं, देखें, वो ऐसा नहीं कर सकते। कलाम में ये कहां पर बयान किया गया है कि कैथोलिकिज्म यहूदियों को धोखा देंगे और उनकी दौलत ले लेंगे? अब जरा ये कहां लिखा है के वो हैवान दौलत के लिए धोखा दही करेगा? ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हम तस्वीर करते हैं तो ऐसा नहीं था। अब एक रात, आपको याद है, आप टेप को गौर से सुने, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो क्या करेंगे, बल्कि मैंने कहा था गौर करें, कैथोलिक दुनिया की अमीर तरीन तंजीम है, इनके मुकाबले में कोई भी नहीं है, और जो कुछ उनके पास नहीं वो सब यहूदियों के पास है। यही है जहाँ पर इस मुल्क की मैशियत है, हम एन टैक्स की दौलत पर जी रहे हैं। लाइफ लाइन के मुताबिक जब टैक्सों की सूरत होती है जो एन वाशिंगटन डीसी से आती है, जो कि आज से 40 सालों में अदा कर दी जाएगी, और वही अब हम खर्च कर रहे हैं। अब देखें कि इस टैक्स पर जो कि आज से 40 सालों में अदा किए जाएंगे, तो हम नोट यानी कागजी दौलत पर दिए जा रहे हैं, जिससे हम इतना ज्यादा पीछे चले गए हैं। कौम दिवालिया हो गई है और वो खत्म हो गई है। अब कास्ट्रो, जिसने वाहिद एक काम अच्छा किया था, और वो था जब उसने करेंसी में जालसाजी की और नोटों को खत्म किया और बॉन्ड्स और उन्हें जला दिया और करेंसी को तब्दील कर दिया था। यही वाहिद काम उसने किया था। और एक ही चीज इस अमेरिका के करने को बची है। अब याद रखें, देखें, ये बात मैं विलियम ब्रैनम कह रहा हूँ, देखें, ये मेरा ख्याल है, ये सिर्फ क्या सराई है, ये सिर्फ उसके कुदरती नजरिए पर लाई है, जो कि शायद लाखों मील दूर हो सकती है। मुझे यकीन है ठीक वहाँ पर उसमें दौलत ही है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। और मुझे यकीन है ठीक इसी के साथ गेंद ने बढ़ना शुरू कर दिया है। अब कैथोलिक कलीसिया उसी वक्त से इबादत की कीमत वसूल करके और मजीद इसी तरह के काम करके दुनिया की दौलत समेट बैठी है। आप याद रखें कि बाइबल ने बयान किया है वो दौलतमंद थी और वो कैसे बनी। और याद रखें, न सिर्फ एक कौम में है बल्कि आसमान के तले हर एक कौम में वो दौलतमंद है, वो अरूज पर है, क्योंकि इसके पास दौलत है। अब देखें, अब इनके पास क्या नहीं है, सिर्फ वॉल स्ट्रीट नहीं है जिसे यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। और अब आप याद रखें, जब यकूब दौलत हासिल करके वापस लौटा, कल रात हमने इस पर बात की थी, और वो इसराइल बन गया। हकीकत में उसके पास दौलत थी, लेकिन तो भी गौर करें, ये दौलत ईसाओं की नज़र में उसके लिए कुछ ना कर पाए, क्योंकि ईसाओ के पास भी दौलत थी, देखें, और वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे, देखें, और ये बात बिल्कुल कामिल है। अब ध्यान दें, मैंने कहा था कि हो सकता है कि उस दौलत पर इत्तेहाद करना चाहते हों और वो रोमियों की ताकत और यहूदियों की ताकत और दौलत ले ले और अहद तोड़ दे। शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन देखें, मैं जानता हूँ वो अहद को तोड़ेंगे, लेकिन तो भी मैं नहीं जानता कि सबब क्या होगा, क्योंकि ये मुझ पर जाहिर नहीं किया गया कि वो क्या करेंगे। लेकिन देखें, अब क्या हो अगर आज वाहिद चीज जो हम कर सकते हैं और जो की जा सकती है, अगर हम करेंसीज पर टैक्सेस, अगर वो दुरुस्त है, नहीं लगाते, तो टैक्स की दौलत जो अब छोड़ी है, अब से 40 साल के लिए है। आप सोचे, हमारा सोना, हम इसे खर्च कर चुके हैं, हम दिवालिया हो गए हैं, हमारे पास मजीद कोई दौलत नहीं है और हम सिर्फ माजी की शोहरत पर जी रहे हैं। और आज कलीसिया भी यही कर रही है, कलीसिया ना के दुल्हन, कलीसिया माजी के कारनामों पर जिंदा रह रही है, जो इसे पीछे पेशतर से शेर की खिदमत के वसीले मिले थे, और कह रही है हम असल कलीसिया हैं, हम माँ कलीसिया हैं, हमने इब्तदा की थी, ये दुरुस्त है, समझे, ये उन कारनामों पर जीना है। मेथोडिस्ट अपनी नेक नामी में जी रहे हैं, बैप्टिस्ट अपनी नेक नामी में जी रहे हैं, और पेंटिकोस्टल अपनी नेकनामी में जी रहे हैं और कह रहे हैं खुदावंद को जलाल मिले। लेकिन एक लंबा अरसा हुआ जब मुकद्दसीन रूम में नाचा करते थे, और वो कैसे थे, खुदावंद ने ऐसा किया, खुदावंद ने वैसा किया, जबकि ये माजी की कुछ चीजें हैं भाइयों, मगर अब हम सब बड़े हो गए हैं, ओ मेरे खुदाया, समझे, ये सब कुछ माजी की नेकनामियां हैं। ये कौम माजी की नेकनामियों पर जी रही है। अबाउ अजदाद कौन थे, गौर करें, और ये सबब है कि हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। खुदा ने कभी भी इसराइल का एहतराम इसलिए नहीं किया कि वो कौन थे या वो क्या करते रहे थे या फिर वो क्या थे, तो जो करें। मगर अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि क्या होगा, अब शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा वक्त आएगा जब हमें मजबूर किया जाएगा कि मसला बनाएं, और जब ये होगा तो हमें करेंसी को तब्दील कर देना चाहिए। वो फिलिप मोर्स से क्या करेगा, और वो उन विस्की बनाने वाली कंपनियों से क्या करेगा, वो लोहा बनाने वाली इंडस्ट्री से क्या करेगा, और वो तमाम उन कारोबारी लोगों से क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो उन्हें तबाह करेगा, लोग दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन तो भी हम वो दौलत कर्ज के तौर पर ले सकते हैं। आप ध्यान दें कि वो कितना होशियार है। फिर ये कौम कलीसिया को बेचती जाती है, और कलीसिया और रियासत एक मरतबा फिर से मुतहद हो जाती है, और फिर वो मौजूद होती है, समझे, यही हकीकत है। तवज्जो दें, ठीक है, अब देखें, इसमें ये बात है, अगर कोई हमारी हुकूमत के मुतहद तंजीम या एसोसिएशन में है और अपने दिल की मनमानी करता है या आखिर दिनों की सच्चाई में चलता है, तो क्या वो भी एक कस्बी गिरदाना जाएगा। आए देखते हैं اگر کوئی تنظیم میں یا ایسوسیشن میں ہے, اچھا تنظیم یا ایسوسیشن کو دیکھیں, جیسا کہ تنظیم کو حکومت کی طرف سے بولنے کا حق دیا جاتا ہے, غور کریں, اسے اپنے دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, سمجھے؟ اب اگر وہ حقیقی ایماندار ہے اور خدا کے روح سے پیدا ہوا ہے, تو بعض اوقات یا پھر کسی بھی طرح اس کی خبر گیری کی جا رہی ہوتی ہے, سمجھے؟ اور یہ کام اتنا زیادہ سادہ نہیں ہوتا کہ اسے دیکھ نہ پا رہا ہو. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ عزیزوں, اب اسے دیکھیں اور یاد رکھیں کہ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے. جہاں تک میں یاد رکھ سکتا ہوں, کسی بھی وقت ایسا نہیں کیا. دیکھیں, مگر کیا دیکھیں, یسوع ان سب سے اصل تھا کیونکہ وہ خدا تھا, یعنی ایمینول مجسم ہوا. اب اس شخص پر, یعنی یسوع پر نگاہ کریں. جب, کیا آپ کو معلوم ہے, جب وہ زمین پر آیا, میرا خیال ہے وہاں ایک تہائی لوگ بھی نہیں تھے جنہیں معلوم تھا کہ وہ زمین پر آیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ پیشرو آیا, جب سب پہاڑ اور دوسری چیزیں واقع ہوئی تھی, تو میرا خیال ہے اس وقت اسرائیل کی ایک تہائی آبادی بھی نہیں تھی جنہیں یہ معلوم تھا. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ایسا کیوں تھا جبکہ وہاں یہودی اور دوسرے لوگ موجود تھے اور ساری دنیا میں لوگ تھے. اب یاد رکھیں, یسوع ایک گواہ بن کر آیا, یعنی بحیثیت دنیا کا نجات دہندہ. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا کیوں جبکہ وہاں پر عین لوگ موجود تھے, لوگوں کے بعد لوگ, لوگوں کے بعد لوگ, قبیلوں کے بعد قبیلے, اور پھر ایسے لوگ بھی تھے جنہیں کبھی بھی اس کے متعلق معلوم نہیں ہوا تھا. سب چلتے گئے جیسے کہ دنیا نے اس کے متعلق کبھی جانا ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ ہی ایسا چلتا آ رہا تھا, سمجھے؟ کیوں اس نے انہیں جاننے نہ دیا؟ وہ آیا اور جو پہلے سے ابدی زندگی کے لیے مقرر شدہ تھے انہوں نے ہی اسے قبول کیا. باقیوں کے متعلق کچھ بھی کہنا مناسب نہیں. کیوں اس نے انہیں مخلصی نہیں بخشی؟ کیونکہ وہ مخلصی پانے والے نہیں تھے. ایسا کیوں تھا جبکہ وہ کاہن بھی وہاں کھڑے تھے, جبکہ اسے اس مقام پر آنا تھا, کیونکہ ہر طرف سے وہاں پر پہلے سے مقرر شدہ ہونا ضروری تھا. لہذا اسے ان کو ایک گروہ کی شکل میں کلام سنانا تھا, اور وہ بڑے بڑے عالم جنہیں اسے جاننا چاہیے تھا, انہوں نے کہا وہ شخص بالزبول ہے, ہم اسے اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے, اور ایسی بہت ساری باتیں کہیں, سمجھے؟ دیکھو ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن وہاں ایک فاحشہ عورت تھی جس کے اندر زندگی تھی, اور جو ابدی زندگی کے لیے مقرر کی گئی تھی, اور اس کا نام یہاں پر خدا کے کلام میں لافانی طور پر موجود تھا. وہ وہاں چلی آئی اور پہلی ہی مرتبہ نور اس کے چھوٹے سے بیج پر پڑا تو فوراً ہی وہ اسے جان گئی. دیکھیں, ایک بوڑھا سا مچھیرا وہاں آ گیا جبکہ وہ وہاں کھڑا تھا اور نشان اور عجائب ظاہر کر رہا تھا, اور مختلف لوگوں کو ان کے دلوں کے حال بتا رہا تھا اور اپنے آپ کو عیاں کر رہا تھا. اور او میرے خدایا, فریسی بھی وہاں آ کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے یہ آدمی بالزبول ہے, کیونکہ انہیں اپنی جماعت کو حساب دینا تھا. اور وہ سب جو وہاں کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے ڈاکٹر جونز, کیا تم اس شخص کو سننے جاؤ گے؟ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جانتا ہو کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے, کیونکہ وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں بولتا. میں اسے سنوں گا. دیکھیں وہ وہاں چلا گیا. جی ہاں, خدا کبھی اس کو نہیں ملا تھا. اور یسوع وہاں نیچے کھڑا تھا اور اس نے کہا, بلکہ انہوں نے کہا, اب یہاں دیکھو وہاں ایک شخص آ رہا ہے جو کہ اس کے شاگردوں میں سے ایک ہے. وہاں پر ایک شخص اور آتا ہے, اب اس شخص کا نام اندریاس ہے. آپ کو یاد ہے وہاں وہ بوڑھے مچھیرے موجود ہیں, وہ ان میں سے ایک ہے. جی ہاں, وہاں پر اس کا بھائی شمون بھی ہے, سمجھے؟ اور وہ بوڑھے یونا کے بچے ہیں. اب وہاں پر دیکھیں وہ کسی کو یسوع کے پاس لا رہا تھا. وہ کون ہے؟ جی ہاں, دیکھیں اب وہ کیا کرے گا. اس سے اگلا آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور اس نے کہا کہ تیرا نام شمون ہے اور تو یونا کا بیٹا ہے. کہنے لگے یہ شخص بالزبول ہے. غور کریں اس پر کس قسم کی روح ہے. یہ عجیب شخص ہے, سمجھے؟ دیکھو کوئی بھی اس قسم کی کسی بات پر دھیان مت دینا, سمجھے؟ اس سے دور رہو. میں اس کی عبادت میں آج سے کسی صورت میں بھی شامل نہیں ہوں گا, سمجھے؟ جیسے ہی یہ عبادت ختم ہو گئی ہم یہاں سے نکل جائیں گے, ہم پھر کبھی یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے, سمجھے؟ کیوں؟ اب یہ بات اس نے بھی سوچی مگر پھر بھی وہ چنا ہوا تھا. دیکھیں یہ بالکل وہی لوگ تھے جن کی خاطر وہ آیا تھا, اور انہوں نے اسے مصلوب کر دیا, سمجھے؟ لیکن وہاں پر کسبی بھی تھی جس سے سب لوگ نفرت کرتے تھے. میں عصمت فروشی کی پشپنائی نہیں کر رہا, نہیں, یقیناً نہیں, لیکن میں صرف آپ کو پہلے سے مقرر شدہ نسل دکھا رہا ہوں. اس بوڑھے مچھیرے, یعنی اس شخص پر نگاہ کریں, کیا وہ نہیں ہو سکتا تھا؟ بائبل بتاتی ہے کہ ان پڑھ تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہ صرف یہی بلکہ وہ جاہل بھی تھا. اب کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ ہم بہت سی ایسی چیزوں سے جنہیں ہم جانتے ہیں نہ واقفیت حاصل کر لیتے ہیں, سمجھے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں وہ دونوں چیزیں, یعنی ان پڑھ اور جاہل بھی تھا. और जब वो खुदावंद यस्सु की हजूरी में चला आया तो यस्सु ने उसे बता दिया कि वो कौन था। ठीक वहाँ पर ही सारा मसला हल हो गया। अब उस दूसरे शख्स की बहस किसके खिलाफ है? अच्छा देखें, उसने उस पर ईमान रखा, देखें वो कौन है, आप जानते हैं वो कौन है। अच्छा खैर वो शख्स कभी नहीं, क्यों क्यों ऐसा है, वो तो एक मछेरा है, ऐसा क्यों है? वो अपनी ABC भी नहीं जानता, मैंने उससे मछली खरीदी थी, वो मुझे रसीद भी साइन करके नहीं दे पाया। उसे देखें, ये किस किस्म का मसला है, इस किस्म के लोग ही हैं जो कुछ इस तरह का सुनते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन, समझे? क्यों क्यों ऐसा है, वो कुछ नहीं जानता। उसके बाप को देखें, वो भी जाहिल था, उसने उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन वो यस्सु है जिसने उसे स्कूल भेजा था, जो वो चाहता था वैसे ही उसको सिखाया। मैं अब इस बात की पुष्पनाई नहीं कर रहा, स्कूल नहीं जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नमूना है। गौर करें, आप इसमें से क्या हासिल करते हैं, यही किस्म है, और इसका एक सबब है कि ये इनके ऊपर से गुजरती है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि एक भी, बल्कि मैं कहूँगा कि तमाम यहूदी जो उस वक्त जमीन पर थे उनमें से एक तहाई भी उसकी आमद के मुतालिक नहीं जानते थे, और फिर उस एक तहाई के पांचवें हिस्से ने उसको सुना होगा, और फिर उस पांचवें हिस्से के सौवें हिस्से ने उसको कबूल किया होगा। आपको मालूम है उसके पास कितने लोग थे उस पूरे ग्रोह में? उसके पास शायद 12 लोग थे जो स्लिप के पास खड़े थे, फिर वो बाकी सारे कहाँ थे, समझे? 70 उससे फिर गए थे। अब देखें, उस वक्त वो आगे बढ़ता हुआ बीमारों को शिफा दे रहा था और अपनी तलीम की बाबत कुछ नहीं कह रहा था, वो आगे बढ़ता रहा, बीमारों को शिफा देता रहा और बाकी सब कुछ करता रहा। ओ मेरे खुदाया, तब उसमें खुदा की रूह थी। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? जब वो बीमारों को शिफा दे रहा था तो वो कहते थे, क्या बात है, वो एक अजीम उस्ताद है। वो कहते, आप तमाम भाइयों को, बल्कि आप सबको चाहिए कि उसको अपनी कलीसिया में बुलाएं। भाई तुम कुवत की बात करते हो, वो शख्स हकीकत में बीमारों को शिफा देता है, आपको उसे मिलना चाहिए, उसके पास शिफा की नेमत है। अच्छा बेशक उसकी कुछ नकलें भी उसके पास आ रही होंगी और वो उसके साथ आते हैं, क्योंकि हर एक ग्रोह के पास उसका अपना आदमी होता है और वो आता है, और फिर पहली चीज आप जानते हैं, एक दिन वो बैठ जाता है। ओ यकीनन उस्ताद, हम तेरे साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, आओ चलते हैं, ठीक है। और इस तरह उन 70 को भेज दिया, और फिर एक दिन एक अजीम मौजजा होने के बाद वो बैठ गया और उन्हें कलाम सुनाना शुरू कर दिया, समझे? कलाम का आगाज ठीक लगता है, ठीक है, फिर उसने उन्हें कलाम सुनाना यानी सच्चाई बताना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अब एक लम्हा ठहरे, हम इस बात के मुतालिक नहीं जानते, क्योंकि ये बात उनकी तालीम के खिलाफ थी, और कहने लगे, खैर हम जानते हैं, हमने हैकल और ऐसी तमाम चीजों को छोड़ दिया है, लेकिन भाइयों शायद हम गलत हैं, हमारे लिए बेहतर है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये शख्स पहेलियों में बातें करता है, ये अजीब किस्म का शख्स है, हम इसे समझ नहीं सके, समझे? ये क्या था, ये नस्ल इब्तदा से मुकरर शुदा ना थी। फिर पहली चीज आप जानते हैं, उसके पास एक खिदमत गुजारों का एक छोटा ग्रोह था और उसने खादमों से बात की, उन्होंने कहा, हमारे लिए बेहतर है कि वापस चले जाएं और जाकर तंजीमों में शामिल हो जाएं, अपने कागजात दोबारा ले लें, समझे? क्योंकि इस शख्स की क्यों कर कोई इस शख्स की समझ सकता है, वो यहाँ पर ये कहता है और वहाँ पर ये कहता है, हाँ, लेकिन वो दूसरे उसे इस तरह नहीं समझ सके, क्योंकि वो उनमें से कुछ को पहेलियाँ बता रहा था लेकिन दूसरों को नहीं, बस वो उसे छोड़कर चले गए। और फिर वो मुड़ा और उन 12 पर नजर की जो वहाँ खड़े थे और कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, समझे? अब गौर करें, पतरस ने कहा, तू जानता है कि मैंने सारी जिंदगी उस पुरानी हैकल में गुजारी है, मैं दुनिया में कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं ये काम करने के बाद मैं दोबारा उस कचरे के टोकरे में कैसे जा सकता हूँ जहाँ पर दुनिया की हर किस्म की गलाजत पड़ी हुई है, समझे? मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसी सूरत में भी नहीं कर सकता। उसने कहा, तो फिर ठीक है, चल आगे एक साथ बढ़ते हैं, अब आप यहाँ खड़े हैं, समझे? तो फिर ये उस वक्त कैसा था, यानी तकरीबन 2.5 मिलियन में से सिर्फ 12 लोग थे और दुनिया का नजात दहिंदा बिलियन में से फिर भी हलीम था, समझे? सिर्फ फरोतन रहे। गौर करें, अब उन तमाम फरीसियों के साथ वो कस्मी भी आ मौजूद हुई और उसने कहा, लगता है तू जरूर एक नबी है, अब हम जानते हैं कि मसीहा आने वाला है और जब वो आएगा तो ऐसा ही करेगा। उसने कहा, मैं वही हूँ, और उस औरत ने कहा, यही मसीह है, और वो चल दी। आप उसे एक बार भी रोकने की कोशिश करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई ब्रहनम, यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करता हूँ। बराए मेहरबानी मत्ती 22:11 में उस शख्स को बयान करें, जो शख्स शादी के कपड़ों में नहीं था, जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैं जानता हूँ वो शख्स बगैर शादी के कपड़ों के आसमान पर नहीं जा सका। वो मेहमान था। मैं जानता हूँ वो दुल्हन नहीं थी। जी हाँ, ये दुरुस्त है। वो तो बस, जी हाँ, वो सिर्फ अंदर दाखिल हो गया था, समझे। अब देखें, अब मैं इस पर पूरा एक पैगाम सुना सकता हूँ। अब मेरे पास 10 मिनट है। बीमारों के लिए दुआ भी करनी है और इसे खत्म भी करना है। मेरा ख्याल है कि इनमें से आधे मैं खत्म कर चुका हूँ, गौर करें। लेकिन तो भी मैं जरा जल्दी करूँगा। इस सवाल के बाद यकीनन बहुत जल्दी करूँगा, समझे। अगर आप मशरकी तहजीब को जानते हैं तो यहाँ वो वाकया रूनमा हुआ है, समझे। क्योंकि जब एक दुल्हा अपनी शादी के दावतनामे देता था तो वो कसीर तादाद में दावतनामे देता था, और जिसे वो दावतनामा भेजता था उसके लिए उसने दरवाजे के पास एक दरबान खड़ा किया होता था जो उसको पोशाक पहनाता था, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो जैसा भी होता था। उसके पास, अगरचे वो अमीर या गरीब होता था या जैसा भी होता था, उसके पास सभी के लिए शादी में पहनने का एक मखसूस लिबास होता था। जब वो दरवाजे पर खड़े होते थे तो वो उसे वो लिबास पहना देते थे और वो उसकी बैरूनी हालत को डांप लिया करता था। वो बुलाया गया होता था, चाहे वो लखपति हो या वो कंगाल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खाई खोदने वाला हो, या चाहे वो दौलतमंद या कोई भी हो, उसको वहाँ पोशाक पहनाई जाती थी। क्योंकि जब वो दरवाजे में दाखिल हो तो उसको दरवाजे पर ही पोशाक पहना दी जाती थी। अब मुकद्दस यूहन्ना 10 बाब को लेते हैं। मेरा ख्याल है यही वो जगह है जहाँ उसने फरमाया, दरवाजा मैं हूँ, समझे, दरवाजा मैं हूँ जिसके वसीले आप दाखिल हो सकते हैं। अब वो आदमी वहाँ दरवाजे पर खड़ा है जो उसको पोशाक पहनाता है, यानी पाकरू, क्योंकि जब वो उसमें दाखिल होता है तो वो उसे रास्तबाजी का लिबास पहनाता है। अब शायद ये शख्स किसी तंजीम के जरिए आया था, शायद वो खिड़की के पीछे से किसी सुराख से आया था, और वो दाखिल होकर मेज पर बैठ गया था। और जब दुल्हा वहाँ आया और इधर उधर देखा तो वो एक अजीब सा शख्स यानी बदक की तरह नजर आ रहा था, जैसे कि वो अजीब सी बतखें होती हैं, समझे। तो उसने कहा, रूल कुछ के बपतिस्मे और दूसरी चीजों के बगैर तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ कैसे दाखिल हो गया है। खैर, वो दरवाजे के अलावा कहीं और से दाखिल हुआ था और वो बगैर दावतनामे के अंदर आया था, समझे। वो किसी तंजीमी निजाम के जरिए आया था, देखे, या किसी और तरीके से दाखिल हो गया था, लेकिन वो अंदर आ गया था। उसने उनसे कहा, उसके हाथ और पांव बांध दो, उसे यहाँ से उठाकर बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और मातम और दांतों का पीसना होगा, समझे। उसे मसाइब के दौर में जाना पड़ा, समझे, क्योंकि वो दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ था। बस ये ठीक है। अगला सवाल, क्या एलिया जो मलाकी 4 बाब का है वो वही एलिया होगा जिसकी बाबत मुकाशवा 11:3 में बयान किया गया है और जो के दूसरा गवाह है, या क्या दूसरे दो गवाह शख्सी तौर पर अलग अलग है। जी हाँ, मलाकी 4 बाब वाला एलिया मलाकी 3 वाला एलिया नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पर कल रात ये बात सीखी थी। और क्या उन दोनों में से दूसरा गवाह अलग है। जी हाँ जनाब, हमारे मुकाशवे के मुताबिक मूसा और एलिया है। अब मैं आपको यहाँ पर ज्यादा देर रोकना नहीं चाहता। पहला सलातीन 19, भाई ब्रहनम, मेरा ख्याल है यहाँ उन लोगों की तादाद है जिन्होंने घुटने नहीं झुकाए थे। जी हाँ, ये दुरुस्त है। 700 की बजाय, आपका शुक्रिया, ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त तादाद है। ये 700 की बजाय 7000 थे, भाई ब्रहनम। जी हाँ, 700 की बजाय 7000 थे। अब इस पर तवज्जो दें। आप जानते हैं, दरअसल जब एक शख्स इस तरह से मुनादी करने आता है तो अब देखें, मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप समझ जाएंगे। जब एलिया बियाबान से आया था तो उसके पास एक पैगाम था। वो गुस्से में बियाबान से निकला और सीधा बादशाह के पास गया और उसे बताया कि जब तक मैं ना कहूँ आसमान से मीन ना बरसेगा। और ये वो कलाम था जो उसके पास था, और उसी गुस्से में बाहर निकल गया और किसी से कोई बात ना की, समझे। और फिर उसके पास दूसरा पैगाम था, वो सीधा नीचे आया और वो पैगाम सुनाया और ठीक वापिस मुड़ा और सीधा बियाबान में चला गया, समझे। अब अगर आप निगाह करें तो जब मैंने इस टेबर नेकल के नीचे कोने के सिरे का पत्थर रखा था तो उसने कहा था, एक मुबशर की खिदमत सर अंजाम दे। और अब वक्त आ रहा है जब ये खिदमत हो रही है, क्योंकि कुछ और वकू पजीर हो रहा है। तो फिर मैं, देखे, मैं यहाँ आता रहा और मुबशराना और दूसरे काम करने की कोशिश करता रहा। और अब आप देखे कि आप किस मकाम पर हैं, समझे आप। ओ, मैं कलीसिया से तवक्को करता हूँ कि वो इतने रूहानी हैं कि इसे समझ सके। भाई ब्रहनम, मैं समझता हूँ कि एलिया का 3 बार आना लाजिम है। आपने हमें बताया कि वो 2 दफा पहले ही आ चुका है और फिर दोबारा आएगा। अब उन 2 गवाहों में से जो मूसा और एलिया हैं, जिस पर एलिया की रूह है, क्या वही शख्स दोबारा आएगा? नहीं नहीं, ध्यान करें, वो गैर कौम से होगा और गैर कौम की कलीसिया के वास्ते होगा। खुदा हमेशा उसे उसके अपने लोगों में भेजता है, समझे। यीशु अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। देखें, वो हमेशा अपने वक्त के पैगाम को भेजता है। जब खुदा यहूदियों के साथ मसरूफ था, तो उस वक्त तक गैर कौम से कोई अंबिया नहीं आए, और जब तक खुदा गैर कौम के साथ मसरूफ है, तो कोई यहूदी अंबिया नहीं आए। बस जब खुदा दोबारा यहूदियों की तरफ मुड़ेगा, तो फिर गैर कौम से कोई अंबिया नहीं आएंगे, समझे। तवज्जो दें, मेरा क्या मतलब है। ठीक है, उठाए जाने के बाद अब देखें, बेशक एक आगे लेकर जाने वाला वक्त होगा, एक पैगाम दूसरे को आगे लेकर जाएगा। इसको ठीक इसी तरह से होना है। आप गौर करें, जैसे कि मैंने बयान किया है, समझे, जिस तरह पालूस गैर कौम के लिए था। ठीक है, उठाए जाने के बाद क्या आखिर में कोई कलीसिया बचाई जाएगी, या कौन है जो उठाया ना जाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि खून का काम खत्म हो चुका होगा। अब ध्यान दें, क्योंकि मजीद शफायत का काम नहीं होगा, गैर कौम का जमाना खत्म हो चुका होगा। उठाए जाने के बाद कोई भी फर्द या कलीसिया, कोई भी कलीसिया बचाई नहीं जाएगी, क्योंकि जो नेजस है वो नेजस ही होता जाएगा, और जो पाक है वो पाक ही होता जाएगा, समझे। ऐसा नहीं होगा। देखें, कलीसिया के चले जाने के बाद ऐसा नहीं होगा। भाई ब्रैनम, मैंने गौर किया है कि आपने दानियल के 70 हफ्तों को पहली मोर के साथ मंसूब किया है, जबकि मैं समझता हूँ दानियल पर, यानी दानियल के मुतल्लिक पैगाम में, जब खुशखबरी यहूदियों की तरफ लौटेगी, तो 70 हफ्ते शुरू होंगे। तो क्या 70, बल्कि क्या एक हफ्ता, यानी 7 साल यहूदियों के लिए बचे हैं, या अभी भी आधा हफ्ता, यानी 3.5 साल उनके लिए बचे हैं? सिर्फ आधा हफ्ता, क्योंकि यीशु ने इसकी नबुवत की थी, यानी पहले आधे हफ्ते की नबुवत की गई। सिर्फ आधा हफ्ता उनके लिए बाकी बचा है। भाई ब्रहनम, जैसा कि इस हफ्ते के दौरान आपने बीमारों के लिए दुआ नहीं की, क्या आप करेंगे? ये सिर्फ इसके लिए दरखास्त की गई है। भाई ब्रहनम, क्या आप इबादत के बाद मुझे मिलेंगे? देखें, यहाँ भी दरखास्त है।
क्या आप मेहरबानी से शैतान के 1000 बरस के लिए बांधे जाने और मुकाशवा 20:8 की जंग के लिए उसको छोड़े जाने के मुतालिक बयान करेंगे? उसका हर मजदून की जंग के साथ क्या ताल्लुक है? जैसा कि चौथी मोहर में निशानदही की गई है, क्या जूज और माजूज के लिए नई जमीन में से लोग उठेंगे? खैर, ये एक तवील बात है, लेकिन देखें, मैं इसके खास हिस्से को बयान करना चाहूँगा। अब देखें, पहली बात, इसका तल्लुक क्या होगा। अब शायद मैं इसे पूरा बयान ना कर पाऊँ, तो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्या आप मेहरबानी से शैतान के 1000 बरस के लिए बांधे जाने और मुकाशवा 20:8 की जंग के लिए उसके छोड़े जाने के बारे में बयान करेंगे? ये हर मजदून की जंग नहीं है। हर मजदून की जंग इस तरफ वाकया होगी, देखें, जब मसाइब का दौर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, अब इसका जूज और माजूज की जंग के साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक जो है वो 1000 साल से पहले है, और दूसरी वो इख्तिताम पर है, यानी 1000 सालों के बाद, जैसा कि चौथी मोहर में निशानदही की गई है। क्या जूज और माजूज के लिए नई जमीन से लोग उठेंगे? शैतान को उसकी कैद से छोड़ दिया जाएगा, और वो तमाम लोगों, यानी बदकारों को इकट्ठा करने को निकलेगा कि उनको उस जगह पर लाए, और खुदा आसमान से आग और गंदुक नाजिल करेगा, और वो उन्हें खा जाएगी, समझे। ये दो जंगे हैं। अगला सवाल, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो 68 मिलियन लोगों को कत्ल किया, इसके हवाले से तारीख के किस दौर में ये वाकया रूनुमा हुआ, और इस वाकये को होने में कितना अरसा लगा था? स्मीकर्स के जलाली इनकलाब को लें। मेरा ख्याल है इन कुछ आलमों के पास ये बातें हैं, और ये कलीसिया की तारीख है, मगर मैं भूल गया हूँ कि ये किस सफ़े पर है, मगर ये बातें उस वक्त वाकया हुई, वहाँ ये बातें बयान की गई हैं, या कलीसिया को सेंट अगस्टिन, जो हिप्पो अफ्रीका का था, उसके जरिए दी गई। ये 354 AD से 1850 तक खत्म है, जिसे आयरलैंड का कत्ले आम भी कहा जाता है, समझे। बस वो अरसा 33 AD या 30 AD या 354 से है। अब पहले मुझे इसे दुरुस्त करने दें, समझ गए। 354 AD से 1850 AD तक इस तारीख के मुताबिक 68 मिलियन प्रोटेस्टेंट लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और ये बातें शहीदाने रोम की तारीख में दर्ज है, जो कि रोम के पोप से इख्तलाफ के सिलसिले में हुई, और ये तारीख है। और अगर आप कहना चाहते हैं कि ये गलत है तो खैर, फिर शायद जॉर्ज वाशिंगटन या लिंकन भी यहाँ पर मौजूद ना थे। अब जानते हैं कि हम में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। बहरहाल ये बातें वहाँ मौजूद हैं। मैंने सबूत देखे हैं कि ये बातें वहाँ मौजूद हैं।
Brother Branham, the 19th chapter of the 18th verse.
भाई ब्रैनम, 19वें बाब की 18वीं आयत में, तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा। इसराइल में 7,000 यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह या जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक जिसने उसे नहीं चूमा, यानी हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा, मेहरबानी से मेरे लिए इसकी तशरीह करें कि ये क्या 700 के मुतालिक है। ये 7,000 थे, समझे? और फिर बाल को चूमा, क्या आप इस बात को नहीं जानते? यहाँ पर कितने लोग हैं जो पहले कैथोलिक थे? यकीनन, समझे? आप जो पहले शबियों को चूमते थे, समझे? और याद रखें, नबूकत नजर और बाबल के जमाने में जब गैर कौम की बादशाही शुरू हुई थी, समझे, जब गैर कौम की बादशाही शुरू हुई थी तो वो एक इंसान की प्रस्तिश से वजूद में आने से शुरू हुई थी। नबूकत नजर ने एक शख्स की मूर्त बनवाई थी। अगर आप एक रूहानी जेन रखते हैं तो इस मुकाशवा को सुने। उस रूह यानी उस शख्स ने अपने लिए एक मुकाशवा हासिल किया, बल्कि उसने अपने मुकाशवे से जिस आदमी की छवि बनवाई वो दानियल था। एक दीनदार शख्स की मूर्त बनवाई कि उसकी प्रस्तिश की जाए। क्या इसको समझ गए? क्योंकि उसने उसका नाम बिलतशजर रखा था, क्या ऐसा नहीं था? और बिलतशजर जो कि उसका देवता था, और उसने उस देवता की मूर्त बनवाई जो कि दानियल की मूर्त थी, और दानियल ने उस यानी अपनी मूर्त को सजदा करने से इनकार कर दिया। समझे, समझे? और यही बात यहाँ दोबारा है। तो जो दें, अब ध्यान दें, नबूकदनज़र ने बाबल के दिनों में गैर कौम की बादशाहत का आगाज किया, यानी एक गैर कौम का बादशाह कलीसिया और रियासत को इकट्ठा कर रहा था। एक मुकद्दस शबी को लिया, यानी एक मुकद्दस शख्स की शबी को लिया, और जबरदस्ती उसकी इबादत करवाना चाहता था। और उस गैर कौम की बादशाहत का खात्मा पांव पर हुआ, हाथ की तहरीर के साथ जो दीवार पर लिखी गई थी, एक सियासी कुव्वत के वसीले जिसने कलीसिया और रियासत को मुतहद कर दिया था कि दोबारा जबरदस्ती शबी को चुमे। अब देखें, वही चीज यानी एक मुकद्दस शख्स की शबी मौजूद है। यकीनन ऐसा है भाई ब्रैनम, जब उठाया जाना होगा तो क्या नन्हे बच्चे जो दुरुस्त और गलत की पहचान नहीं कर सकते, क्या वो भी उठा लिए जाएंगे अगर उनके नाम किताब में दर्ज है? तो जी हाँ, ये दुरुस्त है, समझे? ठीक है भाई ब्रैनम, आपने गुज़िश्ता शब्द कहा था जब एलिया ने मुनादी की थी वहाँ पर 700 लोग बचाए गए थे, या क्या आपका मतलब 7,000 था? जी हाँ, ये दुरुस्त है। देखिए, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये ठीक है। देखिए, मैंने गलत कह दिया था भाई ब्रैनम। क्या आप इस बात को खोलने के बाद, बल्कि भाई ब्रैनम, क्या आप इस मकाम की DESPE तफसीर करेंगे? माफ करें, क्या जमाना? अब ये आपकी नहीं, देखे, बल्कि मेरी बात है। क्या आपके सातवीं मोहर खोलने के बाद फजल का जमाना खत्म हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूँ नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। अजीजो, इस बात को अपने दिमाग में मत लाएं, समझे? आप जो करते हैं करते चले जाएं, आलुओं को खोदते रहें और चर्च में जाते रहें, और इस काम को जारी रखें। अगर सुबह को आमदेसानी हो जाती है तो आप वही करते पाए जाएंगे जो आप करना चाहते थे, इसलिए काम को छोड़ना मत शुरू करें। देखे, जब आप रुक जाते हैं तो आप बिल्कुल उसी चीज को उसके मकसद से मोड़ देते हैं जिसके लिए मुकरर की गई थी। आपको जरा सा मकसूद सोच मिलती है और आप उसके मुतालिक अपने ख्यालात ले लेते हैं। इसलिए अपने ख्यालात को मत तराशें, बल्कि जब आप बैठें और बातों को सुनें तो कहें, खुदावन तेरा शुक्र हो, बस मैं जरा और करीब होकर तेरे साथ चलूंगा, समझे? मैं चलूंगा, इसलिए काम करना तर्क मत करें। ना कहें, मैं सब कुछ बेच डालूंगा। एक दिन एक आदमी शमाली कैरोलिना में दौड़ता हुआ आया, इससे पहले क्या वहाँ से चले जाते। उसने कहा, खुदा को जलाल मिले, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई अजीम काम कहाँ हुआ है? मैंने कहा, नहीं। ओ जी जनाब, उसने कहा, वो शख्स तो, उसने बताया, वो शख्स तो ऑडियो मिशन का सदर है। मैंने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, ऑडियो मिशन का। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। और उसने कहा, ओ, और बोला कि वो शख्स सदर है। मैंने कहा, आपने उसका क्या नाम बताया था? उसने कहा, मेरा ख्याल है ब्रैनम है, या कुछ इस तरह का, ब्राउन या ब्रैनम है। मैंने कहा, अच्छा, मेरा नाम ही ब्रैनम है। उसने कहा, क्या आप ही ऑडियो मिशन के सदर हैं? मैंने कहा, नहीं जनाब। उसने कहा, अच्छा, हजार साला दौर हुकूमत कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा, क्यों? आप तो एक, यानी आप, आपका मतलब है वो 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 ठीक यहाँ पर आने को है और आपको उसकी खबर तक नहीं? मैंने कहा, नहीं जनाब, मुझे मालूम नहीं है। उसने कहा, अच्छा, खुदा को जलाल मिले। उसने कहा, मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया था और कहा था, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया है। जबकि उसने काम वाले कपड़े पहने हुए थे और उसने कहा, भाई, मैं हजार साला दौरे हुकूमत चाहता हूँ। और मैंने कहा, अच्छा, मेरा ख्याल है आप थोड़े से उलझे हुए हैं। भाई, क्या आप उलझे हुए नहीं? तकरीबन उसी वक्त एक टैक्सी कैब यानी एक कार आकर रुकी और उसमें मौजूद खातून ने कहा, यहीं रोको, यहीं रोको, यहीं रोक दो। और उसमें से एक खातून बाहर आई और कहा, आप तो मेरे शोर के लिए दुआ करने वाले थे। मैंने कहा, जी मैम, मगर किस बारे में दुआ करनी है? उसने कहा, अच्छा, देखें, मैं तो समझती थी कि दुआ करवाने के लिए एक महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और मैंने कहा, क्या? उसने कहा, जी हाँ जनाब। और कहा, लेकिन मैं ना उम्मीद हो चुकी हूँ, इसलिए आपको मेरे शोर के लिए दुआ करनी पड़ेगी। मैंने कहा, यकीनन। अच्छा, वो कहाँ है? उसे यहाँ लाएं। वो शख्स भी वहाँ पर खड़ा था। उसने नजर हटाई और वो बोल उठा, क्या आप बीमारों के लिए दुआ भी करते हैं? मैंने कहा, जी हाँ जनाब। उसने कहा, आपने क्या कहा था? आपका नाम क्या है? ब्रहनम। मैंने कहा, बल्कि कहने लगा, आपको हजार साला दौरे हुकूमत के मुतालिक कुछ मालूम नहीं है? मैंने कहा, खैर, मुझे नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और मैंने कहा, मैं इसे ऐसे नहीं समझता, ये ठीक बाइबल में मौजूद है। उसने कहा, नहीं, बल्कि ये ठीक अभी ही है, क्योंकि लोग हर तरफ से यहाँ आ रहे हैं। मैंने पूछा, तो फिर ये कहाँ पर है? उसने कहा, जेफरसनविल, इंडियाना, ठीक पुल के नीचे। मैंने कहा, जनाब, आपने मुझे मगलूब कर लिया है। और मैंने कहा, लेकिन मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता। मैंने कहा, आए, अंदर चलते हैं और बैठते हैं, शायद हम इस चीज पर कुछ बातचीत कर सके। और हमने इस पर गुफ्तगू की, समझे? दोस्तों, क्या आप नहीं देखते? क्या आप कभी खिदमत की आरजू नहीं करते? आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है, समझे? जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप खुश रहें, समझे? इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसे करते जाएं। दुल्हन के उठाए जाने के बाद कब कलीसिया, जिसने मसाइब के दौर में से गुजरना है, उसकी अदालत होगी या उसकी अदालत नहीं होगी? क्या ये हजार साला दौरे हुकूमत से पहले या बाद में होगी कलीसिया के लिए? ओ, मैं माजरत खा हूँ, जिसने ये लिखा है मुझे माफ करें। कब कलीसिया को, दुल्हन के उठाए जाने के बाद कब कलीसिया, जिसने मसाइब के दौर में से गुजरना है, उसकी अदालत होगी? क्या ये पहले या बाद में होगी? बाद में, इसलिए कि बाकी जो मुर्दे होंगे, क्या उन्हें हजार साल के लिए नहीं रहना है? वो दुल्हन के साथ नहीं जाएंगे। आए, गौर करें भाई, आपने कई मरतबा कहा है कम्युनिज्म खुदा की तरफ से उभरा हुआ है ताकि खुदा के मकसद को पूरा करे, जैसा कि नबूकत नजर बादशाह को खड़ा किया गया था। अब ये कम्युनिज्म कहाँ पर फिट होगा? फिर ये आखिरकार ये क्या करेगा और इसका खात्मा कैसे होगा?
Kingdom of the North, Gog and Magog, mentioned in the scriptures, goes down.
बहुत से उल्मा मानते हैं कि शमाल की बादशाहत जूज और माजूज जो कि कलाम में बयान की गई है और इसराइल के खिलाफ उठने वाली है, मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या है। जी हाँ, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि जो कुछ टेप पे कहा गया है, आपने कहा आखिरकार ये कम्युनिज्म, कैथोलिकिज्म या विटिकन को धमाके से तबाह कर देगा, क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, मुकाशवा 16 में और मुकाशवा 18, 8 में और 12 में भी ये बात पाएंगे। अगर वो शख्स यहाँ मौजूद है और इस कागज के टुकड़े को लेना चाहता है, तो फिर आप सीधी तरफ ऊपर देखें। जी हाँ, देखें, लिखा है, ए मजबूत शहर, अफसोस, अफसोस, घड़ी भर में तुझे सजा मिल गई। अब देखें, वो ताजर और वो सब चीजें जो उसकी तजारत का सबब थे, वो खत्म हो जाएंगी। ये दुरुस्त है, क्या ऐसा नहीं? छोड़े इस बात को, जरा कम्युनिज्म के मुतालिक भूल जाए, समझे? ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों का एक ग्रोह है जो सिर्फ वैशी है, जो बदकार है। ये एक निजाम है। आए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, सिर्फ आप देखें कि ये कितना सादा है। ऐसा क्यों है? रूस का सिर्फ 1% है जो कि कम्युनिज्म है, उन्हें एक पैगंबर की जरूरत है, समझे? सिर्फ 1% है, फिर उनमें से 99% मसीहत की तरफ है, और वो 1% है। और कैसे 1% 99% को कंट्रोल कर सकता है? लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल ठीक बयान करना चाहता हूँ, अगर खुदा ने उसे इजाजत नहीं दी तो ठीक, वो बहुत देर पहले ही बाहर फेंक दिए गए होते, समझे? यकीनन भाई ब्रैनम, आपने कहा है कि रोम यहूदियों की हुकूमत आखिरी 3.5 साल में ले लेगा, क्या ये मसाइब पहले 3.5 साल में होने वाले हैं या फिर आखिरी 3.5 साल में होंगे? क्या ये दुरुस्त है? ये आखिरी 3.5 साल होंगे, ये दुरुस्त है, ना कि पहले वाले, क्योंकि पहले वाले पहले ही गुजर चुके हैं। इसके बाद एक और सवाल लेते हैं, मेरे प्यारे भाई, क्या मलाकी 4:5 का एलिया दश्त में जाएगा? क्योंकि पहला सलातीन हमें बताता है जो पहले एलिया ने किया था। खैर, मैं पक्का नहीं कहूंगा कि वो जाएगा, लेकिन वो दश्त में जाएगा, मगर वो ऐसा होगा। अब देखें, जैसा वो था एलिया और अलीशा, क्या आपने गौर किया? ये ज्यादातर ऐसे आदमी हैं, ये वो लोग हैं जो दूर रहे हैं, वो लोगों से दूर रहते थे, वो नहायत ही अजीब किस्म के लोग थे, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे। आपने गौर किया अलीशा कैसा था, और एलिया और योहन्ना अस्तबागी कैसा था, और उन पर उसकी रूह की फितरत थी, आप समझे? और वो तो वो बल्कि मैं यकीन करता हूँ वो शख्स दश्त का आशिक होगा। हो सकता है वो दश्त में क्याम करना चाहे, मगर अब सिर्फ ये कहना कि वो इबादत गुजार और दश्त में रहने वाला है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। बाज़ुकात उन्होंने ऐसा किया था, अलीशा ने ऐसा नहीं किया था, मगर एलिया जंगल में रहता था और फिर योहन्ना वो भी जंगल में रहता था। और ये कहना भी मुश्किल है कि दूसरे अंबिया जब वो यहूदिया से बाहर आए तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहे, शायद किसी पहाड़ी पर साइबान लगाकर रहे, या वो अपनी नबुवत के दिनों में कैसे रहे, मुझे नहीं मालूम कि अब क्या करेगा। मगर आप सुने, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, वो ही होगा, और वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो जंगल में रहने वाला होगा। खैर, उन्हें अब कहीं शमाली ब्रिटिश कोलंबिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए काफी जंगल है, आप समझे? बस कोई तो होगा, जंगल तकरीबन खत्म हो गया है, समझे? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा जंगल नहीं बचा है, समझे? बस वो वाहिद वो जंगल का आशिक होगा, ध्यान दे, और शायद ज्यादातर जंगल में क्याम करे, और वो ऐसा होगा। आप उनकी फितरत पर गौर करें, वो समझ ना आने वाली बात है, देखें। और जब वो आता है तो आप जान जाएंगे, समझे? आप इसे देखेंगे, इसलिए आपको चुकन्ना रहना चाहिए। अब यहाँ एक बात है, मैं नहीं जानता कि मैं इसे कैसे पकड़ूं, और मेरे पास इससे पहले एक और बात है, और मैं इसे कहने वाला हूँ, इसलिए एक मिनट टेप रोक दें। अगर खुदा एक ही शख्सियत है तो वो क्यों कर और कैसे सूरत तब्दीली के पहाड़ पर अपने आप से बात कर सकता था? खैर देखें, मैंने इसे अभी बयान किया है, समझे? मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ, बल्कि पूछता हूँ। अब देखें, जब यीशु बाप से दुआ करता था, मैं ईमान रखता हूँ आपको रूल कदूस का बपतिस्मा मिला है, भाई क्या आपको नहीं मिला है? क्या आप एक मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते? आप दावा करते हैं कि आपको पाखरू का बपतिस्मा मिला है, मुझे भी मिला हुआ है, तो फिर ये क्या है? लेकिन फिर भी मैं दावा नहीं करता कि मेरे पास ताकत है, मैं खुद इन वेदों को अयां नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पास बीमारों को शिफा देने की ताकत है, ये खुदा है। मुझे यकीन है आप एक खादम हैं, और अगर मैं गलत नहीं तो आप अरकनसा से हैं। अब देखें, ये ठीक है, और आपके अंदर यानी आपके पास ये खूबी है कि आप अंजील की मुनादी करते हैं। अमूमन आपकी परवरिश फॉर्म में या कोई ऐसी जगह पर हुई है, मगर आप इस बात के मुतालिक कुछ भी नहीं जानते, मगर कोई चीज आप में उभरी कि आप अंजील की मुनादी करें, और आप किसी भी तरह ये दावा नहीं करते कि ये आप खुद हैं, बल्कि ये कोई और शख्स है और उसे रूल कदूस कहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो रूल कदूस आपके अंदर रहता है? क्या ये दुरुस्त बात है? क्या आप उससे बात करते हैं? क्या आप उससे गुफ्तगू करते हैं? क्या उससे दुआ करते हैं? ठीक है, और यही सब कुछ मैं चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समझे? अब आपको इस बात की समझ आ गई है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, ये कैसे हुआ कि जब यीशु ने मुकद्दस योहन्ना 3 में फरमाया, जब इब्ने आदम जाहिर होगा जो के आसमान में है, समझे, जो के आसमान में है वो जमीन पर आएगा, समझे? इब्ने आदम जो के आसमान में है और वो ठीक यहाँ पर भी खड़ा हुआ है और इस शख्स से बात भी कर रहा है। अब मुझे इस बात का जवाब दें, यीशु और बाप हू बहू एक ही शख्स था, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि रूह कुदस मेरे अंदर है। आप देख रहे हैं मैं मुनादी कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैं नहीं हो सकता कि एक लफ्ज बोलूँ और किसी जानवर को वजूद में ले आऊँ और फिर वहाँ बैठे ही उसको देखूँ और उस जानवर को जबा करके खा लूँ। ये तख्लीकी कुव्वत है जो कि इंसान में नहीं होती। ये मैं नहीं हूँ कि यहाँ पर पड़े हुए एक लड़के को लूँ जिस पर डॉक्टर दिल की बीमारी की वजह से आज झुके हुए हैं। ये मैं नहीं कि कहूँ ये विलियम ब्रैनम फरमाता है, नहीं, बल्कि ये खुदावंद यूँ फरमाता है कि तमाम हुआ और अगले ही दिन उसे फिर डॉक्टर के पास ले जाए। मगर वो सब कुछ खत्म हो चुका था। इसी तरह एक बच्चे को लकीमिया था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और बदन भी सारा पीला पड़ा हुआ था, जबकि वो उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे ताकि उसे खून और दूसरी चीजें लगा सके। वो उसे यहाँ ले आए और 5 ही मिनट में वो खाने के लिए चलाने लगा और अगले दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और वो उस बीमारी की खोज भी ना लगा सके। क्या ये विलियम ब्रैनम यूं फरमाता है? नहीं, बल्कि ये खुदावन यूं फरमाता है। फिर भी वो मुझसे इंफरादी तौर पर मुख्तलिफ है, मगर तरीका ये है कि वो अपने आप को मेरे वसीले जाहिर करता है, समझे? ऐसे ही यसू और बाप है। यसू ने कहा, ये मैं नहीं जो ये काम करता हूँ, बल्कि ये मेरा बाप है जो मुझ में है। अब इब्ने आदम आसमान पर उठाया जाएगा जो कि आसमान में है, समझे? ये क्या था? वो हर वक्त हर जगह मौजूद है क्योंकि वो खुदा है। अब दूसरा वाला, मैं ये अल्फाज कहना चाहता हूँ जिसके बारे में बात कर रहे थे, बयान करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, हम यहाँ तेरे रूह की मौजूदगी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और ए बाप, हमें बताया गया था कि एक मर्तबा जब दुश्मन आ रहा था तो रूह एक शख्स पर नाजिल हुआ और उसने नबुवत की और उसे बताया गया ये चीजों को तरतीब में लाती है। और जी हाँ, वो जान जाते हैं कि किस तरह से चलना है और दुश्मन को शिकस्त देनी है। ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमेशा यकसा रहता है। तू अब भी वही यकसा खुदा है। हम बदल जाते हैं, जमाने बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है और लोग भी बदल जाते हैं, मगर तू कभी नहीं बदलता। तेरा निजाम एक जैसा है, तेरा फजल यकसा है, तेरे काम यकसा है, क्योंकि वो हैरान कर देने वाले हैं जो कि इंसान के इल्म और समझ से बालातर है। बस खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे बेद तेरे खादमों के दिलों में छुपे हुए हैं। और खुदावंद, हम इस बात के लिए नहायत ही शुक्रगुजार हैं और काश हम चमकते नूर की मानिंद आगे बढ़े, यानी एक जगह से दूसरी जगह, और कोशिश करें कि मोहब्बत के साथ ताकि दूसरों को अंदर लाएं। काश हम हर एक कोने पर बड़ा जाल लगाएं और जाल को अंदर डालें और पूर यकीन हो हम हर मछली को जो खुदा से तल्लुक रखती है खींच लाएं और फिर बड़ा अपनी दुल्हन को ले लेगा ताकि हमेशा उसके साथ रहे। और हम उसी वक्त के मुंतजिर हैं। यीशु के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर कितने बीमार हैं? आए अपने हाथ दिखाएं। खैर, लगता है तकरीबन अपने हाथ उठाकर रखें। तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47 तकरीबन 47 लोग हैं, ठीक है? अभी ठीक 11:30 हुए हैं। हम ठीक अभी बीमारों के लिए दुआ कर सकते हैं। आज शब को छोड़ दें, क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? मैं ईमान रखता हूँ कि ठीक अभी ही इसे करने का दुरुस्त वक्त है। आपको बताऊँ क्यों? इसलिए कि रूह कुदुस यहाँ पर जुम्बश कर रहा है और मसा अंडेला जा रहा है। अब हम काफी ज्यादा रूह में हरकत कर चुके हैं। गौर करें और आप उस चीज को देखते हैं और आप उस चीज को जानते भी हैं। वो यहाँ पर मौजूद है, समझे? और अगर आप यकीन करना चाहते हैं तो ठीक अभी ही यकीन कर लें। अगर आपको कभी यकीन करना चाहिए तो वो यही घड़ी है, समझे? अगर आप यकीन करना चाहते हैं तो वो यही वक्त है। अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ बड़ी ही खामोशी से आए और वो जो इस रास्ते पर हैं और जिन्होंने हाथ उठाए हुए थे निकलकर इस रास्ते की जानिब आ जाएं और फिर इस रास्ते से नीचे चले जाएं और फिर हम उन्हें रास्ता बा रास्ता ले लेंगे। और ये सिर्फ 45 बल्कि 47 है, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं भाई नेवल से कहूंगा कि वो यहाँ ठीक मेरे साथ आ जाए क्योंकि हम उनके लिए दुआ करने लगे हैं। अब पहले जो दरमियानी रास्ते से आ रहे हैं वो सब सिर्फ एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं ताकि हम हर एक पर हाथ रखें और आपके लिए दुआ कर सकें। अब ये दुरुस्त है। अब हर एक जो दुआया कतार में आ रहा है वो ध्यान करें, यानी वो जो दुआया कतार में आ रहे हैं, समझे? अब देखें ताकि वक्त को बचाया जाए। बस हमें यकीन है कि हम इस काम को कर लेंगे। अब हम आपके लिए दुआ करने लगे हैं। दोस्तों देखिए, अब मैं आपसे ये बयान करने लगा हूँ। यीशु मसीह ने ये कहा था कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। अब तवज्जो दें, उसने कभी नहीं कहा था कि अगर वो उनके लिए दुआ करेंगे, बल्कि अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पा जाएंगे। और अगर खुदा एक ना खत्म होने वाले लोकीमिया के मरीज को ले सकता है और एक नन्ही सी लड़की जो अपने लिए ईमान भी नहीं रख सकती थी और उसे शिफा दे सकता है और वो अगला केस भी ले सकता है और एक छोटा लड़का वो उसे भी शिफा दे सकता है, यहाँ तक कि डॉक्टर उसके खून में गर्दन तोड़ बुखार और कुछ इसी तरह की चीज की खोज ना लगा सके, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अब वो नन्हे मुन्ने बच्चे वो नहीं समझते कि दुआ क्या कर सकती है, मगर उन पर सिर्फ हाथ रखे और ये ऐसा हो गया। हम इसे समझ सकते हैं। अब जब कि आप खड़े हुए हैं तो आए आप दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तेरी अजीम हजूरी के साथ जो कि यहाँ पर मौजूद है, यानी अजीम रूह कुदस जिसकी तस्वीर हमारे पास है और वो जिसके मुतालिक हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल इसी घड़ी यहाँ मौजूद है और अपने आप को इंसानी बदन के वसीले जाहिर कर रहा है। हम किस तरह उसे इतने सालों से देख रहे हैं कि वो एक बार भी नाकाम नहीं हुआ और वो इंसान के दिल के हर ख्याल को आश्कारा करने के काबिल है, यहाँ तक कि उन गुनाहों को आश्कारा किया जो उन्होंने किए थे और उन्हें दुरुस्त तौर पर एक बार भी नाकाम हुए बगैर बताया कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और फिर हम जानते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और इसराइल का खुदा अब भी खुदा है और यहाँ यीशु मसीह की शख्सियत में मौजूद है। अब उसका रूह जो कि आसमान से नाजिल हुआ है, उस खून के नीचे जो कलवरी पर बहाया गया और लोगों के दरमियान आया है और इससे कब्ल के दुनिया जलाई जाए अपने आप को इंसानी बदन में मुजस्सम करके जाहिर कर रहा है। वो अजीम रूह कुदूस इंसानी बदन में जाहिर हुआ है और वो बेशबहा लोग हैं जो खून के कफारे को कबूल कर लेते हैं, तो रूह कुदूस उनमें आ जाता है, यानी खुदा इंसानी बदन में जाहिर होता है। इसलिए ये इंसानी बदन नहीं है जो कि सिर्फ काम को सरंजाम दे जैसे कि बपतिस्मा और मजीद ऐसी बातें, बल्कि हुक्म के साथ है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे और अगर वो ईमान लाएंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो रूह कुदूस ये देखेगा और वो अच्छे हो जाएंगे। अब बाप, हम जानते हैं ये बातें सच्ची हैं और ये लोग जो खड़े हुए हैं ये उन खादमों के हाथों के नीचे से गुजरने वाले हैं जिन्होंने रूह कुदूस पाया है। खुदावंद, खादम तैयार है कि वो बीमारों पर हाथ रखें। और बाप, हम जानते हैं कि इन लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, यानी उस बात पर जिसका तूने वादा किया है और वो हो जाएगा। बस ऐसा कर और ये ईमान के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नामुमकिन है कि ईमान के बगैर खुदा को खुश किया जा सके। हम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। और अब इत्तेकाद करते हुए ईमान के साथ और उस वादे के साथ जो कि हमारे सामने है और हमारे लिए बाइबल की मोहरें खोले जाने के साथ है कि खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। काश के ये बेशबहा लोग जो के बीमार हैं, ऐ खुदावंद, एक इंसान होते हुए इन्हीं की तरह मेरे भी इस फानी बदन के अंदर जज्बात है और अब इनके अंदर भी हैं और वही रूह कुदूस जो हमारे अंदर है, खुदावंद, इनके अंदर भी है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए दुख दर्द रखते हैं और ये जानते हैं कि हम नए खून के अहद के नीचे हैं। और अगर पुराना वाला शिफा देता था तो फिर ये तो नया और बेहतर है जो उससे बढ़कर शिफा देगा। ऐ बाप, ऐसा ही होने दे ताकि ये लोग नाकाम ना हों, बल्कि जैसे ही ये तेरे खादमों के हाथों के नीचे से गुजरते हैं तो ये अपनी शिफा को हासिल कर ले। यीशु के नाम के वसीले से ये मांगते हैं, आमीन। अब हम ऐसा ही करेंगे, इस तरफ वाले बैठ जाएं, जबकि उस तरफ वाले आएं, और फिर ये इस तरफ वाले वापस चले जाएं, और दूसरी तरफ वाले आएं। भाइयों, अब आप में से जो लोग यहाँ हैं वो ऊपर खड़े होंगे। मुझे यकीन है कि आप खादम हजरात यहाँ मौजूद हैं। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर यानी भाई नेट कहाँ पर है? क्या भाई नेट आप भी दुआ कतार में जा रहे हैं? ठीक है भाई नेट, अच्छी बात है। जैसे ही आपके लिए दुआ हो जाए आप कतार में से निकल जाएं। अब आप जो इस तरफ हैं, जरा एक लम्हे के लिए बैठ जाएं, क्योंकि मैं एक कतार को इस तरफ से लूंगा और फिर हम नीचे आएंगे और दरमियानी रास्ते से लेंगे और उन्हें इस तरफ से भेज देंगे, फिर इस रास्ते वालों को लेंगे और इन्हें इस रास्ते वापस भेज देंगे और इसी तरह हम इन सब के लिए दुआ करेंगे। मैं भाई टैडी से कहूंगा, वो कहाँ है? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप वो गीत अजीम तबीब अब करीब है गाएं। और पियानो बजाने वाले भाई, आप जहाँ कहीं भी हैं, हो सकता है तो इस भाई का साथ दें। सुने, क्या आपको वो वक्त याद है जब ये बजाया जा रहा था और एक नन्हे बच्चे को प्लेटफॉर्म पर लाया गया था और एक एमिश लड़की इस गीत को बजा रही थी कि वो अजीम तबीब अब करीब है, और उसके लंबे और घने या सुनहरी बाल थे। शायद वो एक मिनोनेटी या एक एमिश लड़की थी और वो अपने सर के बालों को पीछे किए हुए थी और रूह कुदूस ने हाथ रखने से उस लड़के को छुआ जो अपने पांव से माजूर था और उसने मेरे बाजुओं से छलांग लगा दी और वो प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़ गया और उसकी माँ ने उसको उठा लिया और वो नीचे गिर गई। मेरा ख्याल है जब शुरू किया गया था तो एक मेनोनाइट थी और खुदा के रूह ने उस लड़की को जो मेनोनाइट थी या एमिश थी छुआ, या वो जो कोई भी थी, वो और उसका बाप वहाँ बैठे हुए थे और फिर जैसे मेनोनाइट कपड़े पहने होते हैं या जो कुछ भी था, वो पियानो के ऊपर से छलांग लगाकर उठी और उसके हाथ हवा में बुलंद थे और उसके खूबसूरत बाल फैले हुए थे और वो एक फरिश्ते की मानिंद लग रही थी और उसने रूह में गाना शुरू कर दिया और जब उसने ऐसा किया तो पियानो मुसलसल खुद ही बजे जा रहा था। वो अजीम तबीब अब करीब है, वो तर्स खाने वाला यीशु है और हर एक जो वहाँ खड़ा था वो हजारों की तादाद में थे और वो पियानो के बटनों को ऊपर नीचे हरकत करते हुए देख रहे थे और ये धुन बज रही थी, वो अजीम तबीब अब करीब है, वो तर्स खाने वाला यीशु है। लोग व्हीलचेयर से और चारपाइयों से और स्ट्रेचर से उठ खड़े हुए थे और वो चलकर वापस गए। आज सुबह बिल्कुल वही खुदावंद यीशु ठीक यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल वही यक्षा जैसा वो उस वक्त था। अब सिर्फ ईमान रखें, अगर आप गा सकते हैं तो इस गीत को गाएं। वो अजीम तबीब आए, अब हर कोई दुआ करे तो अब आए, इन लोगों को ठीक इस जगह से चलने दें और जैसे ही आप अपनी राह ले लेते हैं तो ठीक इस तरफ नीचे चले जाएं और ठीक अपनी निशिस्त पर या जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं चले जाएं। क्या आप जो पीछे हैं आपको ठीक समझ आ रही है? ठीक है, तो फिर आप ठीक अपनी निशिस्त पर चले जाएं, फिर हम खड़े हो जाएंगे। अब सुने, जबकि इनके लिए दुआ करने लगे हैं तो आप भी इनके लिए दुआ करें ताकि जब आपके लिए दुआ की जाए तो ये लोग आपके लिए भी दुआ करें। अब आप जो खादम यहाँ पर हैं, खड़े हो जाएं और जैसे ही ये आगे आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इन पर अपने हाथ रखें। अब हर कोई अपने सरों को झुकाए रखें और दुआ को जारी रखें और जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो तब आप पर हाथ रखे जाएंगे। याद रखें, ये खुदा का वादा है, वो अपनी किताब के मुकाशफात को यहाँ करता है और इंसानी दिल के भेदों को आश्कारा करता है। वही खुदा है जिसे साबित करता है, आप सिर्फ उस पर ईमान रखें, समझे। अब हर कोई दुआ में लग जाए। अब आप खादम भाइयों, अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े हो जाएं। ठीक है, अब आएं, अपने सर को झुकाते हैं। अब ऐ खुदावंद यीशु, जैसे ही ये लोग आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं तो कादरे मुतलिक खुदा की कुवत फौरन इनके ईमान को जिंदा कर दे। सब कुछ यीशु के नाम में मांगते हैं। अब ठीक है, आएं इस तरफ से कतार को शुरू करते हैं। मैं खादमों से हर एक से कहता हूँ कि जैसे ही ये लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इन पर हाथ रखें। In the coming days, 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 in the coming days,
Back, please. Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go in the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Oh, Lord. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. In the name of the Lord. Receive your healing, brother.
Is that all the one to be prayed for now?
बाइली वेल, खुदावंद यीशु का हाथ आपकी दरखास्त को जो कि आपके प्यारे के लिए है यीशु के नाम में मकबूल फरमाए। बिली पॉल ने आपको काफी कार्ड दिए थे, खुदावंद यीशु के नाम में अपनी शिफा को कबूल करें। वो अजीम तबीब अब करीब है, वो यीशु तर्ज खाने वाला है, वो मुरझाए दिल को खुशी बख्शता है, ओ यीशु की सदा को सुने। सब मिलकर गाएं, आला फरिश्तों के गीत में सबसे शीरी नाम, फानी जुबान पर सबसे शीरी नाम, सबसे शीरी गाया गया गीत। ए खुदा, इस प्यारे और नए जोड़े को जिन्हें इस दुनिया में से आगे लाया गया है, जैसे कि खुदा बख्श दे कि इनकी दरखास्त यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। यीशु मसीह हमारी बहन के इस प्यारे को जो कि इसके जहन में है, खुदा की कुवत इसकी दरखास्त के साथ जाए और उसे निजात मिल जाए। खुदावंद ये कबूल कर, आमीन। खुदावंद खुदा, यीशु के नाम में इस शख्स की दरखास्त को पूरा कर, और खुदावंद मैं अपनी दुआओं के साथ इसके लिए भी दुआ करता हूँ, आमीन। हो क्या ये उम्दा बात नहीं है? मैं ईमान रखता हूँ कि हर वो शख्स जो आज सुबह यहाँ आया है उस मसा से ममूर है। मुझे यकीन है आप सिर्फ ईमान रखें और किसी भी बड़ी और अजीम चीज को मत देखें, सिर्फ सादा चीज को याद रखें और ईमान रखें, क्योंकि उसने वादा किया है। आए हम सब मिलकर कहते हैं, हम किसी बड़ी चीज को नहीं देखते, लेकिन यीशु के नाम में हम उसके वादों को कबूल करते हैं, और ये बात तय है, ये उसे मुकम्मल कर देती है, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।